आइए हम खड़े रहें और अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, इस प्रातः हम आपके आभारी हैं और इस सौभाग्य के लिए कि हम आपकी उपस्थिति में आपके घर में आ रहे हैं, जहां तेरे लोग तेरे नाम में एकत्र हैं। और प्रभु, सब कुछ तेरा है और हम अब अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, उस आशा के लिए जो हमारे हृदयों में, उस सेवा के लिए, उनके लिए जो बिना परमेश्वर के हैं और बगैर मसीह के, कि वे बच जाएंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे और संत आशीषित हो जाएंगे। प्रभु, इसे प्रदान करें और तब अंत में हम अपने सिरों को नम्रता में झुकाएंगे और इस सब के लिए तेरी प्रशंसा आप ये आज इस दिन में करें, क्योंकि हम ये यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं वास्तव में इस सौभाग्य के लिए आभारी हूँ कि आज फिर से यहाँ पर हूँ, और आप लोगों के लिए जिन्होंने इस संदेश के लिए यात्रा की है इस प्रातः की सेवा के लिए आए। मैं जानता हूं कि आप मुझे देखने और सुनने नहीं आए हैं, आप यहां प्रभु यीशु से मिलने आए हैं, और इसलिए मैं विश्वास कर रहा हूं वो आपको आपके हृदय की इच्छा को देगा। और मैं वापस आता हूं, परिवार को ट्यूशन ले जा रहा हूं और लौटा, और मैं थका हुआ और पस्त हूँ, और मैं सारी गर्मियों से जा रहा हूँ पिछली जनवरी से, और अब मुझे इस सप्ताह केंटकी को आना है। अपने कुछ मित्रों के साथ शिकार पर थोड़ा आराम करने का यत्न करूंगा। ये मुझे बहुत ही अधीर कर देता है, आप जानते हैं। इसलिए मैं, बिली, हम दोनों जाने वाले हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी इस सप्ताह में सहायता करे कि आराम करें। प्रभु ने चाहा अगले रविवार मैं यहाँ फिर वापस आना चाहता हूँ, यदि प्रभु ने चाहा, और अगले रविवार मैं विशेष सभा चाहता हूँ। भाई, मैं जरा कुछ भिन्न करना चाहता हूँ बजाय साधारण के। अब मैं ये देना चाहता हूँ ताकि लोग जो चाहते हैं, हो सकता है रुचि ना रखना चाहते हों, उन्हें ना आना पड़े। परंतु हम सदा बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने चाहा जब लोग आते हैं। और अगले रविवार मैं जानना चाहता हूँ आप सबके हृदयों पर क्या है। मैं आज आपसे लिखवाना चाहता हूँ जब आप छोड़ते हैं और इसे डेस्क पर रख दें, और इसे भाई नेविल बिली पॉल को दे देंगे, और वो मुझे आपके हृदय पर क्या है, बस कहें। यदि ये बाइबल का प्रश्न है, मेरे पास अक्सर इस प्रकार से होता है, मैं इसे थोड़ा और आगे खोलना चाहता हूँ। अब हो सकता है आपके हृदय पर कोई समस्या हो जिसको आप ना सुलझा पा रहे हो, जैसा कि आपके पास कोई पारिवारिक परेशानी हो। आपको इसके लिए अपने हस्ताक्षर नहीं करने हैं, बस केवल मेरा पति ऐसा ऐसा करता है और इससे मुझे रुकावट होती है, मेरी पत्नी ऐसा ऐसा करती है, और जीवन में कुछ विशेष बात घटित हुई है, या कुछ आप जानते हैं, बस जो आपके हृदय पर है, कोई चीज जो आपको परेशान कर रही हो। मैं सोचता हूँ ये अच्छा रहेगा कि आप तब इसे वहाँ देखें, हो सकता है आप एक प्रश्न पूछें और ये किसी और के लिए उत्तर हो। देखिए, उनकी भी वही समस्या हो सकती है, और जो आपके हृदय पर हो इसे संक्षेप में जितना हो सकता है लिखें। मेरा बच्चा लगता है गलत जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरा पति है जो मेरे साथ कलीसिया में नहीं आना चाहता है, मेरे साथ घमंड वाला व्यवहार करता है, मुझे क्या करना चाहिए। एक पत्नी इस प्रकार की है, या आप जानते हैं, बाइबल यहाँ ये कहती है और दूसरी जगह ये कहती है, मुझे ये समझ नहीं आता, मैं ये जानना चाहता हूँ इसका क्या अर्थ है। और मसीही मामले में क्या मुझे चाहिए कि मैं एक कार्यस्थल में कार्य कर रहा हूं और मालिक ऐसा ऐसा कहता है, और वो मुझसे अपने साथ दावत में जाने के लिए कहता है, और इस दावत में वे पीते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं इस प्रकार की बातें मनुष्य के विचार में होती हैं। हम चाहते हैं कि आप, और इसलिए तब मुझे इसके बाद वापस जाना है एरिजोना को, और मैंने सोचा मुझे एक प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए अवसर मिलेगा कि समझें, और सबसे अच्छा जो मैं कर सकता हूँ, मैं चाहूँगा जितने अधिक से अधिक मैं आप प्रचार मंच पर रख सकूँ इसके पहले कि आप जाएं, बस लिख कर और इसे यहाँ रख दें, और भाई नेविल या उनमें से एक उन्हें मुझे दे देगा, और सप्ताह पहाड़ों पर मेरे पास अवसर होगा कि इसका अध्ययन करूं और इसके लिए प्रार्थना करूं और हर चीज के लिए आपके वास्ते वचन से उत्तर ले सकूं, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं, क्योंकि इसी के कारण हम यहां जमा हुए हैं कि एक दूसरे की सहायता करें, समझे। जैसा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, आप मेरी सहायता करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अब तब भूले नहीं, ये अगली रविवार प्रातः होगा। और अब आज हम जैसा कि अक्सर क्या मिलने वाले हमारे बीच में हैं और कितने 100 मील से ज्यादा से आए हैं, अपने हाथ उठाएं। ये तो भक्त मंडली के 99% हैं। कुछ रविवारों पहले मैंने कहा कितने इतने से अधिक दूरी से हैं या कुछ और, मुझे जेफरसन विलेज से कोई हाथ नहीं मिला। ओ अगले दिन ये मुझे मिला, यद्यपि उन्होंने कहा भाई ब्रनम सारे आने वाले अंदर हैं और कहा हम कलीसिया अपना स्थान उन्हें लेने देते हैं। ऐसा कहा, वे आए, सैकड़ों आए और भीतर ना आ सके। कहा क्योंकि हमने आने वालों को देखा। अब ये आसपास जेफरसन विले के लोगों के लिए अच्छा है। हम इसके लिए आभारी हैं, जेफरसन विले और न्यू अल्बनी और आसपास के लोग, हम इसके लिए आभारी हैं। कितने हैं जो 1000 मील से अधिक से हैं? ओ कितने 1000 मील से अधिक दूर से हैं? अपने हाथ उठाएं। ओ बाप रे, ये बहुत अच्छा है। ये पिछले रविवार एक सप्ताह पहले मैं एक विषय पर बोला, दुल्हन और दूल्हे का भावी घर, और मैं सोचता हूँ हम 1500 वर्ग मील के आसपास से हैं, और ये होना है। ये नगर का सही माप है जिस विषय पर बोल रहा था, 1500 वर्ग मील। मैं उसी पर तब से भोजन कर रहा हूँ, ये जानते हुए जब ये जीवन पूरा हो जाएगा तो मैं उस नगर को जा रहा हूँ। मैं उस नगर से बंधा हुआ हूँ और कोई चीज मायने नहीं रखती। क्या यदि आज सूरज ना चमके या कल कभी ना आए, इससे क्या अंतर पड़ता है? हमारे पास घर है, एक विश्राम स्थल। थके हैं या थके नहीं हैं, फिर भी हमारे पास विश्राम स्थल है। आप कहते हैं ये तो बूढ़े मनुष्य का स्वप्न है। नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये बाइबल का सत्य है। एक रात्रि यहाँ से बोलने के पश्चात एक आदमी प्रचार मंच से पीछे से, जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर गया, मुझे कार तक ले जाने का यत्न कर रहा था, और इस युवा व्यक्ति ने कहा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बिली और कुछ भाई मुझे कार तक ले जाने का यत्न कर रहे थे। उसने कहा क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? मैंने कहा श्रीमान कहिए। और उसने कहा आप आज रात्रि बात कर रहे थे, उन स्त्रियों पर चिल्ला रहे थे जिस प्रकार से वे कपड़े पहनती हैं, उन कपड़ों को पहनती हैं। कहा आपकी आयु का व्यक्ति ये सोच सकता है, परंतु यदि आप मेरी आयु में होते तो आप अलग तरह से सोचते। मैंने कहा आपकी कितनी उम्र है? उसने कहा मैं 27 वर्ष का हूँ। और मैंने कहा मैं तुमसे 10-15 वर्ष छोटा था, मैं इसी बात का प्रचार कर रहा था, समझे? मैंने कहा लड़के यही जो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारी आंखें तुम्हारे हृदय से देखती हैं। और उसने बस अपना सर झुका लिया और चला गया। मैं समझता हूँ इसका कोई और उत्तर नहीं है। देखिए, ये निर्भर करता है यहाँ क्या है, यहाँ से क्या निकलता है और यहाँ। देखिए, यीशु ने कहा यदि तुम जो यहाँ हैं उससे भिन्न कहते हो तो तुम ढोंगी हो जाते हो। इस प्रातः मैं आनंदित हूँ कि कहीं भक्त मंडली में एक को होना है, मेरा मूल्यवान मित्र भाई आदरणीय एडी बिस्कल और उसकी पत्नी और बालक। मैं समझता हूँ इस सुबह वे सभा में आए हैं। एडी, क्या तुम यहाँ हो? मैंने सोचा तुम, अच्छा हो सकता है वो ना आ पाया हो भाई। ओ हाँ, उधर, अब ये नहीं, आमीन कोने में। एडी, तुम यहाँ प्रचार मंच पर हमारे साथ स्वागत है, सेवकों के साथ यदि तुम आना चाहते हो। और फिर हम लोग भाई एडी के साथ में थे जब प्रभु ने मुझे भालू और करीबू के लिए दर्शन दिया था। वो कितनों को याद है जब मैंने आप लोगों को बताया था? ठीक है, ये वहाँ पर था। ये वो युवा लड़का था जो चारखाने की कमीज पहने था, भाई एडी बिस्कल। और ये वहाँ खड़ा था जहाँ, और पूछा, मैंने उनसे पूछा यदि उनमें से किसी के पास चारखाने वाली कमीज है। किसी के पास नहीं, ये किसी के पास नहीं थी। मैंने कहा भाई ये हो सकता है, ये चारखाने वाली कमीज होनी है। वहाँ एक बड़ा सिल्वर टेप वाला भालू होना है और एक प्रकार का जानवर जिसके 42 इंच के सींग हो, ऐसे से हिरन जैसा दिखता है। और ये मैंने 6 महीने पहले कहा, इसके पहले कि ये घटित हो, इस विषय में पहले से और इस वर्ष के पहले। तब मुझे इस व्यक्ति के पास से शिकार का निमंत्रण मिला। उस देश में मैं पहले कभी नहीं गया था, वहाँ जहाँ हम गए थे। और मैंने ये कहा परंतु छोटी पगडंडी जो अलास्का के राजमार्ग, जहाँ सिवाय जंगल के कुछ नहीं और पहाड़ और जानवर। और उस रात्रि उस ट्रेलर पर जब मैं ये भाई बिस्किल को बता रहा था, और भाई साउथविक उसने कहा अच्छा मैं हम भेड़ों के इलाके में जा रहे हैं। कहा ये वहाँ नहीं होगा। और मैंने कहा हाँ। और मैंने कहा ये कोई छोटा लड़का मेरे साथ था, चार खाने वाली पहन रखी थी, किसी के पास चेक की कमीज नहीं थी, भाई बिस्किट के पास नहीं थी, हम में से किसी के पास नहीं थी। दूसरी रात्रि हमने चित्तीदार एक मेड़ा वहाँ पेड़ों के कतार में देखा। अब ये वहाँ था जहाँ पेड़ भी नहीं उगते, वहाँ जहाँ कुछ नहीं सिवाय कैरिबू और भेड़, और हमने कहीं दूर देखा। उस दोपहर बाद मार्ग पर भाई बिस्किल ने ठोकर खाई और पानी में गिर पड़े और भीग गए। अगली सुबह हम जल्दी उठे और हमने मेड़े का पीछा किया जहां हमने सोचा हम उसे पाने जा रहे हैं, और उसके हम वहां पहुंचे और हम अपना खाना खाया और हम मेड़ों को नहीं ढूंढ पाए और भाई बिस्किल ने कैरिबू मारा था। इसलिए फिर मैं चारों ओर देख रहा था और हम ऊपर गए। भाई साउथविक ने मुझसे कहा मैं विश्वास करता हूँ हम, यदि भाई ब्रैनम आप आराम से चलना चाहते हैं, हम इस वाले पहाड़ पर जाएंगे इधर नीचे की ओर, वे मेड़े यहाँ नीचे जा सकते हैं जो कि लंबा रास्ता है, परंतु ये अंधेरा नहीं होगा जब तक कि अधिक देर ना हो जाए, या कुछ 10 या 11 बजे थे। ये उन पथरीले पहाड़ों पर लंबा रास्ता था, इसलिए मुझे चलना अच्छा लगता है। इसलिए हम वहाँ अपने हाथ एक दूसरे के चारों ओर डाले खड़े थे। हम दोनों की दाढ़ियाँ सफेद हो रही थी, एक दूसरे के हाथ डाले हुए चिल्ला और जान रहे थे। मैंने कहा भाई बर्ड, मुझे आशा है किसी दिन सहस्र शताब्दी में मैं इन सारे पहाड़ों पर चल सकता हूँ वहाँ पर। उसने कहा भाई ब्रैनम मुझे आशा है कि मैं आपके साथ होऊंगा। और हम वहाँ खड़े हुए आनंद कर रहे थे प्रभु में, और मैं पहाड़ों से बहुत प्रेम करता हूँ। और फिर हम नीचे चले गए, वहीं जहां भाई बिस्किल ने कैरिबू को मारा। यही वो इंडियंस के लिए मिशनरी है और वो इसे अपने इंडियंस को खिलाना चाहता था। इस प्रकार हम नीचे जाकर अपना खाना खाया और उस कैरिबू को तैयार करके वापस आ गए। बर्ड और मैं पहाड़ के पार जा रहे थे और जब हमने उधर की ओर देखा वहाँ पर, और अपनी दूरबीन से दूर मैंने इस जानवर को चिन्हित कर लिया जिसको मैंने देखा था। उस बड़े मैदान में जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था, भाई बिस्किल हमारे बराबर में खड़े थे, और इसलिए मैंने कहा वहाँ वो जानवर है। और उसने दूरबीन लगाई और बोला ये तो बहुत बड़ा विशाल कैरिबू नर है। मैंने कहा मैंने कभी नहीं देखा, मैंने सोचा इसके पास ढेर सारे सींग हैं, परंतु इसके पास छोटे सींग हैं। वो विचित्र सा दिखने वाला जैसा मैंने दर्शन में देखा, मैंने पहले कभी कैरिबू नहीं मारा था, इसलिए ठीक है। उसने कहा यदि प्रभु आपको देता है, कहा ये बस होगा। मैंने कहा हाँ इसे ही होना है, केवल एक ही चीज के लिए मुझे आश्चर्य है कि उस चार खाने वाली कमीज के लिए। और मैंने घूम कर देखा और भाई एडी उसकी पत्नी ने इसे रखा होगा, वो वहाँ उसके साथ थी उसके सामने वाले थैले में। एक दिन पहले जब वो भीग गया था उसने कमीज बदली और वहाँ वो चेक वाली कमीज थी। मैंने कहा यही है। जब मैं वहाँ पहुँचा और उस कैरिबू को लिया, वो बर्ड ने मुझसे कहा बोला अब भाई ब्रैनम आप कहते हैं ये सींग 42 इंच के हैं। मैंने कहा यही जो वे होंगे। उसने कहा मुझे देखा जैसे 92 इंच के लगभग। मैंने कहा नहीं ये 42 इंच के हैं। उसने कहा अब आपके मुझे बताने के अनुसार इसके पहले कि हम उस लड़के के पास वापस जाएं, वहाँ नीचे जहाँ एडी ने चार खाने वाली कमीज पहन रखी है, जहाँ वे नीचे हमें पहाड़ के नीचे मिलने वाले हैं कुछ मीलों पर, कहा आप एक ग्रिजली भालू को मारने वाले हैं। मैंने कहा ये यहोवा यूं कहता है। उसने कहा भाई ब्रैनम वो कहाँ से आने वाला है, मैं लगभग 50 मील चारों ओर देख सकता हूँ। मैंने कहा वो अब भी यहोवा येरे है, प्रभु स्वयं ही देगा। देखिए वो गिलहरी को अस्तित्व में ला सकता है, यदि वो मेड़े को अस्तित्व में ला सकता है, यदि उसने भालू के विषय में कहा है तो वो भालू अस्तित्व में आ सकता है। हम इस भारी भरकम कैरिबू को नीचे ले जाने का यत्न कर रहे थे, इस परितोषक को नीचे पहाड़ से, और मैंने समय रहते बंदूक को बांध लिया और तब वो बंदूक को बांध लेगा और इस प्रकार से। और जब हम लगभग बड़े ग्लेशियर के पास आ गए, हम वहाँ नीचे आ गए, ये एक प्रकार से गर्म था। हम ग्लेशियर की बर्फ में आए और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर वहाँ बैठे। उसने कहा भाई ब्रैनम आप जानते हैं हम एडी और ब्लेन से मील से अधिक दूर नहीं है, वे दोनों लड़के खड़े हैं, उस पुराने भालू को दिखाई देना चाहिए। मैंने कहा बर्ड मैं विश्वास करता हूँ कि तुम इसका संदेह कर रहे हो। उसने कहा भाई ब्रैनम मेरे भाई को बहुत वर्षों से मिर्गी के दौरे आते हैं, और आपने मुझसे एक बार कहा था पहली बार जब यहाँ जब हम दूसरे स्थान पर गए थे, मुझे बताया था कि वो लड़का कैसा दिखाई पड़ता है, और एडी घोड़े पर मेरे साथ साथ चल रहा था जब प्रभु ने दर्शन दिया था। मैंने उन्हें बताया था कि उस लड़के के साथ क्या करना है, दौरे रुक गए। और अब उसने कहा मैं इसका संदेह नहीं कर सकता। मैंने कहा बट मुझे नहीं मालूम कि भालू किधर से आ रहा है। परंतु मैं अब लगभग 50-55 का हो गया हूँ, इसलिए ये लगभग 3 वर्ष पहले का है। मैं लगभग 52-53 का था। मैंने कहा मैंने इसे कभी भी असफल होते नहीं देखा। परमेश्वर मुझे वो ग्रिजली भालू देगा इसके पहले कि मैं उन लड़कों के पास पहुंचूं। और हम नीचे लगभग वहां थे जहां से स्प्रूस वृक्ष और पेड़ आरंभ होते हैं, और पहाड़ से थोड़ा नीचे हम लगभग पेड़ों में थे। वो नीचे बैठ गया, वही था जिसने शिकार को बांधा हुआ था। मेरे पास बंदूक थी और उसने कहा अच्छा हो कि अब उस पुराने भालू को अपने आप को दिखा देना चाहिए, क्या नहीं चाहिए था। मैंने कहा वो वही होगा, तुम चिंता ना करो। उसने कहा मैं हर पहाड़ को देख सकता हूँ। मैंने कहा परंतु मैं प्रतिज्ञा को देख रहा हूँ, समझे। देखिए उसने प्रतिज्ञा दी है। मैंने कहा वो जो भी है। मैंने कहा बर्ड वहाँ पर वो क्या बैठा हुआ है। उसने कहा देखा, बोला ये एक बड़ा सिल्वर टिप भालू है। कहा ये वही है। जब हमने भालू को लिया और वापस आए, मुझे स्मरण है कि दर्शन में मैंने आपको बताया मैं बंदूक के विषय में डरा हुआ था। ये छोटी 0.270 थी, छोटी गोली, आप देखिए ये टेप पर है। और मैंने भालू को ले लिया लगभग 500 गज से, जैसा ये कहा गया था। बट बोला आप अच्छा हो कि उसे पीछे से लें। उसने कहा क्या आपने पहले कभी ग्रिजली भालू मारा है। मैंने कहा नहीं। उसने कहा ओ वे नहीं जानते कि मृत्यु क्या होती है, मुझे ये बाद में पता चला। इसलिए उसने कहा वे डर से नहीं घबराते। कहा अच्छा हो कि आप उसे गोली मार दो। मैंने कहा दर्शन के अनुसार मैंने उसके हृदय में गोली मारी है। उसने कहा ठीक है, यदि दर्शन ने ऐसा कहा है मैं आपके साथ खड़ा होने जा रहा हूँ। और मैंने कहा यहाँ हम चलते हैं। और हम थोड़ा पास पहुँचे और जब मैं उठा भालू ने मुझे देखा, यही जो वो चाहता था कि हमला बोले। और मैंने भालू पर गोली दागी, ऐसा लगा ही नहीं कि उसके गोली लगी है। और वो आगे बढ़ा और इसके पहले मैं दूसरी गोली बंदूक में डालूं, भालू उससे लगभग 50 गज पर मर गया। बर्ड का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कहा भाई ब्रणम मैं इसे अपनी गोद में नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं, मैं प्रसन्न हूँ कि दर्शन ने कहा तुमने उसे मार लिया। उसने कहा अब यदि वे सिंह 42 इंच के हैं, मैं करने जा रहा हूँ, मैं ये कहूँगा जिस प्रकार से उसने किया। कहा मैं चिल्लाने के लिए तैयार होने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम अब भी कर सकते हो क्योंकि यही हो जो होने जा रहा है। जब हम भाई एडी के पास पहुँचे, मैंने भाई एडी से कहा हमने घोड़ों को खोल दिया है, वे भालू से डरे हुए हैं और ओ प्रभु उन्हें सूंघने में आ जाता है। हम उसकी खाल नहीं उतार सकते थे, बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन वापस आना था और फिर हमने रस्सियों को 10 गुना खोल दिया था और घोड़े हर तरफ दौड़ रहे थे। इसलिए तब हम नीचे गए। उसने कहा जाकर उसके सामान के थैले में से नापने का फीता ले आओ, ब्लेन ने कहा। मैंने भाई एडी से कहा, मैंने कहा अब उस छोटे हाथ पर ध्यान देना उसके अनुसार। मैंने सोचा ये बिली पॉल हो सकता है, छोटा सा हाथ नापने के फीते को सींग पर लगा रहा था। मैंने कहा छोटे हाथ पर ध्यान करना। भाई एडी को मुक्का मारा, हम पीछे हट गए। उसने ठीक उसी प्रकार रखा, ठीक उसके सिरे पर 42 इंच, देखिए ठीक उतना। यीशु कभी असफल नहीं होता, वचन कभी असफल नहीं होगा जब तक ये परमेश्वर के पास से आता है। मैंने अभी अभी अपने बीच में भाई और बहन जैक्सन को दक्षिणी अफ्रीका से देखा। मैं सोचता हूँ उनका परिचय हो गया है। और क्या भाई जैक्सन इस प्रातः खड़े हो जाएंगे, आप और बहन जैक्सन? मैं चाहता हूँ कि उन्हें देखूँ। मेरा भाई एडी यहाँ एक पुराना साथी शिकारी दक्षिणी अफ्रीका से भी वहाँ नीचे। प्रभु आपको आशीष दे भाई जैक्सन और बहन जैक्सन, आपको यहाँ अपने साथ पाकर प्रसन्नता हुई। और भवन में सारे सेवकगण अपने हाथ उठाएं, ये सारे सेवकाई में हैं। भाई ये बहुत अच्छा है और बढ़िया है, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे, आप सबको अपने साथ पाकर आनंदित हैं। मैं कुछ ही मिनटों में प्रार्थना पंक्ति को लेने जा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे खड़े हो जाएं और मेरे लिए प्रचार करें। आपको पाकर हम प्रसन्न हैं, आप में से प्रत्येक को। जब मैं आपकी ईमानदारी के लिए सोचता हूं और राष्ट्र में दूर दूर से आ रहे हैं और आदि आदि कि मुझे प्रिय प्रभु के विषय में बोलते हुए सुने, आपको भरोसा जो आप करते हैं वो मेरी प्रार्थनाएं सुनता है। मैं अभी व्यक्तिगत साक्षात्कार में बात कर रहा था इस कलीसिया के एक विशेष सदस्य से। 45 मिनट से अधिक नहीं हुआ, टूटे हृदय की माँ। और जैसे ही मैंने उस स्त्री से कुछ कहना आरंभ किया, मैं नहीं जानता कि वो चाहती है कि नहीं मैं ये कहूँ, और वहाँ पर वो वही ज्योति आ गई जो आप इस चित्र में देखते हैं। ये सब समाप्त हो गया, वो खुशी के साथ चली गई। हम बहुत ही आनंदित हैं आज इस बदलते हुए युग में जिसमें हम जी रहे हैं, जहां आप अपना भरोसा कठिनता से किसी चीज पर रख सकते हैं। हमारे पास राज्य है जो हिल नहीं सकता, ना हिलने वाला, जिब्राल्टर की चट्टान नहीं, परंतु हमारा विश्वास युगों की चट्टान पर टिक सकता है, यीशु मसीह के ऊपर ना हिलने वाली उद्धार की चट्टान। मैं बहन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो तीन खाने वाला बक्सा लेकर आई है मेरी पत्नी के लिए एक बाइबल के साथ जो यहाँ पर है। उसने प्रभु के साथ इस बॉक्स के लिए वाचा बांधी थी, उसने ध्यान रखा। इसमें कुछ पुराने समय की तस्वीरें हैं और उसने प्रभु से मांगा। उसने बॉक्स को थोड़ा अधिक प्रेम से रखा था, संभवतः एक छोटा आम बॉक्स पिरामिड के आकार का, और वो इसे मेरी पत्नी के लिए बाइबल के साथ लाई। धन्यवाद बहन, आप में से हर एक छोटा उपहार और चीजें जो आप लोगों ने बिली पॉल को दी और वो मेरे पास ले आए, मैं हर चीज के लिए आभारी हूँ। परमेश्वर आपके साथ हो। अब अगली रविवार प्रातः को न भूलें, और जैसे ही आज सभा समाप्त हो अपने प्रश्न लिख लें। यदि आप नहीं सकते तो अगले रविवार की प्रातः लाएं। मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, तब उन्हें कमरे में लाने दें ताकि वचन की भूमिका के लिए मैं समय दे सकूं, और अगली रविवार प्रातः हम उत्तर देंगे प्रभु ने चाहा तो। अब यहाँ बहुत सारे रोमाल रखे हुए हैं, अपनी टिप्पणियों को लेने के लिए मैंने इन्हें पीछे खसका दिया है, और मेरा और मेरी बाइबल भी, इसलिए या मेरी बाइबल और मेरी टिप्पणियाँ बल्कि, ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह हो सके, परंतु मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे अपने वचन लिखूंगा, मेरे पास समय कम है। मैं आपको इस प्रकार से नहीं रोकूंगा जैसे मैंने बीते समय किया। मैं यहाँ लगभग 4 घंटों से हूँ। मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की है, यदि मुझे इस प्रकार टेप करना है तो मैं स्वयं यहाँ टेप करूँगा या कुछ और, ताकि मुझे आपको इतना लंबा ना रुकना पड़े। क्या डॉक्टर लीवाइल इस प्रातः हैं? मैं डॉक्टर लीवाइल से पूछना चाहता हूँ, यदि क्या आप यहाँ हैं भाई वाइल? यदि आप यहाँ हैं तो अपना हाथ उठाएं। क्या वह पीछे हैं? ठीक है, धन्यवाद भाई रॉय। और मैं उन टिप्पणियों को जांचने के लिए निश्चित होना चाहता हूँ। आप कहीं पीछे भीड़ में हैं, मैं नहीं देख सकता, या हॉल में। हमें ध्यान देना होगा, बहुतों को खड़ा ना होने दें। अग्नि रक्षक हमें ये नहीं करने देगा, आप देखिए। और इसलिए हम, मैं चाहता हूँ कि सर्प वंश पर आप मेरे प्रकाशन को परखें कि उसे पहले में डाला जाए, इफ्सियों कलीसिया काल, जिसे वो मेरे लिए व्याकरण सही करके लिख रहा है, सुंदर रीति से किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप उसे जांच करके और किसी को इसके विरोध में कुछ कहने दें। अब वो सर्प वंश भले ही ये सही या गलत था, इसलिए प्रभु ने मुझे ये बीते कल दिया। ओह, ये तो परे है। कैसे मुझे एक संदेश मिलता है, मैं उसके साथ चलूंगा और कुछ मुझ पर प्रहार करता है तब, और यदि मैं ये जानता हूँ कि ये परमेश्वर है, मैं इसे लूंगा और पवित्र वचन में ढूंढूंगा, तब मैं, ये कभी भी असफल नहीं हुआ, परंतु उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य सत्यता में चलता है। कोई मतलब नहीं लोग इस विषय में क्या सोचते हैं। और ये बहुतायत से था जो कभी उन 7 मोहरों में से हुआ। देखिए, ये उस समय हुआ। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। अब जैसा कि हम अध्ययन करते हैं अब वचन के सम्मान में, और अब मैं विश्वास करता हूं कि इंजीनियर जो भी हैं, इस माइक सिस्टम पर यह आवाज थोड़ी गूंज रही है। अब क्या आप पीछे सुन सकते हैं? ठीक है, अपने हाथ उठाएं यदि आप सुन सकते हैं। बहुत अच्छा। अब आइए अपनी बाइबलों में से 2 स्थानों पर वचनों को निकालें, और मैं इसमें से संदेश लेने का यत्न करूंगा यदि प्रभु ने चाहा। और अब आइए मरकुस का 5वां अध्याय और पहला राजा 10वां अध्याय। मरकुस 5वां अध्याय, पहला राजा 10वां अध्याय। अब उन अपरिचितों को छोड़ जो हमारे बीच हो सकते हैं, ये हम अपने संडे स्कूल में रखते हैं, एक बड़ी कक्षा में, और ये कक्षा यहाँ पर है, क्योंकि स्थान सारे लोगों से भर गया है और हम अलग अलग नियमित कक्षाएं नहीं कर सकते और हम वचन पर थोड़ा अध्ययन करते हैं, एक साथ संगति करते हैं। हम नहीं हैं, हम कोई नामधारी नहीं हैं, हमारा कोई नामधारी नहीं है। हम प्रभु में स्वतंत्र हैं, हमारा हर धर्मी झुंड होने का अर्थ नहीं। हम तो बाइबल की शिक्षा देते हैं और बस इतना ही। प्रभु हमारे लिए बहुत भला है जब तक वो इसका समर्थन करता है कि ये सत्य है और ये हमें महान सांत्वना देता है। और अब आप लोगों का हमारे बीच में स्वागत है कि हमारे बीच कभी भी हों। अब मैं यहाँ सारे समय नहीं होता हूँ, परंतु यहाँ हमारे पास कुछ अच्छे पास्टर हैं। भाई नेविल हमारे एक पास्टर, भाई कैप्स हमारे एक और पास्टर, और भाई कॉलिंस विलार्ड कॉलिंस एक हमारे और पास्टर, और फिर हमारे पास अलग अलग भागों में अलग अलग हमारी छोटी छोटी कलीसियाओं में। यदि आप यहाँ आसपास टेक्सास में हैं तो मार्टिन भाई लोग यहाँ हैं, और भाई वो कौन भाई है जो यहाँ आपके साथ यहाँ आया है? इस प्रातः मैं भाई ब्लेयर को नहीं देख पा रहा हूँ। ओ भाई ब्लेयर, मैंने आपको नहीं देखा। भाई ब्लेयर, भाई रुडल ठीक यहाँ पीछे है, हमारी कलीसिया 62 पर, हमारी यहाँ एक छोटी कलीसिया। भाई जूनियर जैक्सन ठीक यहाँ भाई ब्लेयर के पास बैठे हैं, अब मैं उसे अपनी छोटी कलीसिया के समान देखता हूँ। और हमारे सारे राष्ट्र में हर कहीं कलीसियाएं हैं। भाई जैक पामर अपने मार्ग पे हैं, मैं सोचता हूँ वे थोड़ी गति पकड़ रहे हैं अपने लड़के की नई कार के साथ। आप जानते हैं एक प्रकार से वे अपनी गति से अधिक तेज चल रहे हैं, और एक दुर्घटना हो गई थी, उसके जबड़े पर चोट लग गई, इसलिए वो नहीं आ पाया, वो घर वापस चला गया, इसलिए अब वो ठीक है। और हम भाई बेन यहाँ एक हमारा भाई है यहाँ कैंटकी में, उसने उसे आज सुबह फोन किया कि देखे उसे पैसे की कोई आवश्यकता है कि कलीसिया उसकी सहायता कर सके। उसने कहा हर चीज ठीक ठाक थी। वो मोड़ पर तेजी से गाड़ी काट रहा था और बजरी पर आ गया और उसके जबड़े पर चोट आई या कुछ, और उन्होंने वहाँ फोन किया। जब वो अपनी कार एक स्थान पर लाया या कुछ और प्रार्थना के लिए कहला भेजा। भाई बिली कॉलिंस भी हम जानते हैं, उनका अंगूठा बुरी तरह से कुचल गया, उसकी हड्डी टूट गई। मैंने सुना उसकी हड्डी को सही बैठाना है, इसलिए हम उन्हें प्रार्थना में याद रखना चाहते हैं। अब कारण कि हम खड़े हैं, जब झंडे निकलते हैं, हम राजभक्ति की शपथ लेते हैं या कुछ, हम सदा सावधान खड़े होते हैं, या सलामी, या कम से कम खड़े होकर अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, जो कि हमें ये करना चाहिए अपने झंडे के लिए। और तो हमारे प्रभु के विषय में क्या है जब हम उसका वचन पढ़ रहे हैं? आइए अब खड़े हों, जैसा कि हम संत मरकुस 5 पढ़ते हैं और 21वें पद से आरंभ कर रहे हैं। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं, ध्यान दें। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था। यहील नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब यीशु उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, उत्तरी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और बल्कि अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और उसने लड़की से कहा, और वो मुझे क्षमा करें, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर वे लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। पहले राजा की पुस्तक में 10वें अध्याय की हम ये 3 पद पढ़ते हैं।
And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning,
जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वो तो बहुत भारी दल के साथ, मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट के साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वो उसको न बता सका। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जैसा कि हम बाइबल की इन कहानियों में पढ़ते हैं, हमारे हृदय आनंद से उछलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर है और तू कभी बदलता नहीं। तूने अपनी रीति कभी नहीं बदली, तूने अपने मार्ग नहीं बदले, तू सदा तक परमेश्वर है। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज प्रातः इसका अनुवाद हमारे पास लाएंगे, इन वचनों का जो आप हमें ये बताना चाहते हैं, कि हमारे हृदय परखे जाएं और आज हमारे मध्य में महान पवित्र आत्मा आए और हमारे विचारों और हृदयों को परखे और होने पाए कुछ भी छूटने ना पाए जो कि हमारे हृदय ना। और जब हम यहाँ से निकलते हैं तो आनंद से भरे हों कि हम ये कहेंगे उनके समान जो अमाउस से उस रात्रि आए, क्या हमारे हृदय हम में उत्तेजित ना हुए जैसा कि उसने हमसे मार्ग में बातें की। तू सदा ही परमेश्वर बना रहता है और हम तेरे भूखे बालक हैं, इस सुबह जमा हुए हैं, क्योंकि लिखा है, मनुष्य हर वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हमारे यहाँ एकत्र होने में आशीष दें और प्रभु इन सब लोगों को जो सैकड़ों हाँ हजारों मील से यहाँ पर आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि ये घर जाते हैं इनके हृदय संतुष्ट होंगे परमेश्वर की दया और अनुग्रह की अच्छी बातों से, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
A very odd little text.
एक बहुत ही भिन्न छोटा विषय, 3 शब्दों का, जो कि मैं इस सारे पढ़े जाने में से बोलना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं ये बहुत छोटी सी बात है, तीन शब्द उस सब में से जो आपने पढ़ा बाइबल के दो अध्यायों में से एक भाग, परंतु मैंने ये भूमिका के लिए किया कि इन तीन शब्दों को लूं, अपने वचन को सिद्ध करना। आप जानते हैं कि बाइबल में एक वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:21, जहां ये लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जब कोई चीज परखी गई वो या तो सही सिद्ध हुई या गलत। जब वहाँ कोई बात प्रश्न में है उसे परखा जाना चाहिए जब तक आप ये ना पा लें कि सही क्या है, और तब जैसा कि आप पाते हैं कि सही क्या है, ये कहा कस कर पकड़ लो। दूसरे शब्दों में इसे जकड़ लो, इसे ढीला ना छोड़ो, इसे कस कर पकड़ो। दूसरे शब्दों में इसे कस कर पकड़ो, इसलिए कि ये फिसलेगी नहीं। जो अच्छा है उसे कस कर पकड़ लो, उसके सही सिद्ध हो जाने के बाद। और कोई चीज सही सिद्ध नहीं हुई तो जितनी जल्दी उसे छोड़ सकते हो छोड़ दो, उससे अलग रहो। कभी भी गलत चीज ना पकड़ो। अब ये संभव है कि पक्के मसीही अच्छे लोग कभी कभी पकड़ लेते हैं, गलत पकड़ लेते हैं, सोचते हुए कि ये सही है, परंतु तब ये चीजें सही सिद्ध होनी चाहिए, चाहे वे सही या गलत हैं। और ये हम सब का कर्तव्य है, जैसे कि हम स्वर्ग में जाने की आशा कर रहे हैं जब यीशु आता है, और ये सेवक का कर्तव्य है जब कोई प्रश्न आता है कि वो इसे हल करे और तब लोगों के सामने सिद्ध करे, ताकि वे समझ सकें, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि वो गलत पाया जाए, गलत चीज को पकड़े हुए। इसलिए हमारे पास एक वचन है और यीशु ने कहा सारे वचन पूरे होने हैं, कि हमें सारी चीजें परखनी चाहिए, और फिर कस कर पकड़ लो या कस कर पकड़ो, इसे मृत्यु सी पकड़ कर लो, और इसे ढीला ना छोड़ो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। मुझे याद है विद्यालय में मैंने कुछ सीखा, और आप में से बहुतों ने वही पाठ सीखा। जब आपने एक प्रश्न का हल निकाल लिया, उस पर काम कर लिया, आप उत्तर को ले सकते हैं और इसे प्रश्न के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। आप में से कितनों ने कभी ये किया है? निसंदेह सबने। तब आपको चिंता नहीं करनी है कि आपका उत्तर सही है या नहीं, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से सिद्ध हो गया, इसलिए आप जानते हैं कि आपका उत्तर सही है। यदि आप में से प्रत्येक अपनी स्लेट पर या कागज पर सिद्ध हुआ है, प्रश्न द्वारा सिद्ध हुआ है, उत्तर प्रश्न से सिद्ध हुआ है, तो फिर आपको मिल गया। कोई इसे गलत नहीं कह सकता, आपको लेना ही है। और यदि आप अपना कार्य सफाई से और सही करते हैं और जिस प्रकार से होना चाहिए, और आपका उत्तर सिद्ध हो गया, आप बैठ सकते हैं और विश्राम के साथ आश्वस्त होते हैं कि आपको ए मिलने वाला है इस पर कॉपी के उस कागज पर जिसे आपने पलटा है, क्योंकि ये सिद्ध हो गया है, प्रश्न के द्वारा सिद्ध हो गया है। अब ये पुरानी कहावत भी है, इसे सिद्ध करो और मैं इसका विश्वास करूंगा। अब ये हमारे एक प्रांत में भी है, हमारे राष्ट्र में एक प्रांत, उनका एक नारा है, मैं मसूरी से हूँ, मुझे दिखाओ। देखिए, दूसरे शब्दों में मुझे सिद्ध करो कि मैं मसूरी से हूँ। परंतु ये हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने हर युग में पूरा किया और कार्यों को सिद्ध किया, उसने ये उस युग के लिए तय किया है और इसे अपने वचन में बोला, और हर बार परमेश्वर का वो वचन उस युग में प्रमाणित हुआ और अधिकांश ने इसे नकार दिया। इसलिए सिद्ध करो, मैं इसका विश्वास करूंगा, ये ऐसा नहीं है। आप केवल एक विश्वास पा सकते हैं जैसा कि परमेश्वर आपको देता है। विश्वास परमेश्वर का दान है। आप कितने भी धार्मिक हो सकते हैं, फिर भी इसे लेना चाहिए। आपके पास विश्वास होना चाहिए और आपका विश्वास केवल टिक सकता है यदि आप मसीही हैं, परमेश्वर के सिद्ध किए वचन पर। अब याद रखें, परमेश्वर ने अपना वचन हर युग के लिए ठहरा रखा है और पहले से बताया कि इस विशेष युग में क्या घटित होगा कि वो जो बोल रहा था। अब यदि मूसा नूह के संदेश के साथ आता तो इससे काम नहीं चलता। यदि यीशु मूसा के संदेश के साथ आता तो इसने काम नहीं किया होता, या एक नबी दूसरे नबी के संदेश के साथ आता ये कार्य नहीं करता। परंतु उसके नबियों के द्वारा उसने अपनी स्वयं की सारी संपूर्णता और योजना को प्रकट किया। इसलिए बाइबल में एक भी वचन नहीं मिलाया जा सकता है या एक भी वचन इसमें से निकाला जा सकता है। इसलिए यदि आप अपनी समस्या अपने से सिद्ध करते, आपका उत्तर आपके प्रश्न से, तो क्यों नहीं उत्तर को सिद्ध कर सकते हैं जो अब हमें वचन से मिल रहा है इस युग के लिए। यदि बाइबल किसी निश्चित चीज को इस युग में घटित होने के लिए बोलती है, ये बाइबल में है और ये घटित होगा। तब यदि आपका उत्तर जो आप लोगों को बताने का यत्न कर रहे हैं, यदि ये पुस्तक से सिद्ध है तो ये सत्य है, ये सत्य है, नहीं तो ये नहीं है। अब हम दूसरा वाला देखते हैं, तब आप कोई संदेह नहीं ये कहते हुए सुना होगा, देखना विश्वास करना है। ये एक दूसरी पुरानी कहावत है हमारे यहाँ पर, परंतु ये भी काम नहीं करती। ये काम नहीं करता क्योंकि मनुष्य बैठ सकता है और सीधा किसी चीज को देखता है और वे इसे नहीं देखेंगे। शब्द देखना, अंग्रेजी शब्द देखना, इसके बहुत से अलग अलग अर्थ हैं। सी का अर्थ एक बहुत बड़ा जल स्थल हो सकता है, और सी का अर्थ समझना हो सकता है, और सी का अर्थ किसी चीज को देखना हो सकता है, और ओ इस प्रकार के शब्द हैं जिन्हें आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जब आप कहते हैं देखना विश्वास करना है, आप गलती कर रहे हैं। जब आप इसे समझते हैं, आप इसका विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो राज्य को देख नहीं सकता। दूसरे शब्दों में राज्य को समझना, क्योंकि राज्य पवित्र आत्मा आप में, इसलिए आपको समझना है ये आप में क्या है। और केवल एक मार्ग है कि आप इसे समझेंगे कि तुलना करें ये आपसे क्या करवाता है उसके साथ जो बाइबल में कहा है ये आपसे करवाएगा। तब आपकी समस्या सुलझ गई। देखिए, और तब वो पवित्र आत्मा है। इसलिए देखना विश्वास करना नहीं है। मैं शरीर की इंद्रियों के द्वारा ये प्रमाणित कर सकता हूँ। देखिए कि देखना विश्वास करना नहीं है। मैं तेल की इस बोतल को नहीं देख सकता हूँ। मैं इसे नहीं देख सका क्योंकि ये मेरे पीछे है। फिर भी मेरे पास एक चेतना है अनुभव करने की, जो मुझे बताती है ये मेरे हाथ में है। समझे, अब मैं इसे नहीं देख सका, ये असंभव है, और अब मैं इस तक नहीं पहुंच सकता, ये असंभव है, और फिर भी मैं इसका विश्वास करता हूँ। ये देखना विश्वास करना है, ये अनुभव करना विश्वास करना है। अब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मैं ना ही इसे देख सकता या ना ही इसे महसूस कर सकता, परंतु यदि मैं इसे पास लाऊं, मैं इसे सूंघ सकूं, मैं अब भी विश्वास करता हूँ कि ये वहाँ पर है। इसलिए विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, न कि देखी चखी अनुभव सूंघना या सुनना। आप इसका विश्वास करते हैं, और विश्वास का एक आधार स्थान होना चाहिए, और कुछ भी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, परमेश्वर में विश्वास उसमें टिकने का स्थान नहीं हो सकता जब तक कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा ना हो, और वहाँ ये अनंत दृढ़ मत लेता है। परंतु इन सब के समक्ष संदेह युग और चीजें जिनमें होकर हम निकले और आज जीवित हैं, सबसे खराब है। इन सब संदेहों के समक्ष परमेश्वर अपने वचनों को सही सिद्ध करता रहा, जैसा कि उसने हर युग में किया। वो अविश्वास परमेश्वर को नहीं रोकता, ये उसके लिए बाधा नहीं है। मैं चिंता नहीं करता कि संसार कितना अविश्वास करता है, ये फिर भी होने जा रहा है। अविश्वास कुछ नहीं करता, केवल अविश्वासी को दोषी ठहराता है। अविश्वास अविश्वासी को नरक में भेजेगा। ये उसकी हर आशीष को छीन लेगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे की है, परंतु ये परमेश्वर को बाधित नहीं करता कि विश्वासी के साथ बढ़े। देखिए, अविश्वास परमेश्वर को नहीं रोकता, ये केवल अविश्वासी को रोकता है। आप कहते हैं मैं कल सूरज चमकने नहीं जा रहा है, मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। आप ये कोशिश करें, समझे? ठीक है, आप ये नहीं कर सकते। परमेश्वर ने इसे एक क्रम में रखा है और कहा ये चमकेगा और ये चमकने जा रहा है। बस यही है, उसने कहा ये चमकेगा। हो सकता है कुछ बादल उसके नीचे आ जाएं, परंतु ये अब भी चमक रहा है वैसे ही, और आप इससे परमेश्वर को रोक नहीं सकते। वो कैसे अपना वचन लोगों को बताता है? पहले परमेश्वर ये जानता है कि वहाँ अविश्वासी होंगे। अब परमेश्वर की बुद्धिमानी पर ध्यान दें। ये जानते हुए कि अविश्वासी होंगे और कैसे वे अविश्वासी बहुमत में होंगे, वो पूर्व ज्ञान के द्वारा हर युग में पहले से ठहराए हुए बीज को ठहराता है जो इसका विश्वास करेंगे। अब यदि आप इस बात पर ध्यान देंगे, हर युग के लिए उसके वचन के साथ चलने के लिए है, हर चीज समय पर है, परमेश्वर को कोई रुकावट नहीं डालता, वो आगे बढ़ता है और हर घड़ी सही आगे बढ़ रही है। हम कभी कभी सोचते हैं ये अब काम नहीं करने वाला है, परंतु आप चिंता ना करें, उसकी घड़ी समय पर है, बिल्कुल ठीक क्षण पर, और हर चीज बिल्कुल ठीक कार्य कर रही है। कभी कभी मैं आसपास देखता हूँ और इन रिकी और रिकेटाओं को देखता हूँ जो आज हमारे यहाँ हैं और सड़कों पर, और कैसे हर चीज चल रही है। मैं सोचता हूँ, ओह परमेश्वर, एक मिनट रुकिए, देखिए, वो कहता है मेरी घड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, मुझे आपको उसी आधार पर रखना है। उन दिनों मैंने पहले मनुष्य को रखा और तुम्हें लूथर के उसी आधार पर रखा और वेस्ली के उसी आधार पर रखा, क्योंकि आप देखिए, पाप उस समय इस प्रकार नहीं जाना जाता था जैसे अब। अब जब हमारे पास अधिक ज्ञान है बजाय तब जो तब था, और जब शत्रु बाढ़ के समान आता है, तब परमेश्वर का आत्मा अपने मानक को इसके विरोध में ऊंचा कर देता है, समझे? और अब आज हमारे पास अधिक ज्ञान है, अधिक समझ है, इसलिए अविश्वास की नदियां संकट में हैं, परंतु परमेश्वर इसके विरोध में अपना मानक ऊंचा करता है। परंतु दुश्मन रहे वो सदा, कारण कि वो इन चीजों को घटित होने के लिए पहले से ठहराता है। वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से बताता है कि ये होगा। जब धर्मी इन बातों को पक्का होते हुए देखता है, तब वे जान जाते हैं कि ये सही है। भले ही कोई कुछ कहता हो, वे जानते हैं कि ये सही है। हम वहाँ पर ये पाते हैं, इसमें मैं विश्वास करता हूँ, ये पहले थिस्सलुनीकियों में है। उसने कहा, उसने हमें यीशु मसीह के द्वारा अपने लेपालक बालक होने के लिए पहले से ठहराया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है मैं तुम्हें चुनूंगा और आपको नहीं चुनता, परंतु उसका पूर्व ज्ञान जानता है कि आप क्या करेंगे। इसलिए पूर्व ज्ञान के द्वारा वो व्यवस्थित कर सकता है, और उसने हर चीज को उसकी अच्छाई करने के लिए बनाया और आपकी भलाई के लिए। उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा को बताया कि जब वे उसके वचन का अविश्वास करेंगे तो क्या होगा। अब उसने सही और गलत को उनके समक्ष रखा और उसने कहा, जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और परमेश्वर का ठीक वही अर्थ था जो उसने कहा, वो सदा ये करता है, जो वो कहता है वही उसका अर्थ होता है। शैतान ने अविश्वास में उसकी अगुवाई की, क्योंकि शैतान ने स्वयं कभी इसका विश्वास नहीं किया। वो इसका विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने इसका विश्वास करने को अगुवाई की, और वो अब भी वही बात करता है और दूसरों को वही बात सिखाता है, और वे इसका अविश्वास करते हैं जैसे हवा ने किया। परमेश्वर अपने लोगों को वचन के किलेबंदी में रखता है। यही केवल आपकी सुरक्षा है, ना कि आपका नामधारी, ना कि आपका पिता या आपकी माता। ये ठीक बात है, परंतु परमेश्वर के वचन के पीछे, यही वो स्थान है जहाँ की विश्वासी सुरक्षित है, वचन के पीछे। जब वो छोटा मार्ग वहाँ तोड़ दिया गया था उस एक छोटे के साथ अचरज, यदि ये सही है या नहीं, ये नहीं होगा। तर्क भीतर आया और विश्वास का स्थान ले लिया, उन्होंने खंभे तोड़ दिए और परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया, उसने ये घटित किया। शैतान ने उससे विश्वास कराने का यत्न किया, इसका अविश्वास या तर्क, इसके साथ तर्क न करें। आप कहते हैं, भाई मैं विश्वास करता हूँ, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। जब परमेश्वर कुछ कहता है, जिस प्रकार से उसने कहा है वही चीज करनी है। आप कहते हैं, भाई मैं सोचता हूँ, परंतु आपके पास कोई विचार नहीं आ रहा है। वो विचार जो मसीह में था आप में हो, और मसीह वचन है, वचन आप में हो। दूसरे सारे वचन गलत हैं, मसीह का वचन सही है। दूसरे उसका विश्वास करते हैं और उसके सारे तर्कों का, जैसे हवा ने किया तर्क, अच्छा परमेश्वर ये क्यों करेगा, अब ये वो नहीं उतना ही अच्छा जैसा वो। यदि ये वचन के विरुद्ध है, ये नहीं है। इसलिए कोई भी बात, कोई शिक्षक, कोई भी बाइबल की व्याख्या करने वाला, कोई भी आपको सिखाएगा या विश्वास करवाने का यत्न करेगा, कोई भी चीज एक बिंदु उससे भिन्न जो ये बाइबल कहती है, ये गलत शिक्षा है। ये फिर से शैतान है, ठीक वैसे ही जैसे ये हवा से था। परमेश्वर सीधा आगे बढ़ता है, कोई मतलब नहीं वो क्या करता है, शैतान क्या करता है, परमेश्वर इसे सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है वैसा होने को। अब देखिए उसने हवा से क्या कहा, निश्चय ही तुम ना मरोगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। यही जो आज संसार ढूंढ रहा है, वैज्ञानिक प्रमाण, मनुष्य का कुछ ज्ञान। और उसने कहा तुम निश्चय ही ना मरोगे, परंतु परमेश्वर ने कहा था तुम मर जाओगे, और परमेश्वर ने वैसा ही सिद्ध किया। और हम इसे देख सकते हैं, उसका वही अर्थ है जो उसने कहा, यहाँ कब्रिस्तान में जाओ, आप जान जाएंगे कि इसका ये अर्थ है या नहीं। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। और जब आप यहाँ जाते हैं, किसी भी मनुष्य को जिसे आप किसी भी युग में जांचते हैं, कभी भी कोई मनुष्य हजार वर्ष नहीं जिया। परमेश्वर ने इस प्रकार अपना वचन सिद्ध किया, वो इसे हर बार करेगा। परंतु स्मरण रखें, वो अपनी आशीष की हर प्रतिज्ञा बनाए रखता है जैसे श्राप की, क्योंकि उन्होंने खाया उस दिन वे मर गए, और उसने आपको ये प्रमाणित कर दिया कि वे मरते हैं जिस दिन वे खाते हैं। वो अपने हर वचन को भी बनाए रखता है जो उसने अपनी आशीषों के विषय में कहा। हर प्रतिज्ञा परमेश्वर बनाए रखता है। ओह, मैं इससे प्रेम करता हूँ। आपको चुनाव करना है, आपको क्या चाहिए, उसकी आशीष विश्वास के द्वारा या उसके श्राप इसमें मिलावट के द्वारा। यदि आप इसमें मिलावट करते हैं और मिलावट की ओर विश्वास करते हैं, तो आप श्रापित हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं और उसी तरह से जैसे लिखा है इसे पकड़े रहते हैं, तो आप आशीषित हैं। और ये सदा विज्ञान के विरुद्ध होता है, सदा लोगों की वैज्ञानिक विधि के विरोध में, जो बातों को दिखाता है, क्योंकि वो हर वचन को बनाए रखता है, अपनी आशीषों को और उसके श्रापों के दोनों को। जब पुरुषों और स्त्रियों ने संसार के बाढ़ से पहले इस प्रकार पाप किया, वो उसके सच्चे वचन के विरुद्ध, आदम और हवा ने उसके सच्चे वचन के विरुद्ध पाप किया, परंतु और सारी पीढ़ियां जो उसके बाद हुई उन्हीं चीजों को करने लगे, उसने उन पर मृत्यु की घोषणा कर दी, और अंततः ये सारा का सारा पूर्णतः पृथ्वी पर का सब नष्ट हो गया, पानी के द्वारा ढका गया था, पानी से सारा साफ, पानी के द्वारा सारा समाप्त। अब वही परमेश्वर जो पूरा विनाश लाया पृथ्वी की हर चीज के लिए, हर झाड़ी, हर जीवधारी सिवाय जो उसमें तय किए और पृथ्वी पर से लिए, और हर चीज जिसकी उसने प्रतिज्ञा दी कि वो करेगा जो उसने किया, और वही परमेश्वर जिसने पानी की प्रतिज्ञा की और अपने वचन बनाए रखे, उसी परमेश्वर ने आग की प्रतिज्ञा दी और वो अपने वचन को बनाए रखेगा, वो अपने वचन को बनाए रहेगा। अब उसने क्या किया, उन्होंने उसका वचन कैसे जाना, क्योंकि उसके करने का हर मार्ग अपने को पहले प्रमाणित करना, इसके पहले कि वो कोई हानि करे या कोई न्याय करे, वो सदा लोगों के पास वचन भेजता है और सदा लोगों को चेतावनी देता है। ओ, मैं इससे प्रेम करता हूँ। तब हम अपने आप को बिल्कुल सही देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। वहाँ नूह के दिनों में सब प्रकार के सेवक और संगठन थे, और वहाँ सब प्रकार के धर्म नूह के दिनों में थे, क्योंकि यीशु ने कहा जैसा ये नूह के दिनों में था ऐसा मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। परंतु वहाँ दृश्य में एक भविष्यवक्ता आया, उसने कुछ करना आरंभ किया, एक नाव बनानी आरंभ की। और परमेश्वर ने अपने भविष्यद्दत नूह को भेजा ये सिद्ध करने को कि उसने अपना वचन भेजा और उन्हें ये बताया कि एक विनाश आ रहा है। वो इसे मार्ग में ना रुक सका जो लोग कर रहे थे कि उसे मनुष्य का नाश करना ही है जिनको उसने एक समय रचा था। अब वचन सदा भविष्यद्दत्ता के पास आता है, वो कभी नहीं बदलता। मलाकी 3 ने कहा, मैं परमेश्वर हूँ और मैं बदलता नहीं। नूह को वैज्ञानिक युग में भेजा गया था अवैज्ञानिक संदेश के साथ। नूह को एक बुद्धिमानी युग में भेजा गया था एक मूर्खता वाले संदेश के साथ। उसे एक वैज्ञानिक युग में भेजा गया था जब उसके पास एक विश्वास और प्रतिज्ञा का संदेश था, वैज्ञानिक युग के लिए प्रतिज्ञा। इसलिए आप वैज्ञानिक युग का विश्वास कर सके, क्या आप एक अवैज्ञानिक संदेश का विश्वास करेंगे? एक महान बुद्धिमान युग, तब क्या आप इसका विश्वास करेंगे? उनका किसी चीज में विश्वास होगा जो पूरी रीति से मूर्खता प्रतीत होती थी मनुष्य के विचार में, परंतु परमेश्वर सदा इसी प्रकार से करता है। नूह प्रभु का एक पक्का भविष्यद्वक्ता था और परमेश्वर के संदेश की घड़ी थी। उसे इसका विश्वास करना था, लोगों को उसके संदेश का विश्वास करना ही था। इसके बाद कि वो प्रभु का है, पुष्टि हो गई थी कि ये परमेश्वर का वचन था और परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखने जा रहा था। अब आज भी वही बात है, हम अंत के समय में हैं। अब उन लोगों को ये जान लेना चाहिए। देखिए, अब आप ध्यान दें, नूह यहूदियों का एक प्रतीक था जिसे संकट में से होकर निकलना था। अनोक एक वास्तविक संदेश का प्रतीक था कलीसिया के रूपांतरण होने का, क्योंकि अनोक ऊपर उठा लिया गया और फिर बाढ़ आई और वे दोनों, पहला भविष्यद्वक्ता अनोक मार्ग में से ले लिया गया ताकि नूह अपने वाले के साथ जा सके, अपने के साथ परमेश्वर नूह के साथ जा सकता था। और अब कलीसिया उठा ली जाएगी ताकि परमेश्वर फिर से यहूदियों के साथ व्यवहार कर सके, यहूदियों के बचे हुए 144,000, जैसा कि हमने वचन में से होते हुए यहाँ पर। परंतु सारे वैज्ञानिक और अविश्वासी युग के सामने परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के वचन को सच्चा सिद्ध किया उनके पास बाढ़ भेजने के द्वारा। अब स्मरण रखें, नूह के दिनों में पृथ्वी पर कभी भी वर्षा नहीं हुई थी। पृथ्वी में से धुंध उठती थी और सींचती थी, परंतु कभी भी वर्षा नहीं हुई। परंतु नूह ने कहा, वर्षा होने जा रही है। अब ये था, वे एक उपकरण लेकर और आकाश में मार सकते थे और कहते, वहाँ कोई भी नमी नहीं है, वहाँ कोई वर्षा नहीं है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि वहाँ कोई वर्षा नहीं है। विज्ञान चाहे जो कहे, परमेश्वर ने कहा वर्षा होने जा रही थी, इसलिए ये करता है। अब परमेश्वर ने क्या किया? मेरे विचार में जब उनमें से कुछ ने संसार को थोड़ा सा हिला दिया और इसे क्रम से हटा दिया, तब इसे पीछे को कर दिया, इस प्रकार से पृथ्वी की गर्मी ठंड में नमी को लाई और संसार ढका हुआ था पहले और वहाँ वातावरण था, हवा में नमी बादलों के रूप में आ गया और नीचे आया, यही सब था। अब आज हम जानते हैं वहाँ ऊपर आग है क्योंकि पृथ्वी में गैसें हैं और बाइबल ने कहा आकाश पृथ्वी बड़े धमाके के साथ टल जाएंगे और पृथ्वी तब होकर पिघल जाएगी। इसलिए हम जानते हैं कि ये वहाँ पर है, इसलिए ये वैसा ही है जैसे नूह के दिनों में था। और स्मरण रखें, नूह के समय का संदेश केवल विश्वास के द्वारा था और विज्ञान के प्रमाण से नहीं, परंतु आज संदेश परमेश्वर के वचन के द्वारा है और वैज्ञानिक रीति से सिद्ध किया हुआ। एलिया पहले आया, आश्चर्यक्रम किए, कोई प्रचार नहीं किया, बस एक स्थान से दूसरे स्थान आश्चर्यक्रम किए। अगली बार वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में आया, उसने कोई आश्चर्यक्रम नहीं किया, बस प्रचार किया। और तीसरी बार वो आता है, वहाँ दोनों है, आश्चर्यक्रम और प्रचार। समझे, देखिए ये कैसे है। अब ध्यान दें कि वचन कैसे निरंतरता में चलता है। हम बहुत सा समय लगा सकते हैं इस पर, परंतु हम नहीं करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आपने विचार समझ लिया। उसने उस युग में किया ठीक जैसे उसने हर युग में किया, और ऐसा वो करेगा जैसा उसने करने की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर किसी भी चीज की प्रतिज्ञा करता तब वो आकर और अपने वचन को सही प्रमाणित करता है। सब जो विश्वास करते हैं, सब जो उस युग के संदेश का विश्वास करते हैं, अंदर आते हैं और बचाए गए थे। इसी प्रकार ये किसी भी युग में होगा। सब जिन्होंने संदेश और संदेशवाहक का विश्वास नहीं किया नष्ट हो गए, और सब जिन्होंने सच में आज परमेश्वर के वचन का विश्वास किया बाहर निकाल लिए जाएंगे। सब जो परमेश्वर के वचन का विश्वास नहीं करते संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे संसार के हैं और हर चीज जो संसार में है संसार के साथ नष्ट होनी ही है, और हर चीज जो परमेश्वर में बचाई गई परमेश्वर में होनी चाहिए और नष्ट नहीं हो सकती। मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। अब हर विश्वासी के लिए क्या ही सांत्वना है ये जानकर जब आप मसीह में हैं, ये वैसे ही निश्चित है जैसा परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखता है और संसार को नष्ट करता है। वो अपना वचन बनाए रखता है और अपने लोगों को जिलाता है और उन्हें बचाता है। वो ये सिद्ध करता है, उसने अपने प्रतिज्ञा के वचन को अब्राहम पर उसके पुत्र में सत्य सिद्ध किया। ध्यान दें, अब्राहम के समय में ये अवैज्ञानिक था, 100 वर्ष के पुरुष के लिए और स्त्री 90 की, उनके लिए कि उन्हें बालक हो, आयु बीत चुकी थी। परंतु अब्राहम इसकी व्याख्या नहीं कर सका। वो डॉक्टर के पास जाता और कहता, डॉक्टर क्या ये संभव है? ये असंभव है। अस्पताल जाता, माँ के लिए तैयारी करता और उसको बालक हो या ये जो भी होता, यदि आप इसकी तुलना इस युग से करना चाहते हैं, वे उसे पागल कहते, उसका चित्त ठिकाने नहीं है। परंतु परमेश्वर ने कहा, और वो बाइबल ने रोमियो 4 अध्याय में कहा कि अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर डगमगाया नहीं अविश्वास में होते हुए, परंतु मजबूत था, परमेश्वर को महिमा दे रहा था, परंतु उसमें बना रहा जैसे कि उसे देख रहा हो जो अदृश्य था, और उसे थामे हुए संतुष्ट था, कसकर पकड़े हुए, क्योंकि वो पूरी रीति से सहमत था कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है परमेश्वर करने के योग्य था, और हम उसके बालक माने जाते हैं। आमीन। अब मुझे धार्मिक अनुभूति हो रही है, देखिए जब आप इसे सोचते हैं, ओ उसने ये सिद्ध कर दिया। इतने सारे वर्षों बाद उसने अब्राहम और सारा को वापस युवा स्त्री बना दिया और बालक हुआ, और अब्राहम और सारा जीवित रहे। 45 वर्षों के पश्चात सारा मर गई, और अब्राहम ने 145 वर्ष का होने के बाद फिर से विवाह किया और पुत्रियों को छोड़ और 7 पुत्र उत्पन्न हुए। जब वो अपने बीते समय में वो बांझ था, उसके पास बीज नहीं था, उसमें जीवन नहीं बचा था, लगभग इसके 100 वर्षों पहले। आमीन। क्यों? उसने अपनी देह पर विचार नहीं किया, उसने सारा की मरी हुई गर्भ की दशा पर विचार नहीं किया, उसने केवल जो परमेश्वर ने कहा उसी पर विचार किया। उसे मालूम था कि परमेश्वर उसे सिद्ध करेगा जो उसने कहा है। आमीन। परमेश्वर वो सिद्ध करता है जो वो कहता है वो करेगा। अवैज्ञानिक और वैज्ञानिकता के बीच और किसी भी चीज के बीच ये जो भी हो, परमेश्वर ने सिद्ध किया कि वो सही था, सदा अपने वचन को प्रमाणित किया। वो सही है और दूसरे गलत हैं। उसने ये लूत पर भी प्रमाणित किया जब उसने कहा, यदि तुम इस नगर से बाहर नहीं जाओगे मैं इसे जलाने जा रहा हूँ, और उसने अब्राहम को बताया यदि वो 10 मनुष्य ढूंढ सके, 10 मनुष्य वो नगर को छोड़ देगा, और वो 10 मनुष्य ना ढूंढ सका। इस प्रकार से उसने सिद्ध किया कि उसका वचन सही है। आप कहाँ से आ रही थी? वहाँ बाहर मैदानों में कुछ नहीं है, वहाँ बाहर इन कीचड़ वाले गड्ढों में, परंतु परमेश्वर ने ऐसा कहा है, और अब्राहम जानता था कि ये होने जा रहा है। लूत जानता था कि ये ऐसा था, और वो बचकर पहाड़ों पर निकल गया। उसने अपने वंश से प्रतिज्ञा की कि वे अनजाने देश में परदेशी होंगे और लोगों के द्वारा अन्याय सहेंगे, और वे परदेशी होंगे। अब्राहम का वंश अपरिचितों के बीच 400 वर्ष अनजाने लोग, और उसने अपना वचन पूरा किया बिल्कुल ठीक वैसे ही जो उसने कहा वो करेगा। अब्राहम का वंश मिस्र में 400 वर्ष परदेशी होकर रहा। उसने ये भी प्रतिज्ञा की उन्हें सामर्थी भुजा से छुड़ा लेगा, एक सामर्थी हाथ वो लोगों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाएगा, और उसने अपना वचन पूरा किया। देखिए उसे क्या करना पड़ा कि उन बालकों को मिस्र से निकाले। ये प्रतीत हुआ जैसे त्रासदी आ पड़ी, आ रही थी और सारी चीजें, ऐसा सब प्रतीत हुआ। ये यूसुफ के लिए भयानक था कि उसे मृत मान लिया जाए, और बेचारा इजहाक या याकूब उसका पिता, या बल्कि इजहाक उसका पिता याकूब को, ये इजहाक उसका दादा था, याकूब उसका पिता, कि विश्वास करे कि उसका अपना पुत्र पशुओं के द्वारा मार डाला गया। छोटे यूसुफ के लिए ये जानना कितना कठिन था कि वो बेचारा छोटा सा अपने लोगों में से दूर अपने भाइयों द्वारा धोखा खाया, गड्ढे में डाला गया, ये समझकर कि ये मर गया। उसके कोट पर भेड़ का लहू डाला गया जहां उन्होंने उसे खाने के लिए मेमना काटा था, उसके ऊपर लहू डाला और उसके पिता के पास ले गए और ये सब जानते हुए। परंतु यूसुफ एक बात स्मरण कर सकता था कि प्रभु का हाथ उस पर था। वो जानता था कि वो एक विश्वासी है। कोई मतलब नहीं उसके भाइयों ने उसका कितना तिरस्कार किया, उसके साथ कितना असहयोग था या कुछ नहीं। यूसुफ को मालूम था परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखेगा। जब उसने वो दर्शन देखा, वे सारे उसके सामने झुक रहे हैं, उसे मालूम था कि ये घटित होना है, क्योंकि ये यहोवा यूं कहता है था। आमीन। ये कितना तर्कहीन प्रतीत हुआ। यूसुफ ये जानता था कि ये सच था। कोई मतलब नहीं कि कार्य कितना कठिन था और उस पर क्या बीत रहा था। वो जान गया था कि किसी दिन उनमें से प्रत्येक उसके पैरों पर झुकेगा। ये कैसे करने जा रहा था जबकि उन्होंने उससे घृणा की। परंतु वो जान गया परमेश्वर अपने वचन को वैसा प्रमाणित करेगा हर बार। ऐसा ही वो आज करेगा। परमेश्वर अपने वचन को इसी प्रकार प्रमाणित करेगा। कोई मतलब नहीं विज्ञान क्या कहता है, ये नहीं किया जा सकता। हम कितने ही शिक्षित बुद्धिमान हो जाएं, कैसे कलीसियाएं भटक कर औपचारिकता में चली जाएं और आदि आदि, परमेश्वर फिर भी अपना वचन सिद्ध करेगा। ठीक, आप उस वचन में अपना विश्राम पाएं। जी हाँ, यूसुफ के ऊपर बहुत कुछ बीतना था, परंतु मिस्र में जाने के लिए, परंतु परमेश्वर उसे बाहर निकाल कर लाया, ठीक वैसे ही जैसा उसने कहा। आज का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक, यदि उसमें जाने के लिए हमारे पास समय होता। मैं विश्वास करता हूँ हमने पहले लिया है, यहाँ आराधनालय में इसे देखा है। परंतु परमेश्वर अपना वचन बनाए रखता है, कारण कि उन्हें वहीं टिकना होता है। उन इब्रानी बालकों के लिए वहाँ मिस्र की गुलामी में टिकना कठिन था, जिनको आशीषित किया गया और देश का फल दिया गया, वो सबसे अच्छा स्थान गोशेन। पाते हैं कि उन्हें गुलाम बनना पड़ा था और उन माताओं को मिस्रियों सिपाहियों को देना पड़ा अपने गर्भ के फल को। उनके प्रिय छोटे बालक उसे वहाँ खड़े हुए देखते हैं, बड़ा चाकू लेता है और उसे बस काट देता है और मैदान में फेंक देता है मगरमच्छों को खिलाने को। अब ये उनके लिए कठिन बात थी कि ये उन पर बीते, परंतु एक दिन पहले से ठहराया हुआ वंश जन्मा था, एक बालक जो सही बालक था। वहाँ उसके विषय में कुछ था जो विचित्र लगा। वहाँ पीछे रेगिस्तान में एक दिन पवित्र आत्मा अग्नि स्तंभ के रूप में नीचे उतर आया और झाड़ी पर आकर रुक गया और कहा, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना देखा है और मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद है और छुटकारे का समय आ गया और मैं तुझे वहाँ ये करने के लिए भेज रहा हूँ। हाथ में एक छड़ी के साथ उसकी पत्नी, खच्चर पर बालक उसकी गोद में, और उसने ये सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा किया। बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात क्या होगा, एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी उन 10,000 भालों के सामने क्या करेगी। परंतु आप देखिए परमेश्वर उसमें था। ये इस पर निर्भर करता है उसका वचन कहाँ है। मूसा के पास उसका वचन था, फिरौन के पास भाले थे, मूसा के पास वचन था। कुल मिलाकर उसकी यही आवश्यकता वचन थी। इसी सब की आज आपको आवश्यकता है। ये किसी कलीसिया से प्रमाण पत्र नहीं, आपको आवश्यकता नहीं कि कोई नामधारी आपके पक्ष में हो। आपको वचन की आवश्यकता है कि इसके साथ उठा लिए जाने को लें। आपको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी विद्यालय के इतिहास की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रातः चंगे हों। आपको वचन स्वीकार करने की आवश्यकता है, वो ये करता है। आपको डॉक्टर के शब्दों की आवश्यकता नहीं है, यदि डॉक्टर कहता है उसने सब जो वो कर सकता था कर लिया। वो कहता है तुम्हें कैंसर है, ट्यूमर है, तुम अंधे होने जा रहे हो, तुम बहरे हो, गूंगे, ये जो भी है इससे मतलब नहीं। यदि आप उस वचन को ले सकें, उस जलती झाड़ी की प्रतिज्ञा को जो सामने है, आमीन, कुछ घटित होने जा रहा है। परमेश्वर अपने वचन को वैसा होने के लिए प्रमाणित करेगा हर बार कि ये सही प्रकार की भूमि में लिया जाए। यही जिसकी आपको आवश्यकता है, उसका वचन, वो इसे सिद्ध करता है, वो इसे बनाए रखता है। आप आश्वस्त हो सकते हैं कि ये सही है। वो अपना वचन हर युग में प्रमाणित करता है उस असाधारण विधि के द्वारा, परंतु वो इसे उसी प्रकार से करता है। समझे, उसने नूह के दिनों में क्या किया, जब उसने बच्चों को छुड़ाना तय किया, उसने उनके पास नूह को भेजा, भविष्यद्वक्ता को, उसने नूह को भेजा एक चिन्ह। और अब ध्यान दें, जब वो इसराइल के बालकों को छुड़ाने के लिए आता है, वो क्या करता है, उसकी वही विधि। वो अपना भविष्यद्वक्ता भेजता है, उसके भविष्यद्वक्ता के पास वचन है। चिन्ह और चमत्कार प्रतिज्ञा का वचन का समर्थन किया। ये बिल्कुल सही है। इसराइल ने प्रतिज्ञा के देश की ओर प्रस्थान किया क्योंकि उन्होंने इसका विश्वास किया था, और जंगल की यात्रा में ऐसा हुआ कि उन्होंने इस भविष्यवक्ता का विश्वास किया। वचन को देखने के पश्चात इतने पक्के हो गए, दुल्हन के कदम बहकने लगे। आप जानते हैं कि मैं किस विषय में बातें कर रहा हूँ। दर्शन में देखिए, कदम ताल से बाहर, वहाँ एक स्थिर रहा जो यहोशू और कालिम नाम के थे, और प्रतिज्ञा के वचन का विश्वास किया चाहे जो भी हालात हो। ध्यान दें, जब वे कादेश बर्निया पहुँचे, कादेश बर्निया पर मूसा ने हर गोत्र में से एक को भेजा कि देश का भेद ले। देखिए किस मार्ग से वे घुसे थे, और उसने अपने जनरल यहोशू को भेजा जो कि एक भविष्यवक्ता था, इसलिए मूसा की अधीनता में एक छोटे नबी को भेजा, और यहोशू ने मूसा की सुनी और उन्होंने उसे बाहर भेजा, इसलिए उसने कहा वहाँ जाकर और देश का भेद लो। और जनरल बाहर निकला और हर गोत्र से एक पुरुष को लिया, वे चल पड़े। उसने कालेब को लिया, अपने संग रखा, क्योंकि वो जानता था कि कालेब ने विश्वास किया है। वे प्रतिज्ञा के देश को चले गए और अंगूर के गुच्छे के साथ वापस आए, जिसे दो पुरुषों ने उठाया हुआ था। कहे कि उसने अब कहा ताकि इसराइल के पास प्रमाण होगा इसके पहले कि वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें। देखिए, उनके पास प्रमाण होगा कि परमेश्वर ने कहा है ये एक अच्छा देश है, और ये दूध और शहद से भरा हुआ है, ये शानदार देश है, ये अच्छा देश है। अब आपका और ये सारे पुराने लहसुन, बंद गोभी और वे जो भी आप मिस्र में पाते हैं, अब हम तुम्हें दूध और शहद के देश में ले जा रहे हैं। तुमने संभवतः शहद और दूध चखा नहीं होगा वहाँ मिस्र में इन वर्षों में। वे आपको गुलामों की खाद्य सामग्री देते हैं, परंतु अब तुम उस देश में जा रहे हो। इसलिए ठीक उस समय जब वे प्रवेश करने वाले थे, एक दिन की यात्रा, जहाँ कादेश बर्निया वो महान्याय का सिंहासन संसार का था, वे वहाँ बड़े इन ताड़ के पेड़ों तले और सोते के पास रुक गए और डेरे डाले। उसने कहा अब लोग जान लें, ध्यान दें, क्या ही सिद्ध, क्या ही वास्तविक सिद्ध प्रमाण ये हैं, कैसे परमेश्वर ये करता है ठीक जैसे वो आज करता है। उसने कहा अब परमेश्वर ने कहा है देश बड़ा है, अब इसके पहले तुम वहाँ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम देखो देश महान है, इसलिए मेरे पास देश का कोई प्रमाण लेकर आओ और लोगों को दिखाओ। इसलिए वे वहाँ पहुँचे, और अब सदा जब आप प्रमाण लेकर वापस आते हैं, वहाँ शत्रु मार्ग में होता है। जब उनमें से कुछ लोगों ने देखा और कनान के उन बड़े बड़े ऊंचे लोगों को देखा, ओह प्रभु, उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते, परंतु वे प्रमाण लेकर वापस आए कि एक देश वहाँ पर है। उनकी अगुवाई गलत नहीं की गई थी, परमेश्वर उन पर अपने वचन को सिद्ध कर रहा था इसके पहले कि वे वहाँ देश में प्रवेश करते। क्या आप आज ये नहीं देख सकते, यदि आप हजार मील वचन को सुनने के लिए कार चलाते हैं और इसे प्रमाणित और पुष्ट होते हुए देखते हैं, यही प्रमाण है कि ये एक महान देश है। आप एक मनुष्य छाया को लेटे मरते कैंसर के साथ देखते हैं कि चंगा हो जाए। यदि हम परमेश्वर का वचन देखते हैं जो उसने बोला उस दिन घटित होगा, पक्का होते हैं। ये प्रमाण है कि वो अपना वचन बनाए रखता है। वहाँ महान देश है। यदि मेरा जीवन समाप्त होने को है और परमेश्वर नीचे आकर और इसे फिर से बढ़ाता है, तो ये दर्शाता है कि वहाँ अनंत जीवन का प्रमाण है, जहाँ आपको कलीसिया के द्वार एक समय बंद नहीं करने होंगे कि आप पंक्ति में खड़े हैं कि अंदर जाएं। ये एक प्रमाण है। परमेश्वर अपने वचन को बनाए रखता है और आप पर ये सिद्ध करता है कि ये सत्य है। हजारों मील कार चलाते यहाँ सुबह पहुँचते हैं और वहाँ देखा, और उन लोगों को बच्चों को कोका कोला बोतल से दूध पिलाते हैं, और थोड़ा सा हलवा सुबह 5 बजे उस भाग में बैठे हैं। मैंने सोचा परमेश्वर, मैं सबसे नीच ढोंगी होऊंगा इस संसार में कि लोगों को आने दूं इतनी दूर से और उन्हें कुछ ऐसा बताऊं जो गलत था, परंतु मुझे उनके लिए खेद है, मेरा हृदय उन पर तरस खाता है। वे लोग परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं उनको सत्य बताऊं, या फिर मुझे इस संसार से ले ले, होने पाए मैं इन लोगों को सत्य बताऊं। प्रभु मेरी सहायता करें। मैंने कहा आप मेरा हाथ थामे रहें और मुझे जानने दें कि सत्य क्या है, और इसकी पुष्टि कर समर्थन करें कि जो मैंने कहा वो सत्य होने को, और वे जान जाएंगे कि ये सत्य है। इन बेचारे लोगों को धोखे में ना आने दें। नहीं, अब मेरा हृदय कुछ इस प्रकार से है इन निष्ठावान लोगों को देखते हुए। मैं कल्पना करता हूँ यहोशू ने भी ऐसा सोचा उस दिन जब उसने सब लोगों को वहाँ जमा किया, उन्हें अपने कपड़े धोते देखा और तीसरे दिन की तैयारी के लिए। जी हाँ, उसने ये सिद्ध किया। अब यहोशू ने क्या कहा जब उन्होंने कहा ओ हम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, हमें अपनी संस्था से बाहर निकलना होगा, हम समाप्त हो गए। देखिए अब हम ये नहीं कर सके, हम बस इसे नहीं कर सकते क्योंकि ये तर्कपूर्ण नहीं है। और जब यहोशू उनकी अगुवाई करके वहाँ ले गया, ये अप्रैल का महीना था जब जल ऊपर था और यरदन लगभग ऐसी ही चौड़ी जैसे ओहियो नदी, ऐसा लगा परमेश्वर ने एक बड़ी गलती कर दी। आप जानते हैं जब आप कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं और आप कहते हैं भाई मैं एक मसीही हूँ, परमेश्वर उसने गलती कर दी, उसने मुझे बीमार होने दिया और मैं एक मसीही हूँ। क्या आप ये अनुभव नहीं करते कि बाइबल ने कहा कि हर चीज मिलकर भलाई उत्पन्न करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जहाँ यहोशू उनकी अगुवाई करके ले गया, अब यरदन वास्तव में उतरी हुई है, आप चाहे जहाँ से चलकर उसे पार कर सकते हैं जब तक कि आप पानी के गड्ढे में नहीं जाते। यहाँ ये अधिक गहरी है, आप थोड़े उथले से कर सकते ठीक उस किनारे से जहाँ यरोही का किनारा था। क्यों ये है, क्यों आप पैदल पार कर सकते हैं, ये टखने से अधिक गहरी नहीं है। जीप में बैठकर चलाते हुए पार हो जाए, चलकर पार या कुछ, परंतु उसने उनकी अगुवाई अप्रैल के महीने में की जब जल भराव का क्षेत्र जल से भरा हुआ था। एक मील के लगभग वहाँ पानी 30 या 40 फीट गहरा था और उसने कहा तीसरे दिन हम वहाँ जा रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, लोगों को जमा करके बुलाओ और उन्हें पवित्र करो क्योंकि तीसरे दिन तुम यरदन के पार जा रहे हो। देखिए परमेश्वर कैसे उन बातों को घटित करता है कि इसे बनाए, लोगों को तैयार करें। उसने अपने लोगों को खींचा, वे क्या करेंगे, उन्होंने अपने आप को पवित्र किया और तैयार हो गए। कोई मतलब नहीं कि पानी कितना गहरा था या कितना कीचड़ भरा था और बहाव कितना तेज था, उन्हें मालूम था कि परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करेगा। कोई मतलब नहीं क्या आप यरदन के कितने पास हैं, कोई मतलब नहीं कि परिस्थिति कैसी है, आप केवल अपने हृदय में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रह सकते हैं, परमेश्वर इसे प्रमाणित करेगा। ये ऐसा ही है, सारे अविश्वास के बीच वो इसे अब भी वैसा होने के लिए सिद्ध करेगा। जी हाँ वो ये करता है और परिस्थितियाँ उसे रोकती नहीं, वो अब भी वही करेगा जैसा उसने तब किया। ध्यान दें, ये उसके विश्वासियों के द्वारा था जिनके द्वारा उसने अपना वचन प्रमाणित किया। वो केवल अपना वचन सिद्ध कर सकता है, ना कि अविश्वासियों के द्वारा, ये केवल विश्वासियों के द्वारा जिनसे वो अपना वचन प्रमाणित कर सकता है। कोई मतलब नहीं कि वे बाकी कितना भी दावा करें, ओ मैं विश्वास करता हूँ। भाई देखिए, यदि आप करते हैं तो परमेश्वर ऐसा प्रमाणित करेगा, क्योंकि हम देखते हैं और दूसरों को देखते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं। देखिए वो सच्चे विश्वासियों के द्वारा अपना वचन सिद्ध कर सकता है, ना कि उनके द्वारा जो कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, परंतु वे जो वास्तव में विश्वास करते हैं। ये उसके विश्वासी बालकों के द्वारा है कि वो अपना वचन सिद्ध करता है। अब उसके पास विश्वासी थे, पुरानी फसल मर गई, वे अविश्वासी जिन्होंने कहा हम इसे नहीं ले सकते, उसने उनको नष्ट होने दिया। क्यों? उनमें से हर एक विश्वासियों को छोड़, कौन छूट गए थे? मूसा को महिमा में ले लिया गया था और अविश्वासी जंगल में नष्ट हो गए थे और ये उनके बालक थे, वहाँ केवल दो पार हुए और वे विश्वासी थे, यहोशू और कालेब। वे विश्वासी थे, वही वे थे जो पार हुए। यही केवल वो विधि है, परमेश्वर ये कर सकता है उसके बालकों के विश्वास करने के द्वारा। आप ये विश्वास करते हैं, ठीक है, उसके विश्वासी वे थे जिन्होंने ये किया, उसने उनका पार जाने के लिए प्रयोग किया, समझे। अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, उसने हर युग में इसी प्रकार से किया, वो इसी विधि से हर बार करता है, उसे विश्वासियों को लेना होता है और फिर इस क्रम में विश्वासी लेकर वचन से मिलान करना, उसे उस युग के लिए पहले से ठहराना होता है। आप समझे, ये उसे पहले से इन बातों के लिए ठहराया गया होता है कि वहाँ उस चुनौती का सामना करें उस युग में। क्या आप समझ गए, क्या आपने यह अनुभव किया, क्या आप देख पाए, क्या आप इसे समझते हैं? आज यही हो रहा है, उसने इसके लिए पहले से ठहराया है अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा। जब उसने मलाकी 4 में पहले से ठहरा लिया तो इसे होना ही है। जब वो आता है और पहले से ठहराता है, कोई भी चीज जो उसके वचन में घटित होती है, ये ऐसा ही है के लिए उसे अपना वचन सिद्ध करना होता है। जब वो किसी बात को घटित करने के लिए पहले से ठहराता है और कहता है ये घटित होगा, वो जानता है कि बीज वहाँ पर ठीक उस समय होगा। उसने एक दुल्हन ठहराई है, वो वहाँ होने जा रही है, एक उठा लिया जाना होने जा रहा है और वो वहाँ होने जा रही है। उसने इसे अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा ठहराया है। देखिए, कुछ नहीं है जो इसे रोकने वाला है। जब परमेश्वर ने उन्हें बताया, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश की प्रतिज्ञा देता हूँ, मैंने तुम्हारे पिता अब्राहम को बताया है कि उसके बालक यहाँ 400 वर्षों के लिए परदेशी रहेंगे। अब मूसा ने कहा, मैं यहोवा का भविष्य रखता हूँ। अब ध्यान दें और देखें कि मैंने क्या भविष्यवाणी की है। यदि ये होता है तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु का भेजा हुआ हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको पहले ही बता दिया है। अब यदि मैंने ये भविष्यवाणी की है और ये घटित होती है और वो ये घटित होता है और ये घटित होता है और हर बात वैसे ही, अब तुम जान लो मैं प्रभु का भेजा हुआ हूँ कि मैं तुम्हें बताता हूँ। अब वहाँ एक प्रतिज्ञा का देश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, समझे? और परमेश्वर ने इस देश की प्रतिज्ञा की है, ये एक अच्छा देश है, इसमें दूध और शहद बहता है, मेरे पीछे आओ। और जैसा कि जंगल में चले गए जहाँ उसे यात्रा करनी थी, उन्हें जंगल में ले गया जहाँ परमेश्वर ने उसे बताया कि उन्हें सीनै पर्वत पर वापस ले आ। तब परमेश्वर सारे इसराइलियों के सामने नीचे अग्नि स्तंभ के साथ उतरा और इस बात की पुष्टि की जो मूसा ने कहा था वही था, सिद्ध किया कि वो ठीक था। वहाँ मूसा की पुष्टि की। मूसा ने कहा कि मैं इस पर्वत पर था, मैं ही उस पर जलती हुई झाड़ी में प्रकट हुआ था, अब मैं सारे पर्वत को जला रहा हूँ। उन्होंने कहा, यही परमेश्वर हमसे बात ना करे। मूसा ही बोले, हम नष्ट हो जाएंगे। उसने कहा, मैं ये अब और नहीं करूँगा, मैं उनके लिए एक भविष्यवक्ता उठा खड़ा करूँगा, वो मेरे नाम से उनसे बात करेगा। इसलिए उसने वही जो वो करता है ये ठीक अपने वचन के अनुसार कार्य करता है। ध्यान दें, तब वे जिन्होंने अविश्वास किया उस देश के बहुत पास पहुंच जाने के बाद उन्होंने अविश्वास किया। आप जो टिप्पणियां ले रहे हैं इब्रानियों 6 लिख लें, ठीक यहीं जहां ये कहा है, वे जिन्होंने एक बार ज्योति पाई पवित्र आत्मा के भागी हुए देखते हुए वे गिर जाएंगे, प्रायश्चित से फिर अपने आप को नया करें। देखते हुए उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ाया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनके लिए बच जाना अनहोना है। देखिए, जैसा उनके लिए असंभव कि प्रतिज्ञा के देश में पार उतरें, लोग ठीक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समीप आए, वे ठीक वचन तक आएंगे, वे सारे नामधारियों में से आएंगे और सारी कलीसियाओं में से और सारी धार्मिक शिक्षा से और सबसे, परंतु जब वो उस वचन पर आता है, उस पार होने वाली रेखा पर, वे कहते हैं, ओ मैं इस विषय में नहीं जानता, मेरी कलीसिया इस प्रकार से नहीं सिखाती। मैं चिंता नहीं करता कि आपकी कलीसिया क्या सिखाती है, बाइबल कहती है ये इस प्रकार से है। तब आप कहते हैं, मैं कैसे जानूं कि ये सही है? वो इसकी पुष्टि करता है, वो इसे सिद्ध करता है। अब उस दिन बाइबल ने कहा, वहाँ एक अच्छा देश है और ये दूध और शहद से भरा हुआ है और बढ़िया अंगूर और अनार और ओ, ये एक सुंदर स्थान है। अच्छा, उन्होंने कहा, अब आप में से कुछ निकल जाएं और इसे देखें और वापस आएं ताकि इन लोगों को हम शांति दे सकें। अब हम उस पार जा रहे हैं, यदि तुम बस इसका विश्वास करो। भाई, वे चले गए और यहाँ वे वापस आए और उनमें से दो बस शुरू कर रहे थे। अच्छा, परमेश्वर की महिमा हो, हमने देख लिया, ओ ये तो शानदार है, वहाँ जैसा कुछ भी नहीं। बाकी 10 आसपास खड़े हुए कह रहे हैं, ओ नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं कर सकते। कितने गए थे? वे दो। ये ठीक बात है, वे दो, क्योंकि वे जान गए कि परमेश्वर अपना वचन सही सिद्ध करेगा। ध्यान दें, यर्दन का चढ़ना नहीं श्रीमान, यर्दन के किनारों पर बाढ़ नहीं या कनान के लंबे चौड़े लोग उन्हें नहीं रुक सके। परमेश्वर ने अपना वचन ऐसा होने के लिए सिद्ध कर दिया, वो उन्हें सीधा देश में ले गया। वो फिर से वही चीजें करेगा। जी हाँ श्रीमान, आज उन प्रतिज्ञाओं में वो अपना वचन प्रमाणित करता है, चाहे जो हो वो अपना वचन प्रमाणित करता है। उसने एक आदमखोर शेरों का मुंह बंद कर दिया ये सिद्ध करने के लिए कि उसका वचन सत्य था, कि वो डैनियल भविष्यवक्ता को छुड़ा सका। और उन्होंने वे शेर मनुष्य का मांस खाने के लिए रख रखे थे और उन्होंने वे शेर भूखे रखे हुए थे ताकि जब मनुष्य नीचे गिरता या एक बालक जो भी वहाँ डालते, ये फांसी की सजा होती थी। वे शेर उन्हें टुकड़ों में फाड़ देते थे, ये भूखे शेरों का झुंड। और उन्हें ये भविष्यवक्ता मिला इसराइल के बालकों को परमेश्वर के वचन के साथ, जिसने भविष्यवाणी की थी कि वे उस स्थान को लेंगे और वहाँ उनके साथ था। परंतु परमेश्वर इसमें आरंभ से अंत तक नहीं था, वो अपना वचन प्रमाणित करना चाहता था। वो छुड़ा सकता था और उन्होंने उन शेरों को भूखा रखा और उसमें उस भविष्यद्वक्ता को फेंक दिया और उसकी ओर इस प्रकार से लपके कि अग्नि स्तंभ वहाँ खड़ा था और कोई भी जानवर आग से डरता है और वो अग्नि स्तंभ वहाँ खड़ा था, शेर बैठ गए, उसने अपना वचन पूरा किया। वो कल आज और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है, वो सिद्ध करता है कि ये ऐसा ही है। अब वो उस ताप को जो आग की भट्टी से आई उसने ले लिया ये सिद्ध करने के लिए कि उसका वचन इस प्रकार था कि वो आग से छुड़ा सकता था। ठीक उन लपटों के बीच जहाँ वे बालक वहाँ फेंके गए थे और वहाँ पर लंबे समय तक टिके रहे, जब यहाँ तक कि वे पुरुष जिन्होंने उन्हें फेंका था उसमें भट्टी के उस तेज ताप ने उन महान सिपाहियों को मार डाला जो उन्हें वहाँ तक लेके गए, और परमेश्वर ने आग को जलने दिया था परंतु उसमें से उसने उसके ताप को उसमें से निकाल दिया। वो सिद्ध करता है, यदि आप उसके संग खड़े हो वो आपके संग खड़ा होगा निश्चय ही। एक घंटे बाद उन्होंने दरवाजा खोला और कहा, कहता है तुमने उसमें कितने डाले थे? कहा हमने तीन वहाँ डाले थे। उसने कहा वहाँ पर वे चार हैं और उनमें से एक परमेश्वर के पुत्र के समान है। देखिए वो दिखाता है, क्यों? क्योंकि वो वचन है। और उन्होंने कहा परमेश्वर योग्य है कि हमें आग की भट्टी से बचा सके, परंतु फिर भी हम किसी मूरत के सामने झुकने वाले नहीं क्योंकि हम वचन के साथ खड़े हैं। कोई भी मूरत धर्म के रूप में इससे दूर, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। वो सताव के ताप को दूर कर देगा, वो कैंसर में से जीवन निकाल देगा, वो ले लेगा, वो कुछ भी करेगा, वो परमेश्वर है। आप उसके संग खड़े हो वो आपके साथ खड़ा होगा। वो हर बार अपने वचन को सच्चा प्रमाणित करता है। लपटों में से गर्मी को निकाल दिया, सिंहों के मुंह को रोक दिया और आदि आदि। यहाँ परमेश्वर ने एक और चीज की, ये दिखाने को कि वो परमेश्वर था। वहाँ जंगल में जाने के बाद मनुष्य इस प्रकार का हो गया कि वे अपने लिए छात्रवृत्ति लेने लगे, अपने आप को महान पुरुष बनाने लगे। उनके कुछ संगठन थे जो फरीसी, सदूकी, हेरोदियन और जो भी वे कहलाए, और वे महान पुरुष थे। वे अपनों में से याजक बनाने लगे और वे इस प्रकार की महान बातें करने लगे, महायाजक और महान पुरुष और मान्य लोग बनाने लगे और आदि आदि। परंतु इस सब के बीच परमेश्वर, उसने एक भविष्यद्वक्ता खड़ा किया, एक याजक का पुत्र। कभी नहीं, 9 वर्ष की अवस्था में जंगल में चला गया। यदि उसका नाम बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा जाता तो वो उसे पढ़ नहीं सकता था। क्यों? क्यों उसने ये किया? वो एक भविष्यद्वक्ता था। यदि उसको शिक्षा से सिखाया जाता जो उसके पिता की थी तो संभवतः वो एक फरीसी या सदूकी होता या उनके झुंड में से कुछ। परंतु उसका एक विशेष कार्य था, वो ये कि मसीहा की उद्घोषणा करे। क्योंकि क्यों? परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है और सिद्ध इसे करता है। एक आवाज जो धर्म विद्यालय से आ रही है, देखो मैंने अपनी डॉक्टर की डिग्री पा ली है, जो कि बूढ़ी स्त्रियों के जन्मदिन की वार्षिक पुस्तकों में होता परंतु परमेश्वर के वचन में नहीं। उसने कहा जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द, प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसके मार्ग सीधे करो। तब क्या वो वचन का मार्ग तैयार कर रहा था कि वचन को प्रकट किया जा सके? हालेलुया! क्या आप प्रतीकों में नहीं देखते? यहाँ एक मिनट के लिए रुकें। अंत के दिनों में एक स्थान वचन के लिए तैयार किया कि प्रकट हो, और हम नए देश के प्रमाणों के साथ यहाँ रह रहे हैं। आमीन। मनुष्य का पुत्र यूहन्ना का प्राधिकार बिना शिक्षा बिना किसी चीज जंगल में टिका रहा। उसका उपदेश प्रतीकों में था। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, यही जो उसने देखा। कुल्हाड़ी से काटा, अपनी झोपड़ी बनाई, अपनी लकड़ी जलाकर आग बनाई, और तुम सर्पों के वंश, यही जो उसने देखा। जंगल की सबसे बेकार चीज उसके लिए झाड़ियों में सांप। कहा तुम सर्प की संतानों, किसने तुम्हें आने वाले क्रोध से भागने को कहा? ये मत कहो हमारे पास ये है, हम इससे संबंधित हैं और हम उससे हैं। परमेश्वर योग्य है कि पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, और हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता वो जंगल में क्या करता है? जब ये नहीं होगा, अपने लिए कुछ टिड्डियां और आदि आदि लेगा और वो इसे काट कर जला देगा। समझे? वो गेहूं को खत्ते में जमा करेगा परंतु भूसी को वो ना बुझने वाली आग से जला देगा। इस प्रकार का मनुष्य जिसके पास पादरी का लबादा भी नहीं, ना ही पादरी की टोपी, समझे? वो भेड़ की खाल लपेटे हुए आया, ऊंट की पीठ की खाल में से काटा हुआ टुकड़ा, चिथड़ों से ढका हुआ और अपनी बड़ी हुई दाढ़ी और बाल बिखरे हुए। इस प्रकार से बोला, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है,
आमीन। वो बेधड़क आया, क्यों? ये परमेश्वर का वचन प्रमाणित हो रहा था। परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। देखो, मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ। बहुत धार्मिक नहीं, ना ही वैज्ञानिक या धर्म से भरा हुआ, परंतु परमेश्वर के वचन से पूर्ण। परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहा था। देखिए, बिल्कुल भी विद्वान नहीं, परंतु एक भविष्यवक्ता प्रभु के नाम में भेजा गया। उसने ये किया क्यों? कि उसके वचन की पुष्टि करे। उन्हीं याजकों ने कहा, अब हम जानते हैं कि अंत के दिनों में एक आ रहा है, इसलिए हमारे पास जितने लड़के हैं उन्हें विद्यालय भेजेंगे कि इसके लिए तैयार करें। तुम्हें से हर लड़के के पास कॉलेज की शिक्षा होनी चाहिए, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, कोई संदेह नहीं। परंतु वो वंशावली से होगा, वो लेवियों के मार्ग से होकर आएगा, क्योंकि याजकवाद वहीं से आता है। परंतु वो याजक नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था, और ये परमेश्वर का चुनाव है। उसे किसी विशेष नामधारी से नहीं आना था या निश्चित वंशावली से। ये परमेश्वर का चुनाव हुआ है, पहले से ठहराया हुआ, पूर्व ज्ञान से वो परमेश्वर के चुनाव के मार्ग द्वारा आएगा। इसलिए वे उसका विश्वास न कर सके, क्योंकि वो उस मार्ग से नहीं आया जो उन्होंने तैयार किया था, सोचा कि वो आ रहा था। ये फिर से हो सकता है, आप जानते हैं ये अक्सर होता है। परंतु हम पाते हैं कि वो उस मार्ग से आता है जो परमेश्वर ने तैयार किया कि अपने वचन को प्रमाणित करे। ध्यान दें, कारण कि उसने कुंवारी को गर्भवती होने दिया कि अपने वचन को प्रमाणित करे। यशाया 9:6, और हम ये पाते हैं कि हमारे लिए एक पुत्र जन्मा, एक बालक दिया गया। अब हम ये पाते हैं कि उसने कहा था कि कुंवारी को गर्भ धारण करना चाहिए, कारण कि परमेश्वर कुंवारी को गर्भवती होने दिया, क्या? कि अपने वचन को प्रमाणित करे। अब सुनिए, बस थोड़ी मिनटें हम बंद कर देंगे। उसने कारण की कुंवारी को गर्भवती किया कि अपना वचन प्रमाणित करे। ये पूर्णतः था, इसने सारे वैज्ञानिकों को चकरा दिया कि जाए। आप ये समझ गए? क्या आप ये समझ गए? देखिए, पृथ्वी श्रापित है, सारी पृथ्वी श्रापित है आदम के पाप के कारण। परंतु जब ये छोटा बीज, अब स्त्री के पास बीज नहीं होता, उसके पास भूमि है कि जिसमें बीज रहे। बीज नहीं, क्योंकि वहाँ कोई जीवांश नहीं है। जीवांश को तो एक बीज के अंदर जीवन होना ही है। यदि ये नहीं है, ये एक पदार्थ है, वहाँ जीवन नहीं है। इसलिए बीज पुरुष में है, यही कारण कि सांप का बीज स्त्री में होना था। देखिए, क्योंकि ये परमेश्वर का बीज नहीं था, हम ये जानते हैं। आगे बढ़िए, तब तक प्रतीक्षा करें कि ये पुस्तक आपको मिले और इसे पढ़ें, और तब आप इसे देखेंगे। या आपको वचन के द्वारा दिखाऊं, बस सारी बातों को खोल देता है, वैसे ही जैसे पानी के बपतिस्मे को उसके नाम में। देखिए ये कैसा है। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं है, वो सदा ठीक है। यद्यपि आप ये नहीं समझ सकते, जो भी है इसका विश्वास करें, समझे? ये बिल्कुल ठीक सत्य है। और अब हम इस बात को पाते हैं कि उसने ये कहा, ये इसके घटित होने का कारण हुआ। अब जब ये छोटा बीज बिना पुरुष के इस छोटे अंडे पर आया, उस भूमि पर जिसको उसने रचा था, तब ये छोटा बीज, वो छोटा जीवांश रेंग कर अंडे में गया, और ये छोटी पूंछ यहाँ हट गई, और इसने एक कोशिका के बाद दूसरी कोशिका को बढ़ाना आरंभ कर दिया। माँ के जीवन से अलग जी रहा है, उसकी देह से, और वहाँ वो इसे अपने एक रक्त प्रवाह से होकर पोषित करती है। और हम पाते हैं कि अब वो इसे खिलाती है, ना कि इसका लहू, ये स्त्री का लहू नहीं, माँ के लहू की एक बूंद भी नहीं, परंतु ये माँ से, उसकी विटामिन की चीजों से, परंतु उसका लहू नहीं। ये सब कुछ एक गट्ठर में बंधा है माँ के लहू में, कि उसे छटकों और इस प्रकार की चीजों से बचाए, और वो पानी, परंतु उसकी माँ के लहू की एक बूंद नहीं। माँ टीबी से मर रही हो सकती है और उससे बालक जन्मे, ये इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि टीबी के जीवांश लहू की धारा के द्वारा आते हैं। परंतु वो सकती है, वो सकता, टीबी वंशागत नहीं हुई, दुर्बलता, परंतु टीबी नहीं, क्योंकि इसे माँ की सांस को पकड़ता है और जीवांश लेता है। आप देखिए, इसके पहले कि ये सके, बालक जब जन्म लेता है तो इससे पूरी रीति से स्वतंत्र होता है, क्योंकि माँ के लहू से इसका कुछ नहीं। अब हम पाते हैं कि परमेश्वर इस छोटी कोशिका में आया और उसने कोशिकाओं को बढ़ाना शुरू किया, अपनी माँ से विटामिनों को लेकर और चीजें जो वो खाती है। तब जब वो इतना बड़ा हो गया कि स्वयं से खाए, उसने खाना आरंभ कर दिया। और ये क्या है? ये पृथ्वी की धूल है जिससे आप आए हैं, और पेड़ों का जीवन और पशु का जीवन और आदि आदि। और जैसा कि वो मछली खाना आरंभ करता है और रोटी आदि, वो कोशिकाओं को बढ़ाता है। और फिर जब वो पूरी रीति से परिपक्व हो जाता है, 30 वर्ष की आयु में, उसने आज्ञाकारिता में यहूदा से पानी में बपतिस्मा लिया और चला गया। और क्या घटित हुआ? पंडुकी जो कि परमेश्वर था आवाज के साथ ये कहते हुए स्वर्ग से उतरा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ। वो क्या करने आया था? पृथ्वी के उस भाग को छुड़ाने आया। वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ था, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि नहीं है, केवल मसीह में वो सृष्टि है। क्योंकि परमेश्वर अनंत है और एक आत्मा सृष्टि नहीं है। वो तो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है और परमेश्वर ने उस देह को छुड़ाया। देखिए, जब वो नीचे आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं आनंदित हूँ। इसलिए वो इसमें से होकर नीचे आया और अब हर पुत्र आप खाते और स्वाभाविक लैंगिक जन्म जैसे आप आए हैं। तब जब वो उस स्थान पर आया जहाँ से आप जल के बपतिस्मे से होकर निकलते हैं, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तब पवित्र आत्मा आग के बपतिस्मे में आता है और इस सृष्टि का दावा करता है वैसे ही जैसे उसका किया। पवित्र आत्मा और परमेश्वर एक ही आत्मा है, समझे? ये नीचे आता और पुनरुत्थान के लिए देह का दावा करता है और वो हमारी धार्मिकता के लिए जी उठा। सब जो पिता ने मुझे दिया है आएगा, एक भी नष्ट नहीं होगा। मैं इसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, सिर का एक बाल भी नष्ट न होगा। ये तो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ है, ये तो परमेश्वर की सृष्टि का जारी रखना है। तब सारी पृथ्वी का बपतिस्मा होना है और तब पवित्र आत्मा उतरकर नगर में पृथ्वी पर रहने के लिए आता है और परमेश्वर का डेरा मनुष्य के संग और उनके साथ रहता है। परमेश्वर का डेरा यहाँ पृथ्वी पर है। ये सारी छुटकारे की योजना, न्यायोचित पवित्रकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वैसे ही है जैसे ये तब था। अब ध्यान दें, उसने इस कुंवारी को गर्भित होने दिया और ये इसमें है, उसने बिना पुरुष के जाने एक पुत्र को जन्म दिया। इसने युगों से होते हुए विज्ञान को कठिनाई में डाल दिया, ये अब भी है। संभवतः वे यशाया पर हंसे जब वे बोला और कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब ये कैसे हो सकता है? मैं कल्पना करता हूँ यशाया परेशानी जब उसने परमेश्वर को कहते सुना, मैं उन्हें एक अलौकिक चिन्ह दूंगा, मैं उन्हें एक सदा का चिन्ह दूंगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। अब वो लोगों के बीच जाना पहचाना, उसके लोग एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित किया हुआ। अब जब वो डॉक्टरों के सामने आया और आदि आदि इस वक्तव्य के साथ, एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखिए, समय के आरंभ से ऐसा कभी नहीं हुआ। वापस जाएं जहां परमेश्वर ने अपना पहला मनुष्य बनाया, परंतु यहां अब एक महिला जो यहां पृथ्वी पर गर्भवती होने जा रही है। एक समझ के क्षेत्र में जरा सोचें कि उस भविष्यद्वक्ता की परेशानी क्या थी, परंतु वो जानता था कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा, वो इसे सिद्ध करेगा। मैं कल्पना करता हूँ हर इब्रानी परिवार ने अपनी छोटी लड़की को इस बालक के लिए तैयार किया कि बालक को धारण करे। देखिए, जूते या बूट वे जो भी पहनते थे, एक छोटी चिड़िया की आंख और छोटे बालक के आने के लिए तैयार। पीढ़ियां चली गई परंतु परमेश्वर ने अपना वचन सिद्ध किया। एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसने बालक को जन्म दिया। ये सिद्ध किया कि उसके भविष्यद्वक्ता का वचन सत्य था, वो सदा उनके पक्ष में था। कुंवारी का ये पुत्र प्रकट हुआ वचन था। अब संत यूहन्ना एक, यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, संत यूहन्ना एक, ये भविष्यद्वक्ता, ये भी भविष्यद्वक्ता है, परंतु कुंवारी का ये पुत्र प्रकट किया गया वचन था, परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ। अब सारी पृथ्वी परमेश्वर की सृष्टि है, परंतु ये खो गई, समझे? तब उसने इस पृथ्वी को छुड़ाया और आप पृथ्वी के भाग हैं, और उसने आपको उसी प्रकार से छुड़ाया, उसने सारी पृथ्वी को छुड़ाया, समझे? अब इस कुंवारी का ये पुत्र वचन प्रकट किया हुआ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वास किया। शैतान ने हर योजना से इसकी बदनामी करने का यत्न किया। शैतान ने सब कुछ किया कि उसे बदनाम करने का यत्न किया। बिना दुख उठाए वो राज्य ले ले, वो इसे बिना छुड़ाए ले ले, जबकि अदन की वाटिका से उसकी ये योजना थी। जब उसने मेमने को मारा, वो इसे केवल लहू के द्वारा लेगा, यहाँ तक कि उससे प्रतिज्ञा की कि संसार का सारा राज्य वो ले लेगा। जरा सोचें उसकी क्या प्रतिज्ञा है। क्या आप अनुभव नहीं करते मेरे मूल्यवान मित्रों इस मिनट में कि शैतान आपसे प्रतिज्ञा करता है? इसके लिए वो आपकी संस्था में आपको एक बहुत अच्छा सेवक बना देगा, वो हर कलीसिया में आपको सबसे आगे की कुर्सी दिलवाएगा और आपको डीकन बनाता है। वो कुछ भी करेगा यदि आप बस वचन से हट जाएं। अब ध्यान दें, हर को बनाए, उसे संसार दो और सारे राज्य वो उन्हें ले सकता था। वो उससे वचन तोड़वाने का यत्न कर रहा था, क्योंकि वो जान गया वो ठीक उसे वहाँ ले लेगा यदि वो ले सके। उसने ये मूसा से तोड़वा लिया, उसने हवा से तोड़वा लिया, परंतु इस बार उसने गलत व्यक्ति पर प्रहार किया। क्यों? वो वचन था और उसे ये नहीं मालूम था। वो स्वयं वो वचन था। मैं उसे देख सकता हूँ। हम उसका चित्रण करना चाहते हैं जैसे एक बालक का चित्रण। मैं देख सकता हूँ वो पुराने काले पंख हवा के विरोध में फड़फड़ाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये कितना लुभावना है, तुम्हें इसे परखना चाहिए। परंतु परमेश्वर ने कहा यदि हमने किया तो हम मर जाएंगे। ओ अच्छा, निश्चय तुम नहीं मरोगे, समझे? ओ ये निरर्थक है, ये तो वही पुराना विचार है, तुम इसका विश्वास ना करो। परंतु परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर ने सिद्ध किया कि ये सही है और वो इसे ठीक अब सिद्ध कर रहा है। लोग इस मिनट में मर रहे हैं और अब भी सिद्ध करता है कि ये ठीक है। ध्यान दें, जब वो मूसा के पास आया उसने कहा, मूसा तुझे मालूम है तुझे गुस्सा आता है, तू गर्म दिमाग का है। देख इन विश्वासघातियों के झुंड ने क्या किया है। देखिए, तू क्यों नहीं वहाँ जाकर और वास्तव में उन्हें इस विषय में बता। और उसने किया। परंतु जब उसने इस 10,000 वोल्ट की लाइन पर प्रहार किया, इससे उसके पंख झुलस गए। जब वह उसके विरुद्ध दौड़ा, उसने कहा, ओ सुन, कहा मैं तुझे सारे राज्य दे दूंगा। ये लिखा है, समझे? ये लिखा है। अब उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए, उसने सदा इसका संदेह किया। वो अब भी दूसरों को इसका संदेह करना सिखाता है। उसने हवा को सिखाया कि इसका संदेह करे, मूसा को सिखाया, उसने उन सबको संदेह में डालने का यत्न किया। वो आपको सिखा रहा है कि इसका संदेह करने का यत्न करो। आप जो बैठे हुए हैं ठीक यहाँ पर, यदि आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपके नाम पुकारूं, शैतान बहुत समय से यत्न कर रहा है कि आप मुझ पर संदेह करें, आप ये ना करें। बहन, यदि आप ये करती हैं, अच्छा आप या मैं नहीं, परंतु बस संदेह करो, बस इस वचन का विश्वास करो। आपको मेरा विश्वास नहीं करना है, परंतु आप इसका विश्वास करें, समझे? यदि मैं ये वचन कहता हूँ ये मेरा नहीं है, ये उसका है, मेरा वचन भिन्न है परंतु ये उसका है, समझे? अब ध्यान दें, ध्यान, मैं अब अभी आपको इसमें नहीं ले जाना चाहता। ध्यान दें, प्रतिज्ञा, उसके सारे वचन पूरी रीति से सच्चे हैं। उसने इन्हें प्रमाणित किया है, उसने सिद्ध किया, क्योंकि उसने ये सिद्ध किया है कि वो सच्चा वचन था। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है। क्या वो कैसे जीता है? इसके द्वारा। भाई, यदि आप परमेश्वर का थोड़ा सा वचन ले, वो जिएगा। अब ये वो नहीं था जो उसने कहा। क्या आपने ध्यान दिया? EVER, हर वचन। वो कैसे जीता है? ओ, वो वहाँ से खाता है? नहीं, वो तेजी से मर रहा है, ये शरीर है। भाई, वो कलीसिया का सदस्य है, वो सिवाय इसके हर चीज का विश्वास करता है, वो अब भी मरा हुआ है। क्या आप समझे? वो केवल हर वचन से जीवित रह सकता है जो कि मुख से निकलता है। महायाजक, बिशप, पुरोहित, पास्टर, परमेश्वर, हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हम कैसे जानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है? उसने ऐसा कहा तब वो इसे सिद्ध करता है। तब ध्यान दें, यदि वो ऐसा है, आपका अपराध स्वीकृति आपको जीवित नहीं रखेगा, आपकी कलीसिया की सदस्यता आपको जीवित नहीं रखेगा। ध्यान दें, केवल उसके वचन के द्वारा, किसी वचन को गलत स्थान पर रखने से नहीं, कोई भी नहीं जिएगा। एक वचन ने मानव जाति को मार डाला। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 22, एक वचन अब भी सारी चीजों को मार डालेगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक से निकाला जाएगा। कोई भी जो एक शब्द मिलाएगा या एक वचन निकालता है, एक वचन नहीं, नहीं मेरा अर्थ नहीं, नहीं दो वचनों को नहीं, केवल एक वचन, एक वाक्य नहीं, एक वचन, एक वचन। ओ लोगों, क्या आपने समझा? अब मैं ठीक इस मंडली से बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, ये टेप हो गया है और ये समस्त संसार में जाता है। क्या आप समझते हैं संसार के लोग? ये एक वचन, एक वचन, एक वाक्य नहीं, एक अनुच्छेद नहीं, एक वचन। कुल मिलाकर हवा ने इसका अविश्वास किया, ले आई, परमेश्वर ने इसे सिद्ध किया। परंतु तब यदि आप हर वचन का पालन करें, आप जिएंगे। उन्होंने एक वचन का संदेह किया और मानव जाति में मृत्यु ले आए। परंतु मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा, उसकी शारीरिक शक्ति के लिए, परंतु हर वचन के द्वारा, हर वचन जिस प्रकार से ये लिखा है। बाइबल कहती है इसका व्यक्तिगत अनुवाद नहीं है, कोई मनुष्य कहीं भी कोई नहीं परमेश्वर के किसी वचन का अनुवाद करने का यत्न करे। परमेश्वर स्वयं अपना अनुवादक है। जब उसने प्रतिज्ञा दी उसने कहा उजियाला हो जाए और वहाँ उजियाला था। उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो हुई। देखिए परमेश्वर जो भी कहता है परमेश्वर इसे सिद्ध करता है। कोई मतलब नहीं आप कितना सोचने का यत्न करें कि शारीरिक पुनरुत्थान नहीं हो सकता और वे लोग वहाँ पीछे हैं, पृथ्वी की धूल और बीती हुई धूल बेबस तेजाब और गैसों में जिससे उनकी देह बनी थी, उनका प्राण अब भी जीवित है। परमेश्वर ने कहा मैं इसे जीवित कर दूंगा। अय्यूब ने कहा यद्यपि खाल के कीड़े देह को नष्ट कर दें फिर भी अपनी देह में मैं परमेश्वर को देखूंगा। देखिए कोई मतलब नहीं, हर वचन को पूरा होना है और मनुष्य उस वचन से जिएगा। उसने एक मनुष्य को मरुओं में से जिलाया जो चार दिनों से मरा हुआ था, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि वो पुनरुत्थान और जीवन था। जब एक मनुष्य चार दिनों से मरा पड़ा था और बदबू आ रही थी, उसकी नाक पहले ही गिर चुकी थी चार दिनों में। ये ठीक बात है, पहली बात ये गिर जाती है, मनुष्य जाति में नाक है, मृतक में से गिर जाती है, चिकनी होकर गिर जाती है। तब खाल कीड़े आपको बंद बक्से में सील बंद करते हैं, ये जो भी हो सकता है, परंतु फिर भी खाल के कीड़ों को भूमि में से नहीं आना होता है, वे आप में हैं। क्या आपने ध्यान दिया? अय्यूब ने कहा यद्यपि मेरे खाल के कीड़े मुझे नष्ट कर दें, ना कि जमीन के कीड़े, वहाँ पर कोई नहीं होगा। कीड़े आप में हैं, आपको नष्ट करने को तैयार। मृत्यु आपकी मरणहार देह में कार्य कर रही है, परंतु जब आपके पास मसीह है तो फिर जीवन आपकी मरणहार देह में कार्य कर रहा है कि आपको फिर से जिलाए। समझे? उसने एक मनुष्य को मरुओं में से जिलाया, चार दिन मर जाने के बाद वो बदबू छोड़ रहा था, सिद्ध करने के लिए जब उसने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। अब ये कौन कह सकता है सिवाय परमेश्वर के? देखिए, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, वो जो मुझ में विश्वास करता है यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। आप इसका विश्वास करते हैं? और उसने उस मनुष्य को जीवित कर दिया ये सिद्ध करने के लिए कि उसका वचन सही था। ठीक बात है, ध्यान दें, वो वचन था। इब्रानियों 4:12 यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, इब्रानी 4:12 इसने कहा परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से बहुत तेज है, विचारों और हृदय की भावनाओं को जांचता है। क्या ये ठीक बात है? एक परखने वाला, ये सिद्ध करने के लिए कि वो वचन था, उसने क्या किया? पतरस उसके पास आया, उसका नाम शमौन था, और वो यीशु के पास आया और उसने कहा वहाँ बैठ गया। और यीशु जैसे ही उसके पास आया उसने कहा तेरा नाम शमौन है और तू योना का पुत्र है। अनपढ़, उसके पास कोई डिग्री नहीं, उसके पास कुछ नहीं था, एक साधारण मछली पकड़ने वाला, कोई शिक्षा नहीं। बाइबल ने कहा वो अज्ञानी और अशिक्षित था, परंतु वो यरूशलम कलीसिया का बिशप हो गया। क्यों? यीशु ने उसे बताया वो कौन था, उसका नाम क्या था और उसके पिता का क्या नाम था, और वो जान गया कि वो वचन था, क्योंकि बाइबल ने कहा तेरा प्रभु परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा। और उसे भविष्यद्वक्ता होना है, और मलाकी के बाद से मसीह तक कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, 400 वर्ष बिना भविष्यद्वक्ता के, और यहाँ एक मनुष्य खड़ा है अपने वचन की पुष्टि और सिद्ध कर रहा है। इस मनुष्य के लिए जीवन पहले से ठहराया गया था। कहा तेरा नाम शमौन है, तू योना का पुत्र है और अब से तू पतरस कहलाएगा। इस पर विचार करें, किस पर उसने ये प्रमाणित किया? क्यों उसने अपना वचन सिद्ध नहीं किया? क्यों नहीं, उसने वचन को कैफा पर प्रमाणित नहीं किया। वो परमेश्वर था, वो जानता था कि कैफा अभी भी इसका विश्वास नहीं करेगा, परंतु ये मनुष्य जीवन के लिए ठहराया गया है, वो इसे उसी समय जान गया। एक बार बीच में खड़े हुए जहां एक दूसरा मनुष्य कुछ दिनों बाद गया कि पहाड़ के पार से अपने मित्र से मिले, वहां से लगभग 15 मील जहां वो प्रचार कर रहा था उसे अगले दिन वापस लाया। वो वहां बीच में खड़ा हुआ था और जहां यीशु था वहां पर आया, उसने चारों ओर देखा, वो परमेश्वर था, उसके पास परखने का था, ये दर्शाया था। देखिए वचन को सही ठहराता है, उसने वचन को प्रमाणित किया। अब उनमें से कुछ कहते हैं तुम उस मनुष्य के वचन को जानते हो। निरर्थक, उन पादरियों ने कहा वो व्यक्ति नहीं है, नहीं वो वचन नहीं है। कहा तुम जानते हो वो वचन क्या कहता है, प्रभु हमारा परमेश्वर मूसा के समान एक भविष्यद्वक्ता को उठा खड़ा करेगा, और वो ये है, उसकी सुनो। ठीक है, उसने कहा देख तू एक इसराइली है जिसमें कोई कपट नहीं। इस व्यक्ति ने कहा रब्बी तूने मुझे कब जाना? उसने कहा इसके पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू पेड़ के नीचे था मैंने तुझे देखा। वो जानता था कि कौन उसका विश्वास करेगा। उसने कहा, रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू वचन है। यीशु ने प्रमाणित किया वो वचन था, वचन के द्वारा। ध्यान दे, वो छोटी स्त्री कुएं पर वो मसीहा की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे उनकी बड़ी भीड़ और नामधारियों से कोई मतलब नहीं था, और आदि आदि जो उनके उन दिनों में थे, वो वचन की प्रतीक्षा कर रही थी। एक बार एक मनुष्य वहाँ बैठा हुआ था, एक साधारण सा, वहाँ रास्ते के किनारे पर। कहा स्त्री, मेरे पीने के लिए पानी ला। उसने कहा, अब एक मिनट रुक, वो संभवतः मेरे साथ उपहास करने की कोशिश में है। हो सकता है उसने अपने हृदय में विचार किया, क्योंकि वो एक बदनाम स्त्री थी। कहा, क्यों तू मेरे से ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा है? हम लोगों में अलगाव है। तू बस एक यहूदी है, हम सामरी हैं। नहीं, ये रीति नहीं, तेरे लिए उचित नहीं कि तू मुझसे इस प्रकार से मांगे, समझे? उसने कहा, नारी, यदि तू जानती कि तुझसे कौन बात कर रहा है, तो तू मुझसे पीने को मांगती। उसने कहा, तू पीने के लिए, मैं तो बाल्टी या रस्सी नहीं देखती हूँ, तू मुझे इस कुएं से कैसे कभी पिलाता? उसने कहा, ये वो कुआं नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, समझी? थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये विचित्र व्यक्ति है। उसने पानी के बर्तन को ऊपर खींचना आरंभ कर दिया। कहा, अच्छा, जो जल मैं दूंगा वो जल का सोता होगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा तुम्हारे प्राणों में। ठीक है, उसने कहा, अब एक मिनट रुक, मैं समझती हूँ तू यहूदी होने के नाते। कहा, अब तू यहूदी, मुझे बताने का तेरा अर्थ यह है कि तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने ये कुआं खोदा? वो याकूब का परमेश्वर था, समझे? कहा, तेरा अर्थ है कि तू याकूब से बड़ा है जिसने ये कुआं खोदा है? एक साधारण सा मनुष्य देखने में लगता है, तूने बस यही देखा, एक साधारण मनुष्य। कहा, तू कहता है तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने कुआं खोदा और उसने स्वयं इसमें से पिया और उसके पशुओं ने। भाई, इस कुएं का पानी पीने से हम आशीषित हुए जिसे भविष्यद्वक्ता ने खोदा। उसने कहा, हाँ हाँ। उसने कहा, और हम इस पहाड़ पर आराधना करते हैं और तुम कहते हो यरूशलम में? उसने कहा, स्त्री, उद्धार यहूदियों का है, हम जानते हैं कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। उसने कहा, तुम आराधना करते हो और तुम नहीं जानते क्या करते हो। एक यहूदी को वचन मालूम है, देखिए क्या होना चाहिए था, परंतु देखिए अब वो देख रहा था। क्यों? वो क्या करने जा रहा था कि अपने वचन को सिद्ध, समझे? क्यों? उसने कहा, अच्छा, जा अपने पति को बुला और यहाँ आ। और उसने कहा, मेरे पास कोई पति नहीं है। क्यों? उसने कहा, तू सच बोल गई, देखिए, क्योंकि तेरे पास पांच हुए हैं और एक जो अब तेरे साथ है तेरा पति नहीं है, समझे? ध्यान दें, कुछ हुआ, देखिए, किसी चीज ने जीवन लिया। अब यदि इसमें वहाँ आरंभ से नहीं था, यदि पहले से ठहराए जाकर इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था, तो ये उसे कभी नहीं पकड़ पाता। वहाँ एक पुरोहित खड़ा हुआ था, कहा, ये मनुष्य बालजबूब है, देखिए, कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अनंत जीवन, आप सदा से थे, देखिए, आपके पास अनंत जीवन है। वहाँ इसका एक ही रूप है, वो परमेश्वर। आप उसका गुण थे, उसने आपको सोचा और संसार के रचने से पहले आपको जाना अपने विचार में, समझे? उसने चारों ओर देखा कि वो पाप में कितनी बुरी स्थिति में थी वो। परंतु देखिए, वो नहीं सका, वो पुरोहित को नहीं ले सका, क्योंकि पुरोहित एक शिक्षित ज्ञानी था, वचन में धर्म ज्ञानी, परंतु स्वर्ग में कोई प्रतिनिधित्व नहीं। देखिए, वो परमेश्वर के विचारों में बिल्कुल नहीं था, परंतु ये स्त्री थी। इसने कहा, श्रीमान, मुझे प्रतीत होता है कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। कुल मिलाकर वो स्त्री को यही चाहता था कि वो देखे, समझे? कहा, हम विश्वास करते हैं कि तू है, मैं विश्वास करती हूँ कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। अब हम जानते हैं कि अब हम भविष्यद्वक्ताओं को नहीं समझते, क्योंकि वास्तव में देर हो गई है। हम जानते हैं कि मसीहा आ रहा है, और जब मसीहा आता है तो वो वचन होने जा रहा है। देखिए, वो हृदय के भेदों को जानने जा रहा है, वो वही चीजें करने जा रहा है जो तूने वहाँ किए। कहा, तुझे उसके भविष्यद्वक्ताओं में से एक होना चाहिए कि उसके आगे आगे चलकर या कुछ। उसने कहा, मैं वो हूँ। वो क्या करेगा? वो अपना वचन प्रमाणित कर रहा था, अपनी स्थिति प्रमाणित कर रहा था। वो क्या था? सिद्ध कर रहा था, परमेश्वर मसीह में था, संसार को स्वयं में मिला रहा था, और परमेश्वर वचन है। ठीक है, उसने हवाओं और लहरों को शांत कर दिया। यशायाह की भविष्यवाणी को प्रमाणित करने को वो सामर्थी परमेश्वर कहलाएगा, अनंत काल का पिता, समझे? उसने रोटी और मछलियाँ भी उत्पन्न कर दी, ये कुंवारी से जन्मा पुत्र। ये क्या था? वचन प्रमाणित करने को, सारे वचन को पूरा होना है। उसने वचन को प्रमाणित किया ये कहने के द्वारा, वो यहोवा जो प्रकट हुआ था, वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ था। परमेश्वर सृष्टि में, यहाँ परमेश्वर सृष्टि के छोटे से भाग में, परमेश्वर स्वयं अपने में जी रहा था। वो परमेश्वर की सृष्टि का आरंभ था, उससे बहुत से पुत्र जन्मे। ध्यान दें, उसने मछलियों को गिनती में बढ़ा दिया। वो वचन है और वचन का प्रमाण। अब जरा ध्यान से सुने, जैसे कि हम अंत पर आते हैं। उस दिन जो मैंने कुछ मिनटों पहले पढ़ा था, अब जब वो याईर के घर पर आया, जब वो वहाँ पहुँचा तो अंदर गया। अब स्मरण रहे, याईर एक पुरोहित था, एक किनारे का विश्वासी। वो यीशु पर विश्वास करना चाहता था, परंतु वो अपनी कलीसिया को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्होंने कहा था कोई भी जो उस पर विश्वास करेगा वो कलीसिया से निकाले जाने वाला है। अब ध्यान से सुने, अब बंद करते हुए मेरी ओर बहुत अधिक ध्यान दें, इस पर ध्यान करें। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु को मालूम था जब उसने झील को पार किया, क्योंकि वो सारी बातें जानता था। और जब उसने झील को पार किया, वहां रुक गया और यहां वो छोटा याजक आया। उसकी पुत्री बहुत बीमार थी, डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया था, कहा वो अब मरने पर ही है। अब कार्य करने का समय आता है। हो सकता है आज प्रातः आपके लिए है, समय आ गया है कि आप कार्य करें, समझे। हो सकता है आप बहुत बीमार हैं, हो सकता है आप सहमत हों कि आप गलत हैं। ये हो सकता है परमेश्वर ने मामले को आगे बढ़ाया, काम करने का समय आ गया। अब बंद करते हुए, अब वो आया, उसने चिंता नहीं की कि बाकी सब ने क्या कहा। लोगों के बीच खुल्लम खुल्ला आया और यीशु के पैरों पर गिर पड़ा। शिक्षित ज्ञानी का क्या ही कदम था, उसके पास आया जिसका विद्यालय जाने का कोई अभिलेख नहीं। कैसे एक मनुष्य आता है जो सारे धर्म विज्ञान में था, और एक मनुष्य के पास आता है जो तिरस्कृत जाना जाता था, एक जंगली मनुष्य, पागल मनुष्य, अपने आपे में नहीं, अपनी सही मनोस्थिति में नहीं। इस भाव को क्षमा करें, परंतु उस दिन का साधारण संकी, हर किसी ने उसके लिए ऐसा सोचा। जैसा कि हम आज कहेंगे एक आम सड़क की भाषा में नट, जैसा मैंने उस दिन प्रचार किया नट पर और बोल्ट पर, आप जानते हैं। देखिए, वो लोगों के लिए ऐसा ही था, रोजाना का साधारण। कहते हैं, क्यों तुम अपने आपे में नहीं हो, तुम पागल हो, तुम एक पागल व्यक्ति हो। अब यहाँ एक मनुष्य था जिसके पास सारी छात्र वृत्तियाँ थी, उसके पास आ रहा है जिसे समझा जाता है कि अपने आपे में नहीं है, वो इसके लिए बाध्य था। अब उस पर ध्यान दें, ये थोड़ा सा चुभने जा रहा है, परंतु ये आपके लिए अच्छा है। देखिए, कभी कभी झटका आपको जगा देता है। ध्यान दें, वो आया और इस छोटी लड़की की एक ओर चला गया, मरी हुई के जो संभवतः 4 घंटे से पहले मरी होगी। उन्होंने उसे वहाँ लेटा दिया था और उस पर सुरक्षित रखने के लिए द्रव्य डाल दिया और खाट के चारों ओर डाल दिया। उन दिनों में वे ऐसा ही करते थे, उसे संवार कर फट्टे पर डालकर गड्ढे में डाल देते थे। वो वहाँ पलंग पर पड़ी थी, फूल उसके चारों ओर थे। और ओ, वो भला छोटा पास्टर, छोटा याईर, मैं कल्पना करता हूँ वो एक छोटा पास्टर था। हर किसी ने उससे प्रेम किया, क्योंकि आप देखिए, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि ये उसने अपने हृदय में किया, यीशु का विश्वास किया। परंतु वो कठिनता से इस बात का निर्णय ले सका, क्योंकि उस पर हर शनिवार को, हर सोमवार को आने के लिए प्रतिबंध नहीं होगा, समझे। वो कठिनाई से अपना निर्णय नहीं ले सका। और दूसरी बात, लोग बड़े अच्छे सम्मानित, जिन लोगों के बीच में वो था, वे कहेंगे, आप जानते हैं क्या, याईर कट्टरता में चला गया। देखिए, वो वहाँ झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ हो लिया, ठीक यही जो उसने किया। जहाँ वे सारे चिन्ह और चीजें होनी चाहिए, वो गलील का भविष्यद्वक्ता, आप जानते हैं, नासरत का यीशु। हम अब इसका विश्वास नहीं करते, ये तो धर्म विरोधी सा लगता है, परंतु ये तब ऐसा ही था, समझे। और किसी दिन, जैसा कि अब है, ये तब होने जा रहा था। देखिए, वही चीज। अब ध्यान दें, वो वहाँ पर गया और वो कठिनाई से वो नहीं कर सका, परंतु समय आया जहाँ उसे ये करने के लिए बाध्य होना पड़ा, उसे ये करना था। और यहाँ वो गया और यीशु को पाया, ठीक वहाँ उन सब के सामने, उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, स्वामी स्वामी। आप जानते हैं कि ये क्या है, हुकूमत, स्वामित्व, ठीक है। देखिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि यीशु उनका बचाने वाला हो, परंतु उनका स्वामी नहीं। देखिए, स्वामी, हुकुम चलाने वाला। जी हाँ, आप कहते हैं, यीशु तू मुझे बचा ले और मुझे यहाँ खड़ा होने दे, और ये ठीक है, और मैं अपना काम करूंगा, अब तू मेरे मामले में ना आना। परंतु तू मेरा बचाने वाला हो सकता है, परंतु मेरा प्रभु नहीं। वो प्रभु होना चाहता है, आप देखिए, तब वो आपका बचाने वाला है। परंतु अब उसने कहा, स्वामी, बचाने वाले, समझे, मैं, मेरी छोटी लड़की, मेरी इकलौती पुत्री, वो 12 वर्ष की है, डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया है, कोई संदेह नहीं, पुरोहित ने ये कहा होगा। आप जानते हैं कि वो तेरे विषय में बातें करते हैं, एक धर्मांध होने का, परंतु स्वामी, तू जानता है, मैं तेरा विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू विचारों को परखता है, और मैं केवल ये चाहता हूँ कि तू कहे कि बस आकर अपना हाथ उस पर रख दे, और तब मुझे बता कि क्या करना है, मैं वो करूँगा। ओ, अब तो तू कहीं जा रहा है। कहा मैं जाऊंगा और उसने शुरू कर दिया। उसके पैदल चलने के कई घंटों बाद एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया, जैसा कि उस समय का चलन था। उसके सर पर धूल थी। कहा इस मनुष्य को परेशान ना कर, तेरी बेटी मर गई है, वो तो मर चुकी है, उन्होंने उसकी तैयारी कर दी है और बाहर लिटा दिया है। ओ उसका छोटा हृदय, यीशु ने अपनी आंखें घुमाई, उसको देखा और उसने कहा ओह ओह ओह। उसने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? अब उसने वहाँ क्या किया? उसने यीशु से प्रतिज्ञा की थी, अब उसे ये प्रमाणित करना था। आमीन। मैंने आपको बताया तू केवल विश्वास कर और तू परमेश्वर की महिमा देखेगा। अब वो जानता था कि वो क्या कर रहा था। उसने कहा वो कुछ नहीं करता जब तक पिता पहले उसे न दिखा दे। संत यूहन्ना 5:19। मैं केवल वो करता हूँ जो पिता मुझे दिखाता है, इसलिए उसने उसे दिखा दिया क्या होने जा रहा था। इसलिए जब वो घर में गया और जाकर उसके एक और खड़ा हुआ और वो छोटी ठंडी अकड़ी हुई आकृति वहाँ पड़ी है, कई हफ्तों से बीमार थी और उसकी छोटी पीली देह, उसने कोई खाना नहीं खाया और बुखार और दूसरी चीजें, वो मर चुकी थी। उन्होंने उसके ऊपर संलेपन द्रव्य छिड़क दिया था, उस संलेपन मसाले और चीजें, और आप जानते हैं कि वहाँ पलंग पर पड़ी हुई थी और उसे लपेटने के लिए चीजें तैयार थीं और उसे कब्र में रखे, और उन्होंने रखा। उसकी छोटी सी धर्म क्रिया थी कि फूलों को लेकर उसके चारों ओर रखें। यीशु वहाँ आया और हर कोई ओ यईर तुम्हारी छोटी लड़की मर गई है, ओ पिता यईर, ओ हमें आपके लिए बहुत खेद है और सारी बातें। उसने कहा ओ शांत रहें, तुम लोग बहुत हल्ला करते हो। उसने कहा ये यहाँ सब हुल्लड़ क्या है? आप समझे ये हुल्लड़? अब बस तुम लोग चिल्ला और शोर मचा रहे हो, लड़की मरी नहीं है, वो सोती है। और तब उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने उसे कहते सुना कि वो मरी नहीं थी, वे कहा, उन्होंने हंसकर उसका उपहास उड़ाया। दूसरे शब्दों में उन्होंने उस पर छी किया। शोर, क्यों तू झूठा भाष्य रखता, क्यों मनुष्य को धोखा देने वाला, लड़की मर गई है। डॉक्टर ने कहा वो थी, हमने उसका संलेपन कर दिया, हमने उसे बाहर लिटा दिया, वो वहाँ लेटी हुई है, वो मर गई है। उन्होंने कहा हा हा हा, अब यही तू इसके विषय में बातें कर रहा था, अब इस विषय में क्या है? अब जानते हैं उसने क्या किया? उसने कहा तुम सब यहाँ से बाहर निकल जाओ, इस प्रकार का अविश्वास आसपास में ये काम नहीं कर सकता। अब उसने क्या कहा था? उसने कहा यही यदि तू केवल विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अब ये उसका वचन है, उसे ये प्रमाणित करना है, ठीक है। तब जब वो घर में गया वे सब रो रहे थे। उसने कहा वो सोई हुई है, ये विज्ञान के विरुद्ध है, ये सहज बुद्धि के विरुद्ध है, वो मरी हुई थी, संलेपन की हुई। जैसे ही वे मरते वे तभी उसका संलेपन कर देते, ठीक जैसे ही उनमें से जीवन निकल जाता, वे उस मसाले और चीजें डाल देते और उन्हें लपेट देते और ले जाने के लिए ले लेते। देखिए वे उन्हें गाड़ देते, कभी कभी लोग भी उन्हें नहीं देख पाते। अब जानते हैं हनानिया और सफीरा, उन्होंने हनानिया को गाड़ दिया था। जब सफीरा अंदर आई थी, आप देखिए करके उसे ले गए और उसे गाड़ दिया। आप देखिए वे जैसे ही मरेंगे वे उस पर वे चीजें उड़े लेंगे और उन्हें बाहर ले जाएंगे और अलग रख देंगे, समझे। इस प्रकार से वो कब्र में जाने के लिए पहले ही तैयार थी, परंतु वे पिता की प्रतीक्षा करना चाहते थे इसके पहले कि वे उसे रखें, वे उसे देख ले। और जब वो अंदर आया वो उस स्थिति में थी और उसने कहा वो तो बस एक झपकी ले रही है, ठीक है। उन्होंने कहा अब यदि वो व्यक्ति वास्तव में पागल नहीं है, इसलिए अब उसने क्या किया? वो तो पहले ही कह चुका था कि वो सो रही थी, उसे तो अपना वचन सिद्ध करना था, वो इसे उस झुंड के सामने नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा इन सबको बाहर निकाल दो, और मैं उसे देख सकता हूँ कि वो घूम कर चारों ओर यही देख रहा था और कहता है तू अब भी विश्वास करता है? हाँ प्रभु, तू और तेरी पत्नी यहाँ आ जाओ। पतरस, याकूब और यहुन्ना तुम लोग मेरे साथ आओ। वे वहाँ चले गए और इस वचन को पुकारा तलिता कूमी, जिसका अर्थ है छोटी लड़की उठ जा, और उसने अपना वचन सिद्ध कर दिया, वो केवल सोई हुई थी। क्या ये ठीक बात है? उसने यहाँ ये सिद्ध किया कि उसका वचन सही था। उनके अविश्वास से बेपरवाह होकर वो अब भी सिद्ध करता है कि उसका वचन सही था, उसे जगाने के द्वारा, क्योंकि उसने कहा वो सोई हुई थी। किसी दिन वो फिर से वैसा ही करेगा उस हर सच्चे विश्वासी के साथ, उस वचन के लिए जिसकी उसने प्रतिज्ञा दी है। वे जो मसीह में हैं, परमेश्वर उसके साथ ले आएगा। देखिए, वे जो मसीह में हैं। इस छोटी यहूदी लड़की ने क्या किया? मैंने यहाँ इस वचन को छोड़ना शुरू कर दिया था, परंतु मैं इसे निरंतर लेने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर होगी और हम कुछ मिनटों में प्रार्थना पंक्ति को लेंगे। हो सकता है अगले सप्ताह मैं आपसे नहीं मिलूंगा, परंतु हम एक मिनट के लिए प्रतीक्षा करेंगे। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित ना रहेगा, समझे? ध्यान दें, आपको दिखाने के लिए मैं इसे कुछ आगे बढ़ाऊंगा। क्यों यीशु ने इस इब्रानी छोटी लड़की को जगाया? क्योंकि वो जानता था कि वो मरी नहीं थी, पहले से ठहराई हुई, वैसे ही जैसा उसने लाजर से किया, समझे? संभवतः वहाँ बहुत सी छोटी लड़कियां मरी उसी दिन। उसने उनके लिए एक भी शब्द कभी न कहा। उसे मालूम था कि इस वाली के पास अनंत जीवन है। देखिए, उसने उन बाकियों को नहीं जगाया। देखिए, जब वो यरूशलेम से बाहर आया, वे कहते हैं, यहाँ ये व्यक्ति है। कोई संदेह नहीं, उन्होंने कहा, तूने मरे हुओं को जगाया। तू मुझे बता कि तूने मरे हुओं को जिला सकता है? यहाँ हमारे यहाँ कब्रिस्तान इनसे भरे पड़े हैं, आ इन्हें जिला। देखिए, उसने उनकी ओर कभी भी जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने कभी नहीं दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि वो वचन था। ध्यान दें, वो केवल सोई हुई थी। उसे मालूम था कि पिता आएगा। अब ये छोटी लड़की, देखिए, उसे मालूम था कि वो छोटी कुमारी यहूदन केवल सोई हुई थी। देखिए, धर्मी नहीं मरता। यीशु धर्मियों को छुड़ाने को आया, और छुड़ाने का अर्थ आपको वापस वही लाना जहां पहले आप थे, समझे? वो अविश्वासियों को नहीं छोड़ा सका। कोई मतलब नहीं कितने शिक्षित और उनके पास डॉक्टर की कितनी डिग्रियां थीं। वो उन्हें ना छोड़ा सका, क्योंकि वे छुड़ाने योग्य नहीं थे। उन्हें तो अपने गंतव्य ही पहुँचना था। परंतु उसके पूर्व ज्ञान में जानता था कि लाजर कब्र से बाहर आने वाला था। वो ये भी जानता था कि इस छोटी लड़की के पास अनंत जीवन था। इसलिए वो मरी हुई नहीं थी, वो केवल सो रही थी। और जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है इस पृथ्वी पर, यदि हम उसके आगमन तक नहीं जीते हैं, हम मर नहीं सकते, हम केवल सो रहे हैं। उसने ये यहाँ सिद्ध किया है, वो इसे फिर से सिद्ध करेगा। यद्यपि मेरे खाल के कीड़े मेरे शरीर को नष्ट कर दें, फिर भी मैं उसकी समानता में जागूंगा। उसने अपने सारे वचन सिद्ध किए हैं, उसके सारे वचन। जरा इस पर सोचें, उसके सारे वचन, और आप उसका वचन थे, वो वचन था, और आप उसके वचन का भाग थे, और यही कारण है कि आप यहाँ भेजे गए हैं जीवन में अपने स्थान की पुष्टि करने के लिए। मैं नहीं सोचता कि आप ये समझे। देखिए, वो वचन है। अब आप इसे समझे, वो पैरों में था लूथर में, जांघों में वेस्ली में, कंधों में पेंटिकॉस्टल। देखिए, मेरा क्या अर्थ है? वो सिर है, आपके पास एक भाग है जो एक साथ मिलाता है, ये घड़ी जिसमें अब हम जी रहे हैं। पांव का भाग नहीं, जांघ का भाग नहीं, कंधे का भाग नहीं, परंतु गर्दन का भाग। क्या ये ठीक बात है? ये सिर को जोड़ता है, ये देह का भाग है। वे जो यीशु में सोए हैं, परमेश्वर उन्हें अपने साथ ले आएगा। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे। क्या ये ठीक बात है? देखिए, आप वचन का भाग हो जाते हैं, आप उसका भाग हो जाते हैं। इसकी मान्यता के लिए आप उसका नाम लेते हैं। देखिए, आप उसमें रखे गए हैं, उसके नाम में बपतिस्मा लिया है, उसकी देह में। एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया। इसमें ठीक सही जैसे उसी स्थिति में, वो अपनी विधि नहीं बदलता। यदि कितने विश्वास करते हैं कि आरंभिक कलीसिया उसमें है, चलिए देखें कितने इसका विश्वास करते हैं। उनका बपतिस्मा कैसे हुआ था? ठीक है, देखिए, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमने सिद्ध किया है, हम इस पर आधी रात तक टिक सकते हैं, आज रात्रि ये सिद्ध करते हुए, और फिर भी आगे और आगे। देखिए, ना बदलने वाला, समझे? आप उसमें हैं और उसका एक भाग, क्योंकि आप उसके विचार का एक भाग थे। संसार के रचने से पहले उसने आपको बुलाया। बाइबल ने कहा कि पशु पृथ्वी पर है, वो नामधारी मसीह विरोधी पृथ्वी पर आ रहा है। रोम में पशु बन रहा है जो कि पहला नामधारी था, और ये कलीसियाओं की विश्व सभा पशु के लिए बना रहा है, ठीक वैसे ही जो हमने उस पुस्तक में रखा है उस दिन। ध्यान दें, ये उसे तैयार करता है। देखिए, वो मसीह विरोधी, और बाइबल ने कहा, सब जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए थे, कब? उस बेदारी पर, पृथ्वी के रचने से पहले घात किया गया, आपका नाम वहाँ लिखा था। वो मसीह विरोधी आपको धोखा देगा। मती 24:24 कहता है कि मसीह विरोधी इतना समानता में होगा जैसे वास्तविक चीज हो। इन अंत के दिनों में होगा कि ये हर चुने हुए को धोखा देगा या पहले से चुने हुए को। ये वही चीज है, चुनाव और पहले से ठहराया जाना एक ही बात है। परमेश्वर ने आपको चुना या पहले से ठहराया पृथ्वी के रचने से पहले। उन सबको धोखा देगा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में पहले से ठहराए हुए नहीं हैं। डेनियल ने इसके लिए कहा है कैसे बुद्धिमान उस दिन में होंगे और कैसे निर्बुद्ध और आदि आदि। ठीक है, इतने मैं बस इसे लेता जा रहा हूँ बहुत दूर, मेरे लिए घड़ी तेज चल रही है। ध्यान दें, अब ध्यान दें, उसने बाद में ध्यान दिया, अब ध्यान दें यहाँ क्या घटित हुआ। वे सब जिन्हें उसने पहले से जाना बुलाया, सब जिन्हें उसने बुलाया न्यायोचित ठहराया, सब जिनको उसने न्यायोचित ठहराया उसने महिमा युक्त किया। आपकी यात्रा समाप्त हुई, आप अपना भाग जी रहे हैं। अनुग्रह यही जो उसने आपके लिए किया, कार्य जो आप उसकी सराहना में करते हैं, अपनी उसी बात के द्वारा सिद्ध करता है। वो सारी बातें जान गया, ये कुंवारी से जन्मा पुत्र, उसे मालूम है कि मछली पानी में कहाँ है। पतरस और वे जाल डाल रहे थे और कुछ नहीं पकड़ा। ये उसके वचन को सिद्ध करता है, क्या ठीक बात है। वो सारी बातें जानता है। और जब वो अपना कर देने के लिए तैयार हुआ, ये दर्शाया कि वो सारी चीजों का स्वामी है। उसे मालूम था कहाँ वो मछली थी जिसके पास उसके मुंह में पर्याप्त सिक्का है कि उसके लिए भुगतान करे। किसी ने गिरा दिया था वहाँ पर और उस मछली ने उठा लिया था। और उसने कहा, पतरस जाकर बंसी डाल, देखिए, और मछली को ले और उसके मुंह से सिक्का निकाल और आगे बढ़कर और उन्हें संतुष्ट कर दे, करो का भुगतान कर दे। ओ हाँ, लोमड़ियों के पास भट हैं, हवा की चिड़ियों के पास घोंसले, परंतु उसके पास वचन था और वो वचन था और वैसे ही उसने सिद्ध किया। उसने सदा अपना वचन सिद्ध किया, वही अब वो करेगा। हर पीढ़ी में उसने वही सिद्ध किया। तीसरे दिन के बाद उसकी मृत्यु गाड़े जाने, तीसरे दिन वो फिर से जी उठा अपने वचन को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं अपने पवित्र जन को चढ़ने ना दूंगा, ना ही मैं उसके प्राण को अधोलोक में छोड़ूंगा। तीसरे दिन इसके पहले की सड़ाहट आरंभ हो 72 घंटों में, देखिए, 3 दिन पूरे नहीं होने पाए क्योंकि सड़ाहट 72 घंटों में आरंभ हो जाती है। देखिए, इसलिए वो पूरे समय तक नहीं गया क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने कहा, देखिए, भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं अपने पवित्र जन को चढ़ने ना दूंगा। उसने अपना वचन सिद्ध किया, उसने बीमार लंगड़ों को चंगा किया कि अपना वचन सिद्ध करे जो यशाया और बाकी भविष्यद्वक्ताओं ने कहा। उसने पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा को भेजा कि अपना वचन सिद्ध करे। आप इनमें से कुछ पवित्र लेख चाहते हैं? अब योएल 2:28, उसने कहा, अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा सब पर उतारूंगा और दास दासियों पर आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे और आदि आदि। उसने ये उंडेलने के द्वारा सिद्ध कर दिया। उसने इसे समय से पहले ये भी कहा, लूका 24:49 में, यदि आप ये लिखना चाहते हैं। उसने कहा, देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को तुम पर भेजता हूँ, परंतु तुम यरूशलेम नगर में दुखे रहना जब तक तुम ऊपर से सामर्थ न पाओ। यहाँ ये है, उसने ये किया, उसने आत्मा को निरंतर अपने वचन को सिद्ध करने के लिए भेजा। परंतु ध्यान दें, उसने क्या कहा, क्या उसने ये किया? ठीक है, मरकुस 16, उसने कहा, तुम सारे जगत में जाओ, हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। कितनी दूर? समस्त संसार में। किसे? हर प्राणी को। वो जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है बच जाएगा, वो जो विश्वास नहीं करता दोषी ठहरेगा, और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। उसने कहा मरकुस 4 में, उसने यूहन्ना 14:12 में कहा, उसने ये भी कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। जिसने उसी आत्मा को लिया जो उसमें था कि उन्हीं कार्यों को करे, क्योंकि क्या आत्मा प्रतिज्ञा के वचन को भविष्य में प्रकट करने आ रहा था। देखिए, उसने एक प्रबंध किया क्योंकि उसे मालूम था कि ये चीजें होंगी। अब 1900 वर्षों पश्चात कलीसियाई काल समाप्त होने के साथ और वे सारी बातें जिनकी उसने लूथर वेसली के विषय में भविष्यवाणी की थी, हमने हाल ही में होकर उसमें से निकले हैं, रेखांकित होते हुए देखा, और चांद आया और इसे चित्रण किया, और प्रभु ने इसका चित्रण श्यामपट पर हमारे लिए किया और ये दर्शाया, और वह स्वयं नीचे उतरा और इसके सही होने की पुष्टि की। 1900 वर्षों के पश्चात हम लुदिकियाई कलीसियाई काल के अंत में हैं। उसने लूका 17:30 में प्रतिज्ञा की है कि यही मनुष्य का पुत्र, उसने ये प्रतिज्ञा दी, जैसा सादोम के दिनों में था, प्रकट होगा इस पृथ्वी पर। क्या ये घटित हुआ? इसे घटित होना ही था, ये असंभव है। अब याद रखें, वो तीन नामों में आया, मनुष्य का पुत्र, एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का पुत्र, आत्मा, दाऊद का पुत्र, सहस्र शताब्दी के लिए। परंतु इस संयोग के बीच में, अब उसके अपने वचनों के अनुसार, उस दिन में जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, अपने आप को इस तरह प्रकट करेगा। क्या परमेश्वर का पुत्र नहीं, मनुष्य का पुत्र अपने आप को भिन्न रूप में प्रकट करेगा। अब ये क्या बनाता है? मलाकी 4, बिल्कुल ठीक। देखिए, मनुष्य का पुत्र अपने आप को प्रकट करेगा, सारे बड़े नामधारियों में नहीं और आदि आदि, जैसा कि हमने कालों में होते हुए पाया, परंतु वो अपने आप को फिर से एक मनुष्य के पुत्र में प्रकट करेगा। मलाकी 4, और उस दिन में मैं तुम्हारे पास एलिया भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा, और वो बालकों के हृदयों को प्रेरितों पूर्वजों की ओर फेरेगा, इन सारे नामधारियों से दूर और मूल वचन पर फिर से वापस लाता है कि अंत के दिन में दुल्हन वृक्ष को वापस ले आए, जो उसने प्रतिज्ञा दी है, सांझ के समय उजियाला होगा, ना कि धुंध भरे दिन में, ये उजियाला होगा, ये दिन होगा, ना तो दिन होगा ना रात होगी। देखिए, ये देह को बना रहा है, परंतु वही सिर जो यहाँ पूर्व में था फिर यहाँ पश्चिम में है। सांझ के समय उजियाला होगा। ओ प्रभु, मुझे गाना गाने की अनुभूति हो रही है। ये सांझ के समय उजियाला होगा, महिमा का मार्ग तुम निश्चय ही पाओगे। जल के मार्ग में आज उजियाला है, उसके बहुमूल्य नाम में गड़ जाओ। युवा और बूढ़े, अपने सारे पापों से प्रायश्चित करो, तब निश्चय ही पवित्र आत्मा अंदर प्रवेश करेगा। सांझ के उजियाले आ गए हैं, ये मालूम पड़ गया और सत्यापित हो गया है कि परमेश्वर और मसीह एक है, और मनुष्य का पुत्र अपने आप को उसी सामर्थ्य में प्रकट कर रहा है जो वो था, ना कि कलीसिया युग से होते हुए, न्यायोचित और पवित्रीकरण से होते हुए, सारी चीजें यहाँ हैं, परंतु मनुष्य का पुत्र कौन है? वचन, और वचन दोधारी तलवार से बहुत तेज और सामर्थी और हृदय के विचारों को परखता है। उसे क्या करना था? वचन को सिद्ध करना था। वो क्या करेगा जब ये घटित होता है? तो हम इस पर ध्यान दें, इसे उसी रूप में देखें जो वो यहाँ आरंभ में था, अग्नि स्तंभ। ओ, ये सिद्ध कर रहा है, वो इब्रानियों 13:8 है, कहा यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। ये क्या था? यीशु मसीह बीते कल में वैसा ही है, वहाँ जंगल में मूसा के साथ वो मसीह था। कितने जानते हैं कि बाइबल ने ये कहा, बीते कल वो मसीह था, जब पौलुस ने यहाँ आज बोल रहा था। आप इसका विश्वास करते हैं? नए नियम में तब मनुष्य का पुत्र वही मसीह अंत के दिनों में, समझे? ठीक है, यूहन्ना 14:12 में भी ध्यान दें, उसने कहा वे कार्य जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे। ये सारे दूसरे लेख, वो क्या कहता है? यहाँ वो सिद्ध कर रहा है, लूथर के युग में नहीं, वेसली के युग में नहीं, ना ही पेंटिकॉस्टल युग में, ना ही बैप्टिस्ट युग में, ना प्रेस्बिटेरियन युग में, हम इन सब में से होते हुए निकले, बाइबल में इतिहास के द्वारा ये सिद्ध किया। परंतु क्या मनुष्य के पुत्र का युग प्रकट किया जा रहा है? इन सब बातों को वचन से पूरा करे, जब सब कुछ पूरा हो जाना चाहिए, समझे? हम ये देखते हैं और ये सत्य है, उन विधियों के द्वारा सोचते हैं जो उसने पहली बार किया, केवल इसी की हमारे बीच पुष्टि नहीं की, परंतु विज्ञान के द्वारा पुष्टि की। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ये सही है। जॉर्ज जे लेसी, उंगली की छाप और दस्तावेज के लिए FBI के अध्यक्ष ने कहा, ज्योति लेंस से टकराई है। मैंने स्वयं में इसे मनोविज्ञान कहा, परंतु कहा, श्रीमान ब्रनम, ये कैमरा मनोविज्ञान को नहीं लेगा, ये वहाँ है। ये क्या है? एक गवाही जो वर्षों पहले, जब अग्नि स्तंभ वहाँ झाड़ी में खड़ा था, एक चक्रवात के समान बोल रहा था, उसने कहा, तू कभी धूम्रपान या शराब ना पीना, वहाँ तेरे करने के लिए एक कार्य रखा है जब तू बड़ा होगा। लोगों ने कहा, ये लड़का अपने आपे में नहीं है, माँ डॉक्टर को बुलाना चाहती थी, मैं अधीर था। परंतु ये क्या था? वो ठीक यहाँ ओहियो नदी के किनारे उतरा और कहा, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भेजा गया कि लोगों को वचन के प्रकटीकरण के लिए तैयार करे, इसी प्रकार तेरा संदेश होगा। कैसे डॉक्टर डेविस और उन लोगों ने मुझे बुलाया, तेरा दिमाग ठीक नहीं है, मुझे कलीसिया से निकाल देना चाहते थे क्योंकि मैं उनसे महिला प्रचारकों पर असहमत था और वे सारी बातें जो वचन से नहीं थी। उसने कहा, और तू कहता है कि तू प्रचार करने जा रहा है और एक बेदारी जो संसार को हिला देगी। मैंने कहा, मैं नहीं, परंतु उसने इस प्रकार कहा है। उसने कहा, बिली तुम्हें दुःस्वप्न हुआ है। मैंने कहा, मैं अभी अपना कार्ड छोड़ दूंगा, मैं अब आपसे अलग हूँ। उसने ये कहा, मैं इसका विश्वास करता हूँ और उसने ये सिद्ध कर दिया। ये एक अच्छा भाग है, उसने ये सिद्ध किया, उसने अपना वचन के द्वारा सिद्ध किया क्योंकि वो वचन है, समझे? और वचन क्या करता है? हृदय के गुप्त विचारों को जानता है। क्या ये ठीक बात है? ठीक है, इब्रानियों 13:8 में ये सिद्ध किया। और अंत के दिनों में उसके पास कलीसियाई दुल्हन तैयार होगी। वो इसे कैसे करने जा रहा है? भाई ब्रैनम, मैं नहीं जानता, परंतु उसने कहा कि वो करेगा। दूसरों में से बुलाए गए, ये ठीक बात है। एक चित्तीदार चिड़िया जो उसके लहू के द्वारा चित्तीदार हुई है, समझे? बुलाए हुए, बाकी सारे लोग उसके विरोध में हैं। वो त्यागी हुई और अस्वीकृत हुई, परंतु चित्तीदार चिड़िया। अब मैं चिंता नहीं करता कि लेखक कितना असहमत होना चाहता है इस बात से, उसने गलती की। दुश्मन रहे, चिड़िया से क्या किया गया? वो चित्ती वाली चिड़िया थी। उन्होंने उन दो को लिया, एक मार डाली गई, वो साथी, और दूसरी चिड़िया पर डाल दिया गया, और ये कोड़ के शुद्ध होने के लिए था, और लहू के धब्बे, और पुकारा, पवित्र 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 प्रभु के लिए। और वो हमारा जोड़ीदार यीशु मसीह था जो मारा गया था, और उसका लहू हम पर चिल्ला रहा था, पवित्र 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 प्रभु के लिए। और बाकी सारी चिड़ियाएं, मैं आनंदित हूँ कि मेरा नाम उसकी पुस्तक में है, ना कि यहाँ पृथ्वी पर, परंतु वहाँ ऊपर, ना कि बकरी की खाल पर, परंतु मेमने की खाल पर। ये ठीक बात है। वहाँ मृतकों का एक पुनरुत्थान होगा, वो इसकी पुष्टि करेगा। ये ठीक बात है, वो इसे सिद्ध करेगा। कलीसिया का एक उठा लिया जाना होगा, वो ये कैसे करेगा मुझे नहीं मालूम, परंतु वो इसे सिद्ध करेगा। उसका वचन सत्य है, एक सहस्र शताब्दी होगी, वो इसे सिद्ध करेगा। ये उसका वचन है। एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी, वो ये सिद्ध करेगा क्योंकि उसके वचन ने ऐसा कहा है। और वहाँ केवल धर्मी होंगे, वो इसे सिद्ध भी करेगा। ये ठीक बात है, केवल वे ही जो उसके वचन के भाग रहे हैं, देखिए उनका भाग और उनकी स्थिति इस वचन में, उनके युग में, केवल वही होंगे जो वहाँ होंगे, क्योंकि यही जो ये हैं वो वचन है। और स्त्री क्या है? पुरुष की प्रतिरूप। और क्या है कलीसिया? क्या है? वचन का प्रतिरूप। देखिए, ठीक यही समझे, इसलिए ये वहाँ होगा बिल्कुल वैसा। केवल सच्चा विश्वासी उसके वचन में ये जानता है और इसका विश्वास कर सकता है, और परमेश्वर इसे सिद्ध करने में उनकी सहायता करता है। ये ठीक बात है, ये सच है। क्या आप अब विश्वास करते हैं इसका? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? यदि ऐसा है तो विश्वास से आगे बढ़ें और उसके वस्त्र को छू लें, क्योंकि वो यहाँ से होकर निकल रहा है। वो सिद्ध करेगा कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। इब्रानियों 13:8। देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ जगत के अंत तक, मती। और वो महायाजक है इब्रानियों के अनुसार, इब्रानियों की पुस्तक 14:15। वो महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं की भावनाओं से छुआ जा सकता है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? बढ़कर प्रभु को छू लें, वो सदा उपस्थित है। देखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, युगों में से होते हुए देखें, सारी बातें सिद्ध हैं, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो। अब यदि आप किसी कलीसिया से संबंधित हैं, जो ये विश्वास नहीं करता कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है, हर एक प्रकार से एक सा, तो उससे अलग हो जाओ, सिद्ध है। अब हम कहते हैं कि वो मृतकों में से जी उठा, मैंने नहीं कहा, यहाँ ये वो वचन कहता है, उन्होंने कहा वो मृतकों में से जी उठा। वो कहता है वो कल और सर्वदा एक सा है, आप ये विश्वास करते हैं? उसने इन बातों की प्रतिज्ञा की है कि ये अंत के दिन में घटित हो कि वही मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। अब स्मरण रखें, ये यीशु नहीं था जो वहाँ अब्राहम से बातें कर रहा था, ये सारा के विचारों को परख सकता था उसके पीछे। वो यीशु नहीं था, वो अब तक जन्मा नहीं था, परंतु ये एक मनुष्य था जो मानव देह में था, जिसे अब्राहम ने एलोहिम कहा, वो महान सामर्थी दर्शा रहा था। और यीशु ने कहा, जैसा कि ये सादोम के दिनों में था, अब ध्यान से देखो, सादोम के दिनों में ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा होगा, नहीं इससे अधिक नहीं, जैसे एक कलीसिया देखिए, नहीं इससे अधिक नहीं, दुल्हन बुलाई गई। उस दिन में मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। क्या कलीसिया का सिर से मिलन, जुड़ना, दुल्हन का विवाह, दूल्हे की पुकार इसमें होकर आएगी जब मनुष्य का पुत्र नीचे आएगा और मानव देह में आता है कि दोनों को एक साथ मिला दे। कलीसिया को वचन ही होना है, वो वचन है और दो एक साथ मिलते हैं और ये करने के लिए ये मनुष्य के पुत्र के प्रकटीकरण को प्रकट करेगा। ना कि एक पुरोहित, मैं नहीं जानता। मैं क्या आप देखते हैं कि मेरा क्या अर्थ है? देखिए, ये मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य की देह में नीचे आएगा हमारे बीच में और अपने वचन को इतना वास्तविक कर देगा कि ये कलीसिया और उसे मिला देगा और जैसे एक दुल्हन, और फिर वो विवाह के भोज के लिए घर जाएगी। आमीन। वो पहले ही जुड़ी हुई है। देखिए, हम विवाह के भोज में जाते हैं न कि विवाह में। अपनी देह को भर लें स्वयं से सामर्थी मनुष्यों के सामर्थी देह, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, परंतु उठा लिया जाना विवाह के भोज के लिए है। जब वचन यहाँ पर व्यक्ति से जुड़ता है और वे दो एक हो जाते हैं, और फिर तब ये क्या करता है? ये मनुष्य के पुत्र को फिर से प्रकट करता है, न कि कलीसिया के धर्म वैज्ञानिक मनुष्य का पुत्र। वचन और कलीसिया एक हो जाते हैं। मनुष्य के पुत्र ने जो कुछ किया वो वचन था, कलीसिया उसी चीज को करती है। उसने स्वयं को युगों में होते हुए कैसे सिद्ध किया? भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो वचन बोल सकते थे, उनके विचारों को जानते थे। इसी प्रकार से वो जाना गया था। कलीसिया युग में प्रतिज्ञा दी गई, उसमें होते हुए आया, रात या दिन में ही नहीं, परंतु सांझ के समय जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, ये फिर से आएगा, सांझ के समय में उजियाला होगा। समझे? वो क्या करता है? अपने वचन को सिद्ध करता है। अब पीछे देखिए, क्या वो एक कुंवारी के समान आया? क्या जैसा उन्होंने कहा आया कुंवारी के द्वारा? बल्कि क्या वो ठीक वैसे आया जैसे उसने कहा? आज ध्यान दें, उसने अपना वचन सिद्ध किया। चिंता नहीं कितने नास्तिक, अनिश्वरवादी, उपेक्षक, और वो जब भी आता है अपना वचन सिद्ध करता है। यहाँ हम इस युग में सारी कलीसियाओं से होते हुए आते हैं और आदि आदि दूर हो गए, जैसे वे मलाकी से हो गए थे मसीह के आगमन तक। सारे भविष्यवक्ता और बातें थम गई थी और वे उच्च पदवियों आदि में पड़ गए थे, परंतु ठीक ठीक देखें कि उसने किस प्रकार का चरित्र भेजा। ठीक एलिया, अनैतिक स्त्रियों से घृणा करने वाला, और बहुत सारा रंग पाउडर और श्रृंगार और वे चीजें वहाँ, और पुरोहितों ने इसे उधर उधर घात किया। जंगल से निकलकर आया, उन पर छीटा कशी नहीं की और कहा मसीहा मार्ग पर है, मैं जान जाऊंगा जब वो आता है, मैं उसका परिचय करवाऊंगा। आमीन। ये मत सोचो तुम इससे या उससे हो, ठीक वैसे ही जैसे एलिया ने किया। और अंत के दिनों में ये घटित होगा, प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के पहले आएगा, पहले कि प्रभु का बड़ा और भयानक दिन आए, मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वो बालकों के विश्वास को वापस पूर्वजों की ओर फेरेगा। और ध्यान दें, पितरों के विश्वास को बालकों की ओर, यहूदियों, समझे, उनकी वचन की प्रतिज्ञा, अन्य जाति और जहाँ से वे गिरे, इन दोनों को देखें, बिल्कुल ठीक सिद्ध। और यहाँ हम इसे देखते हैं, परमेश्वर अपने वचन को सिद्ध कर रहा है। आइए हम अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से वापस ले आया कि अपने वचन को सिद्ध करे, और वो आज जीवित है, आपके वचन को सिद्ध करता है। देखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि अंत में। अपने वचन को सिद्ध किया। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। यदि ये सदा के लिए नहीं था, या हो सकता है आप में से कुछ ठोकर खाते हैं, प्रभु मैं इसकी व्याख्या करने के लिए नहीं रुका, परंतु सदा वे जानते हैं ये एक समय अवधि है, और अब इस युग के बाद फिर और सदा नहीं होगा, ये अनंत होगा। इसलिए वो एक वही परमेश्वर था जो मूसा और भविष्यवक्ताओं में था। तब वो एक समय अवधि के बाद आता है और स्वयं को परमेश्वर भविष्यवक्ता प्रकट करे। तब हमारे पास एक समय अवधि थी और वो फिर आता है, एक सा है, कल, आज और सर्वदा। हम इस सुलेमान के लिए सोचते हैं, यहूदियों के उस महान सहस्र शताब्दी में जब कोई राष्ट्र उन्हें छूने का साहस नहीं करेगा, और वो परमेश्वर का महान वरदान भविष्यद्वक्ता में था, जब तक रानी के सारे भेद जो उसके हृदय में थे न बता दिए गए, कुछ भी न बचा था। उस महान युग ने दर्शाया और छाया बना कि एक महान युग आ रहा है, और अब पिता वो आप थे न कि सुलेमान, वो आप थे यीशु में, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर मसीह में था, संसार को अपने में मिला रहा था। वो तो सृष्टि का आरंभ था, उसकी देह छुड़ाई हुई सृष्टि थी, और अब युगों में से होते हुए कलीसिया ने अपना पहला प्रेम खो दिया, और अब इन अंत के दिनों में तूने अल्पसंख्यकों को बुलाने की प्रतिज्ञा दी है, वो छोटा झुंड अंत के दिनों में। पिता, हमारे हृदय उछल रहे हैं, और मेरे हृदय की धड़कन जब मैं इस विषय में सोचता हूँ, और ये जानता हूँ कि आपके वचन सच्चे हैं, उसमें कोई भी असफल नहीं हो सकता। आज लोग ये समझने पाए, और पापी आपको इस घड़ी में ढूंढे, इसके पहले की द्वार बंद हो और फिर समय ना हो। जैसा कि दुल्हन अपने कदम ताल से बाहर जाए, इससे और उससे होने पाए, वो वापस उसी कदम ताल पर आए, जैसा कि दर्शन ने कुछ सप्ताह पहले दिखाया। पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आशीष दें, इन बीमारों को चंगा करें। यहाँ पर कपड़े और रुमाल रखे हुए हैं, विभिन्न भागों से आए हैं, और अब वचन में ये कहा पौलुस की देह से रुमाल और कपड़े छुआ कर ले लिए जाते थे, और वे बीमारों के पास ले गए, और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। अब हम ये जानते हैं कि हम संत पौलुस नहीं हैं, परंतु हम जानते हैं ये संत पौलुस नहीं था, ये लोगों का विश्वास उसमें था कि आपका दास है। प्रभु, ये लोग सैकड़ों मील गाड़ी चलाकर नहीं आते यदि ये विश्वास नहीं करते, इनके विश्वास का इनाम दे। प्रभु, जैसा कि मैं रुमालों का अभिषेक नहीं, पौलुस ने उनका कभी अभिषेक नहीं किया, उसने अपने शरीर से छुआया, जैसा कि मैं इन रुमालों को पकड़े हुए हूँ, प्रभु ना कि ये मेरी देह, क्योंकि ये अच्छी नहीं है, परंतु ये आपका छुड़ाने का गुण है, इसलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके विश्वास का सम्मान करेंगे, होने पाए इनमें से प्रत्येक परमेश्वर के राज्य के लिए चंगा हो जाए। अब प्रभु, एक लंबा संदेश, कोई मतलब नहीं कि इस पर और मिनटें ली जाएं, परंतु ये दो या अधिक समय बीत गया है, अब बीमार चंगे होने पाए प्रभु, होने पाए लोग आपको देखें कि आप यहाँ पर हैं, कि ये मैंने अपने लिए नहीं कहा है, ये आप हैं प्रभु। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम में करता हूँ, आमीन। अब बस लगभग 10 मिनट, मैं नहीं जानता क्या तुमने यहाँ कोई दिए हैं, ये क्या था? बिली ने कहा उसने कुछ दिए थे, मैंने उसे इस प्रार्थना करने को कहा था, मैं कुछ मिनटों पहले वहाँ पीछे आया था, मुझे उससे पूछने का अवसर ना मिला, क्योंकि मैं भाई बेन से बातें कर रहा था, उनसे जो आसपास थे, मुझे उन्हें बताने का अवसर नहीं मिला। उसने मुझे अभी बताया, उसने प्रार्थना पत्र दिए हैं, प्रार्थना पत्र बी 100, 1 से 100 बी। अच्छा, चलिए मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना पत्र नंबर 1 बी, किसके पास बी है, क्या आप सकते हैं? यदि आप खड़े हो सकते हैं अपना हाथ उठाएं, यदि आप चल सकते हैं, कोई महिला पीछे में, ठीक है, बी नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 इधर से आएं। और मैं इन छोटे बच्चों से कहने जा रहा हूँ, यदि वे यहाँ से घूमकर प्रचार मंच के पीछे आ जाएं और अब यहाँ बैठ जाएं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें भेजें, आप इस गलियारे से होकर जाएं, आप लोग 1 से 5 सीधे इस रास्ते से होकर निकलें और सीधे आएं। वे जो वहाँ गलियारे में हैं, यदि वे पीछे से घूमकर अपनी सीटों पर जा सकते हैं। अब छोटे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, वे घूमकर पीछे मंच पर आ जाएं। मैं उन्हें चाहता हूँ कि यहाँ से होकर निकलें ये लोग, ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूँ। अब चलिए, अब देखते हैं। अच्छा, मैंने क्या बुलाया था, 1 से 5, क्या यही नहीं था? 1, 2, 3, 4, 5, 1। हर कोई जिसके पास वहाँ प्रार्थना पत्र है 1 से 5 अपने हाथ उठाए, देखिए, यदि वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, वहाँ 1, 2, 3, 4, एक कम है,
1, 2, 3, 4, 5 and B,
1, 2, 3, 4, 5 बी में, क्या आप 1, 2, 3, 4 हैं? 1, 2, 3, 4, पांचवा कहाँ है? बी 5, महिला उस रास्ते से जाएं, ठीक है श्रीमान, उधर से जाएं, यही उधर से जाएं और वापस आएं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, बी प्रार्थना कार्ड 6, 7, 8, 9, 10, देखिए हम ये करते हैं, तब आपको कोई विघ्न नहीं होगा, 6, 7, 8, 9, 10, अब मेरे पास है, मैं सोचता हूँ, श्रीमान क्या आपके पास कार्ड है? यहाँ खड़े हुए हैं, 7, ठीक है, सीधे वहाँ जाएं, आप उनके साथ जाएं, मेरे पास केवल 2 हैं, मैं सोचता हूँ वहाँ ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, प्रार्थना पत्र 6, 7, 8, 9, 10 मेरे पास केवल दो हैं यहाँ पर। श्रीमान एक आपके पास है, आप वही हैं, वहाँ वे हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 अब वे 1, 2, 3, 4, 5 होंगे, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4 ये ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 1, 2, 3 श्रीमान घूमकर उस रास्ते से घूमकर जाएं और पंक्ति में आए 25, 25 वहाँ उसकी सहायता करें, उसे किसी भी मार्ग से बाहर जाने दें जो चाहता है। भाई आप यहाँ हैं, ठीक यहाँ पर, उन्होंने यहाँ आपके लिए रास्ता खोला है, लोगों ने यहाँ आपके लिए रास्ता खोला है, कोई वहाँ उसकी सहायता करे यदि आप कर सकते हैं, उसे घूम कर ले लें और वहाँ पंक्ति में ले लें। मैं आपको बताता हूँ, उसे वहीं पर बिठा दें और जब उसका नंबर पुकारा जाए उसे वहाँ पर कर दें, समझे, जब वो अपने नंबर पर आता है उसे वहाँ पंक्ति में खड़ा कर दें, ठीक है। मैं सोचता हूँ ये सबके लिए है जो कर सकते हैं, आप जाएं। अब यहाँ पर कितने हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और आपको विश्वास है, आप पूरी रीति से निश्चित हैं कि परमेश्वर बीमारों को चंगा कर सकता है, अपने हाथ उठाएं, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आप में से कितने यहाँ हैं जो ये जानते हैं कि मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता, आपकी बीमारी के बारे में नहीं जानता? अब यहाँ पर लोग हैं, मेरे आराधनालय आप में से एक के लिए अपरिचित हूँ, मुश्किल से कोई है, मैं देख सकता हूँ इन सेवकों को छोड़, ठीक यहाँ नीचे मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ, मैं पहचानता हूँ, मैं यहाँ अधिक नहीं, देखिए, और ये बस लोग हैं जो हर कहीं से आए हैं। यहाँ अंदर कितने हैं, मैं आपको ये सिद्ध कर दूं, कितने यहाँ हैं जो जानते हैं कि मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता, अपने हाथ ऊपर उठाएं, इधर देखिए, समझे समझे, ये आपके हाथ परमेश्वर के सामने हैं, आप देखिए, मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता। अब मैं नहीं जानता मैं किसी को ले सकता हूँ इस प्रकार प्रार्थना पंक्ति में बुलाऊं जिसे मैं जानता हूँ, परंतु मैं नहीं जान पाऊंगा कि वो यहाँ किस लिए हैं। देखिए, मैं नहीं जान पाऊंगा कि वे यहाँ किस लिए थे। अब क्या करने का यत्न कर रहा हूँ कि आपको ये दिखा दूं, अब ध्यान दें, वे काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो इस वचन को सिद्ध करेगा? ठीक है, क्या उसने कहा वो स्वयं को मनुष्य के पुत्र के समान कलीसिया युग के अंत में प्रकट करेगा? कितने और संसार सदोम और गमोरा के रूप में प्रकट होगा, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? अब बिली तुम क्यों नहीं ठीक इधर से इन्हें आने देते हो? हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, युग के अंत में वो स्वयं को प्रकट करेगा। अब देखिए, क्या ये आप अनुभव करते हैं? तो फिर यहाँ पूरी रीति से असंभव है। अब यहाँ लोग इस पंक्ति में खड़े हैं जो कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, वे लोग जो वहाँ बैठे हैं जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, परंतु स्मरण रखें इब्रानियों 4:15 मैं विश्वास करता हूँ यही है जिसने कहा कि अब वो महायाजक है जो हमारे निर्बलता की भावनाओं से छुआ जा सकता है, क्या ये ठीक बात है? अब यदि वो महायाजक है तो वो इब्रानियों 13:8 है, तब कल आज और सर्वदा एक सा है, ठीक बात है। अब वो स्वयं को कैसे प्रकट करेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सदा अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा होकर बोलता है, वो सदा न्याय से पहले एक संदेश भेजता है, सारी बातें, वो कभी अपनी विधि नहीं बदलता। उसने अदन वाटिका में निर्णय ले लिया कि मनुष्य को कैसे बचाएगा, एक निर्दोष बहाए हुए लहू के द्वारा, उसने इसे कभी नहीं बदला। हम इसे बदलने का यत्न करते हैं शिक्षा के द्वारा, बाबुल की मीनार से होते हुए बड़े नगरों के द्वारा और इस प्रकार की हर चीज, हम इसे बदलने का यत्न करते हैं परंतु ये काम नहीं करता। हम इसे बदलने का यत्न करते हैं संसार को उसकी शिक्षा के द्वारा, हम बदलने का यत्न करते हैं नामधारी लोगों के द्वारा, इसने कभी काम नहीं किया। केवल एक स्थान लहू के नीचे आराधना से मनुष्य मिल सकता है, आपके नामधारी आपको अलग कर देंगे परंतु लहू के नीचे आप बराबर हैं, वो कभी नहीं बदलता। अब यदि वो ना बदलने वाला महायाजक है और कल आज और सर्वदा एक सा है, तो फिर उसे अपना वचन बनाए रखना है, इसलिए नहीं कि हमने कहा उसने किया, उसने कहा वो करेगा, समझे। अब यदि वो ये करेगा, अब जरा एक मिनट रुकें, सोचें। अब आप में से कितने लोग इस प्रार्थना पंक्ति में इस बात को जानते हैं, मैं आपके विषय में कुछ नहीं जानता, आपकी बीमारी के विषय में, तो फिर अपने हाथ ऊपर उठाएं, आप जानते हैं मैं क्या। कितने प्रार्थना पंक्ति में ये जानते हैं कि मैं आपको जानता तक नहीं, अपने हाथों को उठाएं। इस भक्त मंडली में देखें, आप जो बाहर हैं, आपको यहाँ नहीं होना है, आप बस उसका वस्त्र छू लें, आप बस बोल कर कहें, प्रभु यीशु मैं आपका विश्वास करता हूँ, अब आप कहते हैं मैं इसका विश्वास करता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ, आप भाई ब्रैनम पर प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसलिए नहीं क्योंकि ये भाई ब्रैनम है, वो एक साधारण मनुष्य है, और संभवतः यदि आज प्रातः उठा लिया जाना होता है, आप उठा लिए जाने के विषय में सोचते हैं, यदि उठा लिया जाना आज प्रातः होता है, मैं ये नम्रता में होते हुए कहता हूँ, कोई संदेह नहीं कि आदि मंडली, यदि हम डिग्रियों के अनुसार गए उसके अनुसार जहाँ हमें होना चाहिए, आप में से आधे मेरे से पहले चले जाएंगे, ये ठीक बात है। मैं नहीं, जो उत्तरदायित्व मुझे मिला है उसे देखें और मैं कितने ढीले से ले रहा हूँ। मैं मसीह का लाभहीन दास हूँ, जानते हुए कि जो मैं उसके विषय में जानता हूँ और उस तरह से जीता हूँ जैसे मैं करता हूँ, अनैतिक नहीं है, अशुद्ध नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परमेश्वर जानता है कि ये सच है, समझे। मैं सही जीने का यत्न करता हूँ, परंतु मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ, मैं उन बातों को नहीं ले सकता कि पार हो जाऊं। संभव है ये कोई और है, हो सकता है उच्च शिक्षित या कुछ वे लोगों को ये समझा सके, परंतु तब किसी को सोचना है, ये सब लोग नहीं हैं जो इसे पाने जा रहे हैं, जो भी हो, समझे। देखिए, वो जानता है कि वो क्या करने जा रहा है, इसलिए मैं बस अपने आप को उसको समर्पित करता हूँ और कहता हूँ, प्रभु मैं आपके हाथों में हूँ, मेरे साथ वैसा ही करें जो आप उपयुक्त देखें। अब यदि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है, अब मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस महिला को जानता हूं। मैं स्मरण नहीं कर सकता कि ये कौन है, परंतु मैं इसे जानता हूं, जो भी है मैं इसे जानता हूं। परंतु मैंने इसकी शक्ल देखी है, परंतु मैं इस समय नहीं जानता कि ये कौन है, परंतु जो भी है मैं इसे जानता हूं। क्या आप मुझे नहीं जानती? मैंने सोचा मैं उसके चेहरे को देख रहा हूँ, मैंने सोचा मैं उसे जानता हूँ, परंतु मैं उसे याद नहीं कर सक रहा हूँ कि ये कौन है। परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि क्या आपका पति नहीं, क्या आप वही महिला नहीं जो वहाँ कार्य करती हैं, इसका पति 7-7-7 में कार्य करता है या 7-11 या कुछ ऐसा ही वहाँ न्यू एल्बनी में, श्रीमती एगन, ये ठीक बात है। अब आप यहाँ कलीसिया में आती थी, रॉय, क्या वो जिसके यहाँ हम एक दिन गए थे, क्या वो जो ऊपर पहाड़ पर, क्या कहा, उसकी बहन, वो था वो, कैसे? देखिए, मुझे याद है रॉय और मैं साथ साथ गाड़ी चलाते थे और उसने इस नाम का उल्लेख किया और प्रभु ने मुझे वहाँ भेजा, उस महिला को ठीक वहीं पर चंगा कर दिया। जी हाँ श्रीमान, और बस मुझे याद आया। अब परंतु जानने को कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, मुझे कोई अनुमान नहीं, आप ये जानते हैं। परंतु यदि प्रभु यीशु उसे कुछ बता दे जो उसने किया है, या यदि हो सकता है उसकी कोई पैसों की परेशानी हो सकता है वो और उसका पति की कोई समस्या हो सकता है उसके बालक, हो सकता है उसका कोई बालक, यदि उसके पास बालक हो, मैं नहीं जानता, परंतु यदि उसके पास हो सकता है उसके कुछ बालक बाहर भाग गए, हो सकता है वो ये जानने के लिए यहाँ पर खड़ी है, मैं नहीं जानता, मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु वो जानता है, समझे। इसलिए आप देखते हैं, क्या आप देखते हैं, सुनिए, अब इसे ध्यान से समझें, मैंने ये बात कभी भक्त मंडली में नहीं बताई कहीं भी, परंतु अब आप इसे कहने को मुझे अगुवाई हो रही है। वचन क्या है? प्रकट किया हुआ विचार। अब मैं उसके विचार को कैसे प्रकट कर सकता हूँ, या मैं उसे कैसे प्रकट कर सकता हूँ कि उसका क्या विचार है? इसे तो कोई विचार होना ही होगा जो प्रस्तुत किया जाए, और वो ये नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उसका विचार प्रकट करना होगा। और यदि ये सही है, यदि ये परमेश्वर का विचार है, ये सही होगा। यदि ये परमेश्वर का विचार नहीं है, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। वो इसे जान जाएगी, आप इसे जान जाएंगे, सब इसे जान जाएंगे। देखिए, इसका कोई और तरीका नहीं है, ये या तो परमेश्वर से होना चाहिए या परमेश्वर से नहीं होना चाहिए। उसका अनुग्रह बहुत है। अब आप विश्वास करते हैं, अब हर कोई, और कितने विश्वास करने जा रहे हैं? अच्छा, हो सकता है आपने इससे पहले कभी सभा न देखी हो, परंतु आप विश्वास करने जा रहे हैं यदि परमेश्वर ये करता है। और तब आप जो वहाँ बाहर हैं, आप जो उस प्रार्थना पंक्ति में नहीं होंगे, आप देखिए, आप भी प्रार्थना करें, या दोनों में से जो हो, यदि आप प्रार्थना पंक्ति में आ रहे हैं, मैं चिंता नहीं करता आप कौन है, आप बस प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, अब मैंने बहुत समय ले लिया है, परंतु ये आपकी सेवा है प्रभु, और मैंने मानवता में होते हुए सब किया है जो मैं कर सकता हूँ, परंतु आप परमेश्वर हैं और बाकी आपके हाथों में है पिता। ये प्रकट हो जाए कि आप परमेश्वर हैं और आपका वचन सच्चा है। अपने वचन को सिद्ध करें प्रभु, इस अंत के दिन में जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। उसने कैसे अपने आप को प्रकट किया? वो वचन था। वचन क्या है? हृदय के विचारों और भावनाओं को जांचना। उसने उनके विचार को जान लिया। पतरस, फिलिपुस, नतेल,
वो कुएं वाली स्त्री और बाकी वहाँ की सब वे आएंगे। जानते थे कि छोटी लड़की सोई हुई थी, ना कि मरी हुई थी। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज हमारे नम्र मंदिरों को, इन पृथ्वी के निवासों को, कि आप अपने आप को प्रकट करेंगे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब चंगा करने को मैं नहीं कर सकता, आप ये जानते हैं। वरदान क्या है भाई ब्रनम? कुछ जो आप लेते हैं, नहीं, ये कुछ जो आप जानते हैं। अपने आप को मार्ग से कैसे हटाएं? समझे? जब तक आप वहाँ हैं, ये कभी कार्य नहीं करेगा। विलियम ब्रनम सबसे बड़ा शत्रु जो मेरा है, समझे? परंतु जब मैं उसे मार्ग से हटा देता हूँ, देखिए, तब यीशु मसीह देह का उपयोग कर सकता है, समझे? अब देखिए, मैं इस महिला के पास आता हूँ। अब क्या? अब कहते हैं, यदि ये बीमार थी। यहाँ एक महिला है यहाँ, जिसने अपना हाथ कुर्सी पे रख रखा है। अब यदि यीशु यहाँ था और नीचे आकर अपना हाथ उस महिला पर रखता, तो हाथ ठीक हो जाता। इस विषय में कोई संदेह नहीं। परंतु आप देखिए, हम मनुष्य जाति गंदे हाथों के साथ, उसके हाथ पवित्र हैं। परमेश्वर ने उसे प्रमाणित किया, वो वचन था। आप ये विश्वास करते हैं? निश्चय ही, उसमें कोई संदेह नहीं था। वो अपना हाथ उस पर रखेगा और कहता, पुत्री चंगी हो जा, और वो चंगी हो जाती। पर फिर उसने हमें उसी चीज का अधिकार दिया। मैं सोचता हूँ उसने ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया। क्या हो यदि वो मुझे एक दर्शन दे और इस महिला को कुछ करने को बताए कि ठीक है, तो फिर मैं विश्वास करता हूँ। यदि मैं अपना हाथ महिला पर रखूँ तो वो चंगी हो जाएगी। क्या आप ये विश्वास करते हैं? परंतु क्या हो यदि वो दर्शन ना दे? दर्शन क्या करेगा? केवल मुझे विश्वास देगा, मेरे विश्वास का संचार करेगा, परमेश्वर की अनदेखी सामर्थ का, समझे? अब यदि आप में से प्रत्येक इस मिनट मर जाए, आप कभी भी अपना ना देखेंगे। आप अपनी देह छोड़ते हैं, आपकी सारी मस्तिष्क की चेतनाएं आप जो हैं छोड़ देंगे, परंतु आप इसे जाते हुए कभी नहीं देखेंगे, समझे? ये एक होगा, वो सामर्थ जो मेरे हाथों को हिलाती है, ये एक सामर्थ है, क्या नहीं है? वो सामर्थ जो मुझे विचार देती है, वो सामर्थ जो मुझसे प्रचार करवाती है, वो सामर्थ जो जीवित रखती है, कार्य करती है, वही सामर्थ जो इस देह को प्रेरित करती है, इसे छोड़ देगी, और आप सामर्थ को छोड़ते हुए नहीं देखेंगे। ये अदृश्य सामर्थ है, ऐसे ही विश्वास है, इसमें ना चूकें, विश्वास। और यीशु ने कहा, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। अब देखिए, यदि मैं गया और दर्शन मिला और इस पे हाथ रखूं, मैं विश्वास करता हूँ वो चंगी होने जा रही है, क्योंकि मैंने दर्शन देखा। मेरा विश्वास इस दर्शन में है। परंतु वचन के विषय में क्या है? उसी विश्वास के साथ उस पर हाथ रखूं? दर्शन मेरे और आपके विश्वास को प्रेरित करता है। उसी विश्वास के साथ बिना दर्शन के ये वैसे ही कार्य करेगा। कुछ लोगों को बड़ा विश्वास दिया गया है, कुछ को उस प्रकार का विश्वास नहीं है। उनको दर्शन दिया गया है कि उन्हें विश्वास दे, समझे? अब देखिए, ये अब भी वही गंदे हाथ हैं, वही व्यक्ति होने के नाते, परंतु केवल उन पर हाथ रख रहा हूँ। अब पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति की पुष्टि करे, अपने वचन की पुष्टि करे कि उसने प्रतिज्ञा की है। अब मैं भूल गया कि आपका क्या नाम था। अब आपका क्या नाम है? एगन। अच्छा, वो मुझे बता सकता था यदि वो चाहता था देखने के लिए, परंतु बस कह रहा हूँ कि मैं आपको जानता हूँ। अब आप ठीक यहाँ पर आते हैं, जरा एक मिनट, थोड़ा सा पास, वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। अब देखिए, यही है। अब श्रीमती एगन, यदि मैं मसीह का दास हूँ और मैंने वचन प्रचार किया है जो कि मैं विश्वास करता हूँ कि सत्य है, क्या आप इसका विश्वास करती हैं? आप इसका विश्वास करती हैं? अब यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, मैं आपको नहीं दे सकूंगा, क्योंकि देने के लिए मेरे पास नहीं है। जब तक कि ये थोड़ा सा पैसा या कुछ ना हो, या मैं जाकर आपके पति से बात कर सकूं, या बच्चों से, या किसी प्रियजन, या जो कुछ मैं कर सकूं। परंतु यदि आपको चंगाई की आवश्यकता हो, मैं आपको नहीं दे सकता, वो तो पहले ही खरीदी जा चुकी है। परंतु वरदान से होकर मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूँ, यदि आपको विश्वास है कि ये पहले ही खरीदा जा चुका है, क्योंकि वो जिसने ये खरीदा है, केवल वही है जिसमें आप विश्वास कर सकें, परमेश्वर का पुत्र। खरीदने वाला यहाँ खड़ा है, समझे? क्या ये ठीक बात है? खरीदने वाला यहाँ पर है। अब आप मुझे एक भाई, एक सेवक के समान जानती हैं, और मैं आपको एक बहन के समान जानता हूँ। हम उसे एक परमेश्वर के समान जानते हैं। अब यदि वो ना दिखने वाला व्यक्ति एक वरदान के द्वारा, जिससे मैं अपने आप को बीच में से हटा लेता हूँ, मुझे बता सकता है, आपको मेरे द्वारा बता सकता है, मेरे होंठों से, देखिए, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे नहीं देखता, वो केवल मेरी आवाज सुनता है, यीशु के लहू से होकर। देखिए, वो मुझे नहीं देखता, वो मेरी आवाज सुनता है,
और वो लहू वहाँ प्रतिनिधित्व करता है जो मैं मानता हूँ, समझे। तब वो मेरी आवाज़ सुनता है, परंतु वो केवल लहू देखता है, इसलिए वो मुझे नहीं देखता, इसलिए मैं गंदा नहीं हो सकता जब मैं लहू के नीचे हूँ। लहू शुद्ध करता है। देखिए, वो मेरे और परमेश्वर के बीच एक रक्षक बंपर है, और प्रतिज्ञा क्या हुआ, पिता से कुछ भी मांगोगे मैं वो करूँगा। क्या आप इसका सच होने का विश्वास करती हैं? अब यदि हर कोई ऐसा लगता है, क्या आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ लाल रंग का उजियाला चारों ओर घूम रहा है। अब ये नहीं छिपा सकती यदि इसे ये करना है। नहीं नहीं, आप यहाँ किसी चीज के परिणाम स्वरूप हैं जो आपको हुआ है। आपको नमूनिया हुआ था और आप अस्पताल में थी, आपको ऑक्सीजन लगी हुई थी, आप उसी के परिणाम स्वरूप पीड़ित हैं। आप चंगी होने जा रही हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहा है। मैं ये देखता हूँ, जाइए, विश्वास करती रहिए। बहनगन, मैं आपके ऊपर अपने हाथ रखने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, जाइए अब और आनंदित रहें। जो कुछ उसने कहा उस पर संदेह ना करें। बहन, आप कैसी हैं? मैं विश्वास नहीं करता कि मैं आपको जानता हूँ, हम लोग अपरिचित हैं। अब यहाँ एक महिला है जिसे मैं नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मेरे पास कोई विधि नहीं है कि मैं आपको जानूं। परंतु क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर ये मुझ पर प्रकट कर सकता है अपने विश्वास के द्वारा? क्योंकि देखिए, क्योंकि उसने इसकी प्रतिज्ञा दी है। आप विश्वास करती हैं कि वो मुझे आपके विषय में कुछ बता सकता है, और आप इसे स्वीकार करेंगी? क्या ये ठीक है, ये जानते हुए कि ये मैं नहीं हूँ आपका भाई, ये वही होगा आपका बचाने वाला? क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? आपका एक ऑपरेशन रुका हुआ है, आपको बताया गया है कि आपका ऑपरेशन होना ही है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो मुझे बता सकता है कि ये किस चीज का ऑपरेशन है? ये पेट में है और अतड़ियों में, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप इससे बचना चाहते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? यहाँ इस आत्मा के साथ मसीह का आत्मा हमारे चारों ओर है, मुझ पर खड़ा है। आप जानते हैं, आपको कुछ बताना था क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। क्या आप विश्वास करते हैं हाथों के रखने के द्वारा ये विश्वास देगा जिसमें मैं विश्वास करता हूँ? आपके विश्वास के साथ और हमारे परमेश्वर पिता के सामने आप चंगे हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। जब आपने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। हमारी बहन परमेश्वर की महिमा के लिए चंगी हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। अब आगे बढ़िए, ना करें, इस विषय में भूल जाएं। देखिए, अपने पूरे हृदय के साथ विश्वास करती जाएं। आप कैसी हैं? मैं बस ये आपकी आत्मा से संपर्क करने के लिए करता हूँ महिला, जैसे यीशु ने कुएं पे किया, कहा मुझे पानी पिला। अब मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास नहीं करता कि मैंने कभी आपको कभी देखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए अपरिचित हैं। क्या ये ठीक बात है? यदि ये ठीक है तो आप अपना हाथ उठाएं ताकि मंडली देख सके। मैं महिला को नहीं जानता।
This is genuine healing.
ये वास्तविक चंगाई है, ये सच्चा विश्वास है, सच्चा वचन, परमेश्वर का बिना मिलावट का विश्वास, प्रकट और सिद्ध हुआ कि वो मरा हुआ नहीं है, वो सदा काल के लिए जीवित है। और वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा, और ये विश्वासी बीमारों पर हाथ रखेगा और वे चंगे हो जाएंगे। ओह, आप कैसे इसका संदेह कर सकते हैं, समझे। अब वो जानता है कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, मैं नहीं जानता, ये उस पर निर्भर करता है। परंतु अब यदि ये महिला अपरिचित होने के नाते, मैं इसे नहीं जानता, अपने जीवन में इसे कभी नहीं देखा, ये एक युवा महिला है, मेरे से बहुत ही छोटी, परंतु मैंने इसे कभी नहीं देखा, और ये यहाँ किसी उद्देश्य के लिए है। क्या आप विश्वास करते हैं कि ये बातें जो बाइबल से मैंने सिखाई महिला सत्य हैं? आप विश्वास करती हैं कि वे बातें सत्य हैं? और क्या आप इन्हें स्वीकार करती हैं इसलिए नहीं कि मैंने कही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है? क्या आप ये विश्वास करती हैं कि हम अंत के दिनों में हैं, जब मनुष्य के पुत्र को प्रकट होना था, कि वो सारा वचन जो लूथर वेस्ली बैप्टिस्ट के द्वारा एकत्र होगा, और वो सारा और पेंटिकॉस्टल सब प्रकाशित वाक्य तक एकत्र हुआ, ये सारा जो भी रहा, सातवें दूत को छह मोहरों के भेद खोलने थे, ये सारी मनुष्य के पुत्र में एकत्र हुई, उसका समय पूरा होने पर आ गया, उसका वचन का पूरा होना उसकी देह की परिपूर्णता को प्रकट करे। यही वचन है, तब ये बोला हुआ वचन, वचन के द्वारा प्रकट हुआ, वचन प्रकट करता है। अब यदि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी समस्या क्या है, भाई, उसने आपको रचा है, वो आपके विषय में सब जानता है, यदि वो प्रकट कर सकता है आप स्वस्थ व्यक्ति लगते हैं, और यदि वो प्रकट कर सकता है मुझ पर, आप जान जाएंगी कि ये सत्य है या नहीं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगी? अब सीधे मेरी ओर देखें। निसंदेह आपने चश्मा लगा रखा है, आपको ये पहनना ही है। ये वो नहीं है जिसके लिए आप यहाँ हैं। मैं देख सकता हूँ ये पीछे चला गया। देखिए, अब आप यहाँ लहू के जमने के कारण हैं। समझे? क्या विश्वास करती हैं वो मुझे बता सकता है कि ये कहाँ पर है? आपके पैरों में। क्या विश्वास करती हैं कि ये परमेश्वर कर रहा है? क्या विश्वास करती हैं परमेश्वर मुझे आपके विषय में और बता सकता है? हाँ, ये ठीक बात है। आप एक अपरिचित हैं और मैं बस आपसे एक मिनट बात करता हूँ। क्या विश्वास करती हैं कि वो कर सकता है? क्या आप विश्वास करती हैं वो मुझे बता सकता है कि आप कहाँ से हैं? आप गैरी इंडियाना से हैं। क्या विश्वास करती हैं वो मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? श्रीमती ऑगडन। ये ठीक बात है। अब आप घर वापस जाएं और चंगी हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में। समझे? आप कैसी हैं? हम भी एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं। मैं आपको नहीं जानता, देखिए, परंतु आप विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु मुझ पर आपकी परेशानी को प्रकट कर सकता है। आप ये जानती हैं। धन्यवाद बहन, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आप ये जानती ही हैं, तो फिर वो हर्निया ठीक हो जाएगा। और आपको आपके एक और गांठ है। ये ठीक बात है कि नहीं? आप मुझसे चाहती हैं कि आपको बताऊं ये किस ओर है। ये आपकी दहनी ओर है। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब आप अपने मार्ग पर जाएं और इसका विश्वास करें और आप चंगी हो जाएंगी। आप विश्वास करती हैं? निश्चय ही ये सत्य है। क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र युगों से होता हुआ नीचे उतर आया है जैसे उसने प्रतिज्ञा की है? परंतु क्या आप विश्वास करती हैं कि संसार सादोम की दशा में है, आग से नष्ट होने के लिए तैयार जैसे सादोम था? सादोमी अन्य जाति थे, याद है? परंतु वहाँ सादोम में कुछ धर्मी लोग थे। परमेश्वर ने एक संदेशवाहक भेजा कि उन्हें बाहर बुला ले। उनमें से कुछ आ गए, कुछ नहीं आए, अधिकांश वहीं रुक गए। परंतु वहाँ एक झुंड जो वहाँ पहाड़ पर बैठा था, अब्राहम, और एक संदेशवाहक उसके पास आया कि उसे दिखाए कि क्या घटित होने जा रहा है। वो उनका भाग होने वाला नहीं था, जो भी हो। परंतु तब संसार आज जो उसी दशा में है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र, दाऊद का पुत्र, और वो अपने आप को प्रकट करने आया। मैंने अभी ध्यान दिया, इस महिला को कुछ हुआ है। ये यहाँ किसी बड़े कारण से है, ये यहाँ बीमारी के कारण से नहीं है। आप देखिए, वो क्या चाहती है मुझसे? पूछे, हाथ रखूं, उस पर वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएगी। समझे? क्या ये ठीक बात नहीं? यदि ये ठीक है तो अपना हाथ ऊपर करें। समझे? देखिए, उसके पास एक महान चीज है। प्रिय स्वर्गीय पिता, अपने इस बालक को उसके हृदय की इच्छा को दें। होने पाए ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, इस प्रकार वो इसे ग्रहण करेगी। आमीन। आप इसे पाएंगी बहन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, उसकी स्तुति और महिमा करें। आप विश्वास करते हैं? आपके विश्वास में क्या है? आप जो वहाँ हैं, क्या आप भी विश्वास करते हैं? यदि तू विश्वास कर सके, सब बातें संभव हैं। देखिए, इस विषय में निष्कपट कि आप क्या विश्वास करते हैं। जमा हुआ लहू हट सकता है। वो हरी सी कमीज पहने दिखाई पड़ रही है। अपना हाथ उठाएं यदि आप विश्वास करते हैं कि ये चला जाएगा। ये चला जाएगा। मैंने इस मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पूरी तरह से ये मेरे लिए अपरिचित है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। बाकी भक्त मंडली, क्या आप ये विश्वास करते हैं? अब क्या आप ये नहीं देखते? ये उसे ही होना है। परमेश्वर के लिए कैंसर को चंगा करना बुरी बात नहीं है। वो इसे चंगा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? क्या विश्वास करते हैं वो करेगा? ठीक है, तो फिर जाइए और ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। बस अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। प्रिय, आप कैसे हैं? आप जानते हैं यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि आपका लहू ठीक हो जाए। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रिय परमेश्वर इस बालक को आशीषित करें और उन्हें पाए कलवरी से इसको लहू मिले। प्रभु सारी चीनी हटा दें और ये चंगी होने पाए। यीशु के नाम में परमेश्वर आपको आशीष दे। आप कैसे हैं? क्या विश्वास करते हैं कि वो पीठ को चंगा कर सकता है और उसे अच्छा बना सकता है? ठीक है, जाएं इसका विश्वास करें, भरोसा रखें। चलिए, आप पर हाथों को रखते हैं जैसा आपने निवेदन किया है। भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप विश्वास करते हैं? उसने भोजन खाने के लिए बनाया है, पेट को बनाया है कि उसे हजम करे, और जब पेट में कुछ गड़बड़ होती है तो इसे चंगा करने वाला है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? ठीक है, बस आपको यही जानना है। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आपके पास वही चीज है, बस बढ़ते रहें। अपने पूरे हृदय से भी विश्वास करें। ये ठीक है, महिला को लाएं। आप कैसी हैं, प्यारी छोटी लड़की? स्त्री रोग के लिए बहुत ही छोटी है। क्या आप विश्वास करती हैं कि यीशु आपको इसे चंगा कर देगा? प्रिय परमेश्वर, ये छोटी लड़की, मैं इस शत्रु को यीशु मसीह के आपकी उपस्थिति में श्रापित करता हूँ। ये इसे छोड़ जाए, ये चंगी होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय, आपको आशीष मिले, आप चंगी हो जाएंगी। क्या आप विश्वास करते हैं? अब एक काली छाया ऊपर उठी, मृत्यु, एक कैंसर नहीं। परमेश्वर कैंसर को चंगा कर सकता है और इसे सही करता है। क्या आप सारे हृदय से इसका विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करती हैं कि वो आपको इससे चंगा करने जा रहा है? यीशु मसीह के नाम में मैं इस श्राप को श्रापित करता हूँ। उन आर पार मछलियों की अधीनता में होने पाए मसीह का क्रूस, इसे हटा दे, इसे जाने दे यीशु के नाम में। संदेह ना करें, अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हुए जाएं। यदि आप विश्वास कर सकें, सब बातें संभव हैं। आप कैसे हैं? निसंदेह आपका गठिया रोग चला जाएगा और आप अच्छे हो जाएंगे यदि आप विश्वास करें। आप विश्वास करते हैं कि आप ऐसे हो जाएंगे कि आप फिर से चारों ओर घूम फिर सकते हैं और आप ठीक हो जाएंगे। प्रभु इस प्रिय बहन को आशीषित करें और इसे यीशु मसीह के नाम में चंगा करें। अपने हृदय में विश्वास करते हुए जाएं। क्या विश्वास करते हैं कि ये आपके साथ भी वैसा ही हो सकता है? ठीक, मैं विश्वास करता हूँ ये हो गया, आप होने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास करें कि आप चंगे हो गए हैं, ठीक इसी समय मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके पास से चला गया। मैं अपने में यीशु मसीह के नाम में अपने भाई को भला चंगा जाने दें, परमेश्वर की महिमा के लिए, आमीन। आखिरकार हो गया। आप जो वहाँ बैठे हैं, रो रहे हैं, क्या विश्वास करते हैं कि वो सूजन रोग आपको छोड़ने जा रहा है? वो पिछले आधे घंटे से यहाँ रुका हुआ है, ऐसा लगता है ठीक मेरे सामने, वो ठीक इस व्यक्ति के बराबर में खड़ा हुआ है। आप विश्वास कर रहे हैं क्या? आप नहीं, आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और आप वापस टेक्सास जा सकते हैं और चंगे रहें। मैंने इस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या विश्वास करते हैं कि आपकी पीठ ठीक होने जा रही है और आप चंगे होने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु इस छोटी चीज को छू लें और इसे चंगा करें यीशु के नाम में, आमीन। अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। अब वो आत्मा पास आ गया है, ये सारे भवन पर है, ये बताना कठिन है ये कहाँ से आ सकता है। अधीर, आपको मैं कुछ दिखा दूं। यहाँ कितने लोग अधीर हैं? अपने हाथों को उठाएं। देखिए, ये कहना कठिन है कि कौन क्या है, परंतु परमेश्वर सबके विषय में जानता है। आपकी सारी इच्छाएं, अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं कि इस पर विजय पालें। आपने जीवन में बहुत सी चीजें छोड़ने की कोशिश की है और आप परमेश्वर की सेवा उस सब से करना चाहते हैं जो आप में है। ऐसा लगता है ये सदा कुछ होता है जो आपको रोकता है। क्या विश्वास करते हैं कि ये अभी घटित होने जा रहा है? इसी सुबह आप इन चीजों से स्वतंत्र होने जा रहे हैं, क्या आप इसका विश्वास करेंगे? हमारे स्वर्गीय पिता, ताकि ये दूसरे इसे देख सकें कि आप ही मसीह हैं, परमेश्वर का पुत्र, इस प्रिय स्त्री को जो यहाँ खड़ी है चंगा कर दें पिता, इसे शांत कर दें। हम सब जानते हैं कि वो किस चीज से पीड़ित है प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे चंगा कर देंगे। जैसा कि मैं अपने हाथ उस पर रखता हूँ सारे विश्वास के साथ, मेरे ऊपर भी अभी आक्रमण हुआ है, थका हुआ, शैतान ने बहुत काम किया, तंत्रिका खराब हो रही है, शैतान तू इस महिला को छोड़ दे। मैं अपने हाथ सारे विश्वास के साथ रखता हूँ जो मेरे पास है, यीशु के नाम में इसे छोड़ दे। आप उसमें विश्वास करते हुए जाएं, यही जो आप मुझसे करवाना चाहते थे। मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे लिए अपरिचित हैं। वो हरनिया, यदि आप विश्वास करेंगे आप अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपको गठिया है, यदि आप विश्वास करते हैं आप अच्छे हो जाएंगे, आपकी पीठ की परेशानी आपको छोड़ देगी। विश्वास करते जाएं। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? यहाँ जो कितने, क्या वे सारे पंक्ति में हैं? क्या और कोई यहाँ पंक्ति में है? आप सारे यहाँ से होकर निकलें ताकि मैं बीमार पर हाथ रख सकूं। आइए अपने सिरों को झुकाएं। एक मिनट, ये एक बजे के बाद। प्रिय परमेश्वर, मैं अपने हाथ बहन पर रखता हूँ जबकि पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर है। यीशु के नाम में उसे चंगा कर दें। प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं अपने हाथ अपने भाई पर रखता हूँ। विश्वास। ओ, अपने भाई के लिए प्रार्थना नहीं की। भाई, आप जानते हैं उसने क्या किया? वो पुराना हिरन का शिकारी है। उसने कहा उसके पास बंदूक थी, वो सदा उससे हिरन का शिकार करता है। कहा अब वो शिकार पर जाने के लिए अधिक भूड़ा है, वो बंदूक लाना चाहता था कि मुझे दे। आमीन। आइए कहें प्रभु की महिमा हो। मैं उससे प्रेम करता हूँ। अपना छोटा प्रश्न न भूलें, इसे रखें। यदि आप आज इसे नहीं लेते हैं तो इसे बुधवार या शनिवार को लाएं, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और खरीदा। क्या आप सारे प्रार्थना पंक्ति में थे? प्रार्थना पंक्ति, उद्धार, कलवरी के वृक्ष पर। सोचिए वो अब हमारे लिए कितना मीठा है। जरा सोचें, उसने अपना वचन सिद्ध किया, समझे? अब देखिए, यदि मैं चंगा कर सकता होता तो फिर ये अलग बात होती। देखिए, परंतु वो ये इसे पहले ही कर चुका है, समझे? इसलिए वहाँ अपनी उपस्थिति प्रमाणित कर रहा है, मैं जो मर गया था और अब सदा के लिए जीवित हूँ। उसके समान कभी कोई व्यक्ति नहीं हुआ, वो अपने लिए एक मनुष्य था, वो परमेश्वर था, समझे? उसके समान कभी भी कोई मनुष्य नहीं हुआ जो ऐसा जिया जैसा वो जिया। कभी कोई मनुष्य ऐसा नहीं जन्मा जैसे वो जन्मा था। कभी कोई मनुष्य नहीं हुआ जो कर सके जो उसने जैसा उसने किया। कभी कोई मनुष्य नहीं हुआ जो मरा जैसे वो मरा। कभी कोई मनुष्य मरुभूमि से नहीं जी उठा जैसे वो हुआ। ओ, आप कहते हैं, एक मिनट रुको भाई ब्रणम, दूसरे मरुभूमि में से जी उठे। जी हाँ, परंतु वे फिर मर गए, परंतु वो सदा के लिए जीवित है, समझे? कभी भी कोई मनुष्य उसके समान नहीं जिया जैसे वो जिया, वो मरुओं में से जी उठा सदा के लिए। आइए अब हम सब उसके लिए गाएं। अब ओ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीदा कलवरी के वृक्ष पर। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु, मैं इन लोगों से प्रेम करता हूँ। और मैंने इन लोगों को रोक रखा है। मेरा ऐसा करने का अर्थ नहीं था कि ये करूं, परंतु यहाँ बहुत से छोटे बालक प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे भूखे हैं, वे नहीं समझते, परंतु वे यहाँ बैठे हैं क्योंकि वे ये जानते हैं मनुष्य केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित नहीं रह सकता। और तब जब वचन बोला जा रहा है और तब जाना गया, प्रकट हुआ, प्रमाणित हुआ, तब वे जाने ये केवल आप हो सकते हैं। मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हें आशीष दें, होने पाए ये स्वस्थ और मजबूत हों उस यात्रा के लिए जो हमारे सामने है। इन्हें आशीषित करें इस सप्ताह से होते हुए, और यदि ये आपकी इच्छा हो प्रभु कि हम फिर अगले रविवार को मिलें, अगले सबत को, कि यहाँ आकर और आराधना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप इन्हें शक्ति देंगे। उनमें से कुछ हो सकता है नहीं, कुछ को अपने घर राष्ट्र के विभिन्न भागों में जाना है, हो सकता है सागर पार या राज्यों से बाहर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ होंगे और उनकी सहायता करें। उन्हें पाए हम यीशु के चरणों पर मिलें किसी दिन। पिता इसे प्रदान करें, अब हमारी सहायता करें, जैसा कि हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और आप में विश्वास करते हैं और आशा कर रहे हैं कि किसी दिन वो बंधन जो हमारे हृदयों को आपस में बांधे रखता है वो सदा का बंधन हो जाए, कि हम उस नगर में वास करें जो कि चार गुना उसकी सारी अनंतता के लिए। यीशु के नाम में आमीन। ठीक है, यीशु के नाम को साथ ले अपने बालक। अब एक दूसरे से हाथ मिलाएं। दुख ये आनंद होगा, घूमें और किसी के साथ हाथ मिलाएं, कहें यहाँ आपके साथ होकर मैं आनंदित हूँ इस प्रातः। जहाँ कहीं आप जाएं इसे साथ लें। कीमती नाम, ओ कितना मीठा। भाई बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद। कीमती नाम, ओ कितना मीठा। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद। अब इसे सुनिए, अब ऐसे गाएं। यीशु का नाम अपने साथ लो, एक ढाल के समान हर फंदे से। अब ध्यान से सुने। जब परीक्षाएं आपके चारों ओर जमा हों, क्या करें? पवित्र नाम को प्रार्थना में लें। कीमती नाम, कीमती नाम, ओ कितना मीठा। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग का आनंद। कीमती नाम, कीमती नाम।